आपको धन्यवाद। क्षण भर के लिए आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। स्वर्गीय पिता, हम आपके बड़े आभारी हैं कि आज हमें ये एक और सुअवसर मिला है कि हम इकट्ठे हों, ये जानते हुए कि हम मरणहार अवस्था में एक अंतिम बार इकट्ठे होंगे और हम महिमा वाली स्थिति में आपके साथ इकट्ठे होंगे और सब युगों के छुड़ाए हुए वहाँ जमा होंगे। ओ, हमारे हृदय तेजी से धड़कते हैं और बड़ी आशा से उस समय की आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ कि हमारे भय हमसे समाप्त हो जाएंगे, हमें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। हम अनंत परमेश्वर की प्रतिज्ञा को सामने देखते हैं जो कि उसने हमसे की है और हम जानते हैं कि ये सत्य है, इसलिए हम जीवित हैं। हम उस घड़ी, उस समय के लिए जीते हैं जब ये नाशमान देह बदल जाएगी और हम उसके समान बन जाएंगे और वहाँ कोई बीमारी ना होगी, कोई दुख ना होगा, कोई मानसिक व्यथाएं ना होंगी। ओह, तब ये सब समाप्त हो जाएगा और हृदय के आनंद के साथ हम विश्वास और हिम्मत से उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए प्रभु, आज हम यहाँ एकत्र हैं कि अपने अपराधों को मान लें और अनुग्रह मांगे। इसलिए आज इस प्रातः हम इस वेदी के सामने हैं क्योंकि हम ये जानते हैं हम मरणहार हैं और हम में बहुत सी त्रुटियां हैं और हम गलतियों से भरे हुए हैं, परंतु हम अपने अपराधों को स्वीकार करने आए हैं और तब अपने स्वर्गीय पिता को खुले हृदयों से देखते हैं कि आशीषित हों और फिर नई शक्ति पाएं और ये विश्वास जो इस समय हमें देगा, जैसा कि हम उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार एकत्र हैं यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, क्योंकि हम उसकी प्रतिज्ञा के द्वारा दावा करते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गए हैं और हम स्वर्गीय स्थानों में उठा लिए गए हैं, अब उसके साथ बैठे हैं। आज प्रातः वो हमें शिक्षा दे जो कि वो हमें सिखाना चाहता है और हमें जीवन की रोटी दे ताकि उस भविष्य में जो हमारे सामने है उसमें हम स्थिर रहें। प्रभु, ये प्रदान करें, यही हमारी प्रार्थनाएं हैं जो कि हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं। हर एक को शुभ प्रातः और ये बहुत अच्छा है कि आपके साथ एक बार फिर प्रातः इस आराधना के स्वर्गीय वातावरण में एकत्र हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक बुरी खबर का टेलीफोन संदेश कुछ मिनटों पहले आया था। एक लड़का वहाँ मर रहा है और जैसे प्रत्यक्ष रूप में मैं यहाँ खड़ा हूँ, प्रभु ने उसके शरीर को छुआ और सड़क पर भेज दिया और एक लड़का यहाँ खड़ा है जो कि मेरे चचेरे भाई का लड़का है। वे आरंभ से ही कैथोलिक हैं, परंतु इस प्रातः वे मास में गए थे और किसी चीज ने उनसे यहाँ आने को कहा और इसलिए वे उनमें बदलाव हैं। इसलिए वे अब भवन में आ रहे हैं और पानी के बपतिस्मे के लिए तैयार हैं। इसके बाद वे हमारा प्रभु हर समय आश्चर्यजनक चीजें करता है, वो तो निरंतर ये चीजें कर रहा है। वे अंदर आने के लिए आए और वे भीतर नहीं आ पाए। उन्होंने कहा अंदर आने का कोई भी रास्ता नहीं है। मैंने कहा भाई, यदि तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो मैंने कहा तो ठीक है, आप घर पर आ जाएं और हम वहां बातें करेंगे। इसलिए मैंने सोचा न्यूयॉर्क जाते हुए मार्ग में इस सभा में जो होने जा रही है कि ये कितना अच्छा होगा। मैं जानता हूँ कि यहाँ रुककर फिर से ताजा हो जाऊँ और अपनी अग्नि को उससे ज्वलंत कर लूँ जो अग्नि आप में है। और इस प्रातः हम एक दिन के लिए यहाँ रुक गए और हम यहाँ कल परसों दोपहर में आए और फिर हमें जाना है। मैं आज दोपहर बाद जा रहा था, परंतु मैं सोचता हूँ मैं जाऊँगा और प्रातः बहुत ही जल्दी यहाँ से और न्यूयॉर्क के बीच में हमें बर्फ और दूसरी चीजें मिल सकती हैं। वर्जीनिया के पहाड़ों से होकर निकलना है और एग्लेनिंग से होते हुए और फिर एडोनडेक की तलैटी वाले भाग से फिर हमने आरंभ किया। मैं भूल गया कि यहाँ एक नई रंगशाला है। मैं समझता हूँ उन्होंने पुरानी निकोलस रंगशाला तोड़ दी, इन्होंने ये नई बनाई है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हम पहले की कुछ रातों में जो कभी जो बाहर गुजारी निकाली थी, हम उसके लिए आभारी हैं उन महान न्यूयॉर्क पेंटिकॉस्टल लोगों के। और मैं सोचता हूँ हमारे बहुत से गिरजों ने सहयोग दिया है और हम महान समय की आशा कर रहे हैं। और प्रभु चाहेगा अगले सप्ताह किसी समय हम वापस आएंगे और यदि ये परमेश्वर की इच्छा है तो हम क्यों आशा करते हैं कि रविवार को रुकें। एक सप्ताह है रविवार प्रातः की आराधना के लिए और तब मैं अपने पास्टर पर फिर घमंड करता हूँ। जैसे कि देखिए हमेशा करता हूँ, और मैंने सोचा हो सकता है यदि मैं अंदर जाऊँ और यहाँ तक कि बगैर पूछे या होते हुए, जबकि यहाँ एक अच्छा झुंड है और मैं यहाँ लोगों को देखता हूँ जो नगर से बाहर के हैं, और मैंने सोचा यदि पास्टर के पास कुछ विशेष नहीं है, ये हो सकता है तो हम आज रात्रि छोटी सी सभा करेंगे, बस एक छोटी सी, हो सकता है बीमारों के लिए प्रार्थना भी। धन्यवाद। आज रात्रि हम आशा करते हैं कि बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, दिव्य चंगाई पर बातचीत करेंगे और बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। जल्दी आरंभ करेंगे ताकि हम जल्दी ही चले जाएं। और यदि पास्टर चाहेंगे, आप साधारणतः कब आरंभ करते हैं? 7:30 बजे, ये ठीक है ना? आज रात्रि 7 बजे आरंभ करें तो कैसा रहेगा? 7 बजे, और मैं 7:30 बजे आरंभ करूंगा, और इससे मैं 8:30 छोड़ दूंगा, जिससे लोग समय पर चले जाएंगे, यदि ये ठीक रहे तो। जब मैंने 8 कहा तो सब हंस पड़े, या 8:30, मैं आशा करता हूँ कि उस समय तक छोड़ दूंगा। आप जानते हैं कि बीमारों के लिए प्रार्थना करना है, हमें नहीं मालूम। पिछले पतझड़ से पहले जब हम आप लोगों से विदा हुए थे, हमारे पास एक महान समय रहा और प्रभु ने हमें बहुत सी चीजों में आशीषित किया। आज रात्रि यदि प्रभु ने चाहा तो मेरी परमेश्वर से, जो अभी हाल में कलोराडो में कुछ सप्ताह पहले भेंट हुई है, इस विषय में बताना चाहता हूँ, और यही था जो मैंने आपके पास लाने के लिए सोचा। हो सकता है इससे हमारे विश्वास आज रात्रि की अच्छी चंगाई सभा के लिए प्रेरित हों, बीमार और दुखी लोगों के। अब इस प्रातः की आराधना में चलने से पहले, मैं लगभग एक महीने पहले किसी चीज ने मेरे हृदय को छुआ, और ये अब हो सकता है, मैं सोचता हूँ कि वे इसे टेप कर रहे हैं। क्या वे इसे टेप कर रहे हैं? हाँ, ठीक है, इसलिए कि मैं जान सकूँ कहाँ यदि ये टेप बाहर दूसरों के पास जाए। मैं नहीं कह सकता कि जो कुछ भी आज प्रातः मैं बोलने जा रहा हूँ, मैं नहीं कह सकता कि ये, मैं जानता हूँ कि ये ठीक है। देखिए, संदेश वाला भाग ठीक होगा, परंतु वो बात जो मैं करना चाहता हूँ, वो एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में है। ये बहुत ही वास्तविक दिखता है, और अब भी जब मैं इस पर आता हूँ, और जब से मैं ये मुझ पर प्रकट हुआ था, मैं इतना भयभीत था कि यदि मैं गलत बातें कहूँगा तो लोगों पर गलत प्रभाव छोड़ेंगी, और ये एक, और मैं, और जो भी नोट मैंने लिखे हुए हैं, जिनके आधार पर मैं कहने जा रहा हूँ, मैंने इसका कुछ भाग काट दिया है ताकि कहीं बहुत कठोर ना हो जाए। क्योंकि आप देखिए, यदि एक व्यक्ति, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, और एक ही रास्ता है जिसे मैं जानता हूँ कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, वो ये है क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, समझे? केवल एक यही मार्ग है जो मैं जानता हूँ, और अब भी मैं नहीं चाहता कि कोई बात जो मुझ पर प्रकट हुई हो और तब मैं आपको ना बताऊं, यदि ये आपके बताने के लिए है, और तब मैं डरता हूँ यदि मैं कोई थोड़ी कठोर बात कहता हूँ तो ये किसी को दुख पहुंचा सकती है। और आप जानते हैं कि ऐसे हैं, जब आप बिल्कुल प्रचार मंच पर पहुंच जाते हैं और कहने की अगुवाई महसूस करते हैं जो कि आप कहने जा रहे हैं, बस यही है, और तब कभी कभी आप कुछ कहते हैं और कोई इससे कोई और विचार दिशा अपना लेता है, और वे उस ओर चले जाते हैं, और तब कोई और कहेगा, ओ ये तो ये है, ये तो ये है, देखा। परंतु मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ कि जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूँ, ये केवल अनुमान है। अनुमान शब्द का अर्थ है बिना किसी अधिकार के साहसी कार्य करना। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि ये सत्य है, परंतु ये एक छोटा विचार है जिसको कि मैं आपको दे सकता हूँ, ताकि आप इसे परख सकें और देखें कि आप इसके विषय में क्या सोचते हैं, और तब इस शिक्षा क्रम में वचनानुसार होगा, क्योंकि मैं कुछ प्रचार नहीं करूंगा। परंतु क्या अभी ये वही समय है? क्या ये इस घड़ी तक आ पहुंचा है? क्या इन बातों का वही अर्थ है? मैं अपनी संपूर्णता से जो कुछ मुझ में है, ये प्रार्थना करता हूँ कि ये नहीं है, समझे? मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये ठीक नहीं है, कि ये वो घड़ी नहीं है, ये होने जा रहा है, परंतु क्या ये उस समय तक आ पहुंचा है, समझे? मुझे यही आश्चर्य है। अब हर कोई ये अच्छी प्रकार से समझता है कि मैं नहीं जानता, मैं बस, क्या यही समय है? यदि ये है तो परमेश्वर हम पर दया करे, परंतु यदि ये वो समय नहीं है तो फिर ये आने वाला है। अब जितनी जल्दी हो सकता है, प्रभु चाहेगा तो हमारे सामने एक बड़ा यात्रा विवरण है, और बड़े दिन के बाद मुझे सागर पार यात्रा पर यूरोप और एशिया और विशेषकर यूरोप जाना है, और तब इसके बाद मैं वापस संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ सभाओं के लिए आऊंगा, और तब फिर मैं वापस दक्षिण अफ्रीका जाऊंगा। मैं 2 सितंबर से डरबन में आरंभ करूंगा, और से आरंभ करूंगा, मैं सोचता हूं कि लगभग 10 तक करूंगा, और तब वहां से जोहान्सबर्ग जाने के लिए मेरे पास 3 दिन हैं, और फिर वहां आरंभ करूंगा। परंतु मैं सोचता हूं कि ये अप्रैल का महीना है कि हम स्कैंडिनेवियन देशों में, नॉर्वे में, और स्वीडन में और फिनलैंड और हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और जर्मनी और वहाँ यूरोप से होते हुए, इसलिए हमारे लिए प्रार्थना में रहें। अब बड़े दिन के समय में हमारे यहाँ पर कुछ सभाएं हैं, एकदम बड़े दिन के बाद संभव हुआ तो हम यहाँ बड़े दिन के समय पर होंगे। बच्चे घर आना चाहते हैं बड़े दिन के दिनों में, और हमें एरिजोना अच्छा लगता है, परंतु आप जानते हैं कि जिस चीज से हम रह जाते हैं और उसकी पूर्ति नहीं कर सकते वो ये कलीसिया है। इससे कोई मतलब नहीं कि हम कहाँ जाते हैं, हम क्या करते हैं, ये तो केवल बच्चे, मैं, पत्नी और हम सब, इस जगह जैसी और कोई नहीं है। ये ठीक बात है, दूसरी कोई और जगह नहीं है। मैं 7 समुद्र पार गया और मैं हर जगह गया, परंतु इस स्थान की तरह पवित्र मुझे कहीं नहीं लगा जैसा कि छोटा सा स्थान यहाँ पर है। ये यही है। यदि आप जानना चाहते हैं तो एक बार यहाँ से जाकर देखें, यहाँ पर कुछ तो भी है। व्यवहारिक रूप में मैंने संसार भर में प्रचार किया है, मुझे कभी भी किसी भी समय किसी भी स्थान में परमेश्वर की आत्मा का आभास नहीं हुआ इस स्वतंत्रता और बातों के साथ जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ये वही है, परमेश्वर होने दे। जिस दिन मैंने कोने का पत्थर वहाँ रखा, मैंने कहा प्रभु परमेश्वर इसे गिरने मत देना। लोगों ने कहा 2 महीने में ये गाड़ियों को खड़े करने का स्थान बन जाएगा। मैंने कहा प्रभु इसे गिरने मत देना, इसे स्थिर रखना, और जब यीशु वापस आए तो लोग यहाँ आपकी महिमा करते हुए हों। मैं विश्वास करता हूँ ये इसी प्रकार होगा। अब आइए बाइबल खोलें और प्रभु से आशा करें कि वो हमें अपनी आशीषें दे, और हम कुछ वचन पढ़ना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ वचन लिखे हुए हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, और कुछ नोट्स हैं, और मैं बाइबल में से 3 स्थानों से पढ़ना चाहता हूँ, और मैं उन्हें आपको पहले दूंगा। मैं यहूदा 5 और 6 में से पढ़ना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि यहूदा की एक पुस्तक है, और तब मैं दूसरा पत्रस का 2 अध्याय 4 और 5, और तब मैं पहला पत्रस 3:18-20 तक पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु चाहेगा तो आज प्रातः मेरा विषय प्राण जो अब कैद में है, वे प्राण जो अब कैद में हैं, बंद हैं, सदा के लिए दोषी ठहरे। अभी भी कोई भी मार्ग नहीं है कि वे बचें। देखिए, वे प्राण जो अब कैद में हैं। अब आइए पहले हम यहूदा की पुस्तक में पढ़ें। मेरा विश्वास है यहूदा में मैंने पहले स्थान पर निशान लगाया है, और तब दूसरे पत्रस में, तब फिर पहले पत्रस में। अब यहूदा, मैं तो इस पूरे को पढ़ना चाहता हूँ, परंतु थोड़ा समय बचाने के लिए, क्योंकि 7:30 बज चुके हैं, मैं 5वें पद से आरंभ करने जा रहा हूँ। अब यहूदा एक भाई था यीशु मसीह का उपभाई, जैसा कि हम सब जानते हैं, समझे, वो यूसुफ का पुत्र था। यदि तुम सब एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नाश कर दिया। पहले उन्हें बचाया, उन्हें मिस्र से बाहर निकाल कर लाया, और तब उन्हें नाश करना पड़ा क्योंकि वे अपने उस संदेश में बने ना रहे। आप समझे?
And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation,
फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। स्वर्गदूत जो एक समय स्वर्ग में और अपने पद को स्थिर ना रखा, और जिस प्रकार की दशा में वे थे उससे गिर गए, और अब वे अंधकार की अनंत जंजीरों में जकड़े हैं, अंधकार की सदा की जंजीरों में, उस महान न्याय के दिन तक इस दशा में रखा है, जबकि उनका भी न्याय बाकी अविश्वासियों के साथ होगा। अब दूसरा पत्रस 2:4-4 से आरंभ करके, जिसके बाद 1 या 2 पुस्तकें होंगी, समझे, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें, और प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। स्वर्गदूतों को भी ना छोड़ा, उन्हें अंधकार की जंजीरों में बांध दिया, और नूह के समय के सारे संसार को नष्ट करके दोषी। अब पहला पत्रस पहला अध्याय और पहला पत्रस तीसरा अध्याय और 18वें पद से आरंभ करके हम फिर से पढ़ते हैं। अब ध्यान से सुने, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। उसने इन लोगों को कैद में प्रचार किया जिन्होंने बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। और उसी में पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमें बचाता है। उसमें शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा। वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया और सरदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। आइए हम फिर से प्रार्थना करें। अब स्वर्गीय पिता, वचन की ऐसी पंक्ति, यहाँ तीन गवाह वचन में तीन स्थानों में गवाही दे रहे हैं। और आपने अपने वचन में कहा है कि हर बात दो या तीन गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। ओ परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपकी इच्छा लोगों में हो और आपके वचन संदेश का अनुवाद उस उजियाले में हो जिसमें होना चाहिए, कि प्रत्येक पुरुष, स्त्री, लड़का या लड़की अपनी सामर्थ्य में समझ सके जिसके लिए आपने उसका अभिषेक किया है, कि वे समझें। और अब ये जानते हुए कि ये तीन गवाह सत्य को लिपिबद्ध रखते हैं, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि अब आप पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर भेजेंगे और हम उसकी ओर ताकेंगे जो कि हमारा राजा इस प्रातः हमारे बीच प्रभु यीशु मसीह है, जहाँ के हम विश्वास के द्वारा उठाए गए हैं और स्वर्गीय स्थानों में उसमें बैठे हैं। हम उसके संदेश की प्रतीक्षा करते हैं। हमारे द्वारा बात करें प्रभु, हमारे द्वारा सुने, जैसा कि हम आपसे विनती करते हैं। उन होठों का खतना करें जो बोलते हैं और उन कानों को जो सुनते हैं, ताकि ये उसके लिए सम्मान और महिमा हो जो कि वचन है। ये हम उसके नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अब आज रात्रि सभाओं को याद रखें, चंगाई सभा। मैं नहीं सोचता कि अवश्य है कि प्रार्थना पत्र दिए जाएं, इसलिए हम केवल बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे पास कुछ हैं जो कि मैं बताना चाहता हूं, और मैं आशा करता हूं कि ये सभा को उस स्थान तक ले जाएगा जहां तक कि सब प्रकार की बीमारियां चंगी होंगी। मैं जानता हूं ये होगा यदि हम केवल इसका विश्वास करें उसी प्रकार से। अब ये प्राण कैद में हैं, वे प्राण जो अब कैद में हैं। अब मनुष्य का प्राण उसका शरीर नहीं है, ये प्राण है, समझे? और प्राण कुछ ऐसा है जो कि आत्मा का स्वभाव है। और तब जब मनुष्य का स्वभाव, जब उसने कहा हम मरे हुए हैं, वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि हम मरे हुए हैं और हमारा जीवन परमेश्वर में मसीह के द्वारा छिपा हुआ है और वहाँ पवित्र आत्मा द्वारा मोहर किया हुआ है। अब ये वो नहीं था कि आपका शरीर मरा हुआ नहीं था, कि आपकी आत्मा मरी हुई नहीं थी, ये आपकी आत्मा का स्वभाव था जो मरा हुआ था। स्वभाव देखिए, जो कि प्राण है, आपके प्राण का स्वभाव परमेश्वर है। यदि आप दोबारा जन्म पाए हुए हैं, यदि नहीं तो ये फिर संसार का है। कोई भी चीज जिसका आरंभ है उसका अंत होना है। इसलिए केवल एक ही मार्ग है कि आपके पास अनंत जीवन हो सकता है, कि वो जीवन हो जिसका आरंभ कभी नहीं हुआ हो। और आपका जीवन तब आरंभ हुआ जब आप उत्पन्न हुए, जब परमेश्वर ने जीवन का श्वास आपके नथनों में फूंका और आप जीवित प्राणी हो गए, तब आप आरंभ हो गए। परंतु जब आप वो स्वभाव जो आप में था, अपने स्वभाव से आप संसार के थे, परमेश्वर से अलग थे, सही में आप पशु थे। ये बिल्कुल सही बात है। कोई भी जानता है हम लोग स्तनीय जंतु हैं। कितने लोग ये बात जानते हैं? हम लोग स्तनीय जंतु हैं, हम गर्म लहू वाले पशु हैं, परंतु हम ये संसारिक सृष्टि से हैं। परंतु आप देखिए कि दूसरे स्तनीय जंतुओं से किस प्रकार भिन्न बने हैं कि परमेश्वर ने हम में प्राण रखा है, समझे? अब दूसरे स्तनीय जंतुओं को कपड़े नहीं पहनने होते हैं, दूसरे पशुओं को अपनी लज्जा छिपाने के लिए कपड़े नहीं पहनने होते हैं सिवाय हमारे। ये केवल हम लोग हैं जो ये करते हैं, क्योंकि हम में प्राण है। परंतु देखिए, परमेश्वर आरंभ में जानता था कि मनुष्य किस प्रकार का होगा, और उसने पृथ्वी को उत्पन्न किया और हर प्रकार के पशु उत्पन्न किए, सबसे नीचे से उच्च दर्जे तक, और उच्च दर्जे का पशु मनुष्य था। और तब जो पहला मनुष्य बना था वो आत्मिक मनुष्य था, परमेश्वर के स्वरूप में, जो कि परमेश्वर आत्मा है, यूहन्ना 4। वो एक आत्मा है, वो जो उसकी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई में आराधना करते हैं, और तेरा वचन सत्य है। अब हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में करते हैं। वो एक आत्मिक अस्तित्व है। तब भूमि जोतने के लिए कोई मनुष्य नहीं था। तब परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा। तब उसने उसकी एक और से एक अप्रधान रचना ली, एक पसली, और इससे उसने इस मनुष्य को अलग किया, जिसकी दो प्रकृति या स्वभाव थे, जो कि दोनों स्त्री वाला और पुरुष वाला स्वभाव था। और उसने स्त्री वाला स्वभाव बाहर निकाला, क्योंकि ये प्रेम था, और उसे उसने एक व्यक्ति जो कि हवा कहलाती थी उसमें डाल दिया, जिसे आदम ने हवा कहा, जो कि उसकी पत्नी थी। यही जहाँ उसका प्रेम, प्राकृतिक फिलियो प्रेम, उसे अपनी पत्नी से हुआ। इसी प्रकार से मनुष्य को आज भी होना चाहिए, और उसका उसके पति की ओर होना चाहिए। वो मनुष्य नर संबंधी, वो नारी नारी संबंधी। और तब देखिए, इसके बाद जब उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, उसने उनकी रचना की, नर और नारी करके की, और वहाँ कोई मनुष्य ना था जो कि भूमि जोते, और उसने उसे भूमि की मिट्टी में डाल दिया, और इसलिए वो हो गया, वो मनुष्य था। ये मानव जात मनुष्य स्तनीय जंतु था, देखिए वो पशु था, परंतु उसने इस परमेश्वर की आत्मा को डाला, एक जीवन उसमें डाला, और उसको इस आधार पर बनाया कि अपना चुनाव कर सके। और तब जब ये मनुष्य, अब हम सोचते हैं कि हम कुछ हैं, बस याद रखें कि हम क्या हैं, एक मिट्टी का लौंदा बस, और क्योंकि तू मिट्टी है, तू मिट्टी में ही वापस चला जाएगा। इसलिए जब आप इस मनुष्य को सड़क पर चलते देखें और वो ये सोचे कि वो कुछ है, समझे, और कुछ थोड़ी सी शिक्षा और वगैरह वगैरह हो, याद रखिए वो इंडियाना की मिट्टी का एक लौंदा है, बस यही है। और वो स्त्री जो छोटी छोटी वेशभूषाएं पहनती है और सिगरेट पीती है और सड़क पर ऐसे मटकती फिरती है जैसे कि सारा राष्ट्र उसी का है, वो एक इंडियाना की मिट्टी का लौंदा है, और वो उसी में वापस चली जाएगी। इसलिए आप जहाँ से आरम्भ है वहीं से कुछ नहीं है, देखा? इसलिए ये ठीक है, जो भी हो आप यही है। परंतु वो प्राण जो उसमें है, देखिए, वही प्राण है जहाँ परमेश्वर अपना कार्य करता है। यदि वो स्वभाव या प्रकृति को पा सके, उस आत्मा को जो उसके साथ, परमेश्वर के साथ सहमत हो, तब वो प्रकृति या स्वभाव मर जाता है, और संसार के प्रति प्रेम मर जाता है, और संसारिक वस्तुएं मर जाती हैं, समझे? क्योंकि यदि आप संसार से प्रेम करते हैं या संसार की वस्तुओं से, तो परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं है, समझे? और एक मनुष्य का दोबारा जन्म होना ही चाहिए, ताकि ये स्वभाव मर जाए और परमेश्वर का स्वभाव आए और आप में रहे। और केवल परमेश्वर ही एक ऐसा है जिसका कभी आरंभ नहीं हुआ या कभी अंत नहीं हो सकता। इस प्रकार से वो भागीदार हो गया, आप देखिए, और इस मनुष्य को ले लिया जो पृथ्वी का है, और ये अनंत आत्मा उसे एक साथ कर दिया। जब पूर्व समय में परमेश्वर ने अपने आप को उसमें प्रतिबिंबित किया कि वो मनुष्य बन गया, जब वो मसीह यीशु बना और वो परमेश्वर था, देखा, परमेश्वर मसीह में था, ये देखिए कि उसमें रहा और संसार को फिर से अपने में मिला लिया। उस सिद्ध मनुष्य के द्वारा होकर हम में से प्रत्येक जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, सिद्ध नहीं है और स्वीकार करता है, वो उसकी सिद्धता हो जाता है। और उसने अपने शरीर को सड़ने के लिए नहीं छोड़ा, न ही उसने अपने प्राण को अधोलोक में छोड़ा, परंतु उसे तीसरे दिन जिला उठाया और वो सर्वदा जीवित है। और हम भी उसके अपने जैसा महिमा वाला शरीर पाएंगे। इसी कारण हम उसके नाम में बपतिस्मा देते हैं, ताकि हम उसके नाम में आ सकें, उसकी मृत्यु में, उसके जी उठने में, ताकि हम दोबारा उठकर संसार में इस बात को प्रमाणित कर दें कि हमारे पास नया जीवन है, कि वो पुराना मनुष्य मर गया, हमने पहले स्वभाव को गाड़ दिया है, समझे, कि वो पहला स्वभाव चला गया और अब हम उसके स्वभाव के हैं और वो हम में रहता है और हम अपनी इच्छा पूरी नहीं करते, हम उसकी इच्छा पूरी करते हैं। हम अपने विचारों से नहीं सोचते, मस्तिष्क है जो सोचता है। वो मन जो मसीह यीशु में था वो अब हर विश्वासी में है। देखिए, यहाँ प्राण है और इसी के विषय में हम बोल रहे हैं। अब यही भाग है जिस पर अब मैं सोच रहा हूँ, ये हम में है वो प्राण। अब यदि हम इस पर ध्यान दें, बहुत सी बातें कभी कभी घटित होती हैं और हमें आश्चर्य होता है ये क्यों घटित हुआ, और हम अपने से प्रश्न करते हैं और हम दूसरे से प्रश्न करते हैं, परंतु अंततः हम पाते हैं कि यदि हम मसीही हैं, कि जो भी हो ये सारी बातें ठीक ही हुई हैं। आपने ये देखा है, सारे मसीही ये देखते हैं, हमें आश्चर्य होता है कि हमने ये क्यों किया। जब मैंने पहले पहल बाइबल पढ़ी तो मुझे कभी कभी आश्चर्य होता था, क्यों परमेश्वर ने उस महान व्यक्ति इब्राहिम को वहाँ खड़े होकर ये कहने दिया कि सारा उसकी पत्नी नहीं थी, और कैसे उसने वहाँ खड़े होकर और उस विषय पर झूठ बोलने दिया, और वो बातें उसने की, और तब कैसे उसने इब्राहिम को प्रतिज्ञा का देश छोड़ने दिया, जबकि उसने कहा था कि इसे मत छोड़ना। कोई भी यहूदी जो प्रतिज्ञा के देश को छोड़ता है वो पिछड़ा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने ये उन्हें दिया है और प्रतिज्ञा की कि वहीं रहना। देखिए, उन्होंने उसे छोड़ दिया। इस प्रकार से वो गरार चला गया, परंतु यदि ये ऐसा ना हुआ होता और तब वहाँ फिलिस्तीन देश में अबीमेलेक को सारा से प्रेम हो गया और वो उससे विवाह करने जा रहा था, और वो एक भला पुरुष था, एक धार्मिक पुरुष। हो सकता है इसके पश्चात ये सुनने में अजीब लगता है, परंतु आपके लिए एक सत्य बन जाता है। अपने सांझ के नहाने के बाद अपना पजामा पहनता है, अपनी प्रार्थना करता है और अपने बिस्तर पर जाता है, प्रभु से दर्शन देता है और कहता है कि तू मरे हुए के समान है और उस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया था, समझे। उसे इब्राहिम और सारा दोनों के द्वारा धोखा दिया गया था, ये ठीक बात है। उसने कहा तूने दूसरे पुरुष की स्त्री को ले लिया है, देखा, और मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, परवाह नहीं तू कितनी भी प्रार्थना करे, तू एक मरे हुए के समान है, वो व्यक्ति मेरा भविष्य तकता है, समझे। देखिए, ये समझना कठिन है, परंतु यदि ये ना हुआ होता तो अनुग्रह क्या होता है, हम नहीं समझ पाते। अपनी सारा जैसी प्यारी पत्नी के होते हुए क्यों उसने हाजरा से विवाह किया, और वो ये नहीं करना चाहता था, देखा, परंतु सारा ने उससे कहा, और तब प्रभु ने उससे कहा, सारा जो तुझसे कहती है वो सुन। क्यों? वहाँ इस्माइल का होना था, वो दासी थी, उसकी संतान स्वतंत्र स्त्री की संतान के साथ वारिस नहीं हो सकती थी। देखिए मेरा क्या अर्थ है, ये सारी चीजें प्रतीक हैं। उस भविष्यद्वक्ता ने क्यों वेश्या से विवाह किया और रखा उन बालकों के साथ, उससे दो बालक उत्पन्न हुए एक चिन्ह की तरह। क्यों वो एक और 340 दिन लेटा रहा और ऐसे ही दूसरी ओर बहुत दिन लेटा एक चिन्ह की तरह, एक कपड़े उतार कर नंगा होकर इसराइल के सामने चला। और अब ये सारी चीजें प्रतीक हैं और छाया हैं, देखिए, और हमारे पास ये चीजें होनी ही हैं पूरा होने के लिए। और बहुत सी बार हमारे साथ ऐसी चीजें घटित होती हैं कि हमें आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों है। ये परमेश्वर है जो हमें कुछ पहले से दर्शाता है। और जब मैं छोटे लड़के जैसा था, आप मेरी जीवन कथा जानते हैं, जहाँ तक मैं पहले याद कर सकता हूँ, मैंने सदा विश्वास किया। उनमें से जो पहली बात मुझे याद है, अब यह है, आप मुझसे बीते कल में कुछ कह सकते हैं और मैं उसे आज भूल जाऊंगा, परंतु हमारे किशोरावस्था के दिनों में कुछ ऐसा घटित होता है वो हमें सदा याद रहता है। हम में से बहुत से ऐसे ही हैं, और ये कहते हुए सुनने में अजीब सा लगता है, परंतु मुझे याद है जब मैं लंबा झबला पहनकर घुटने घुटने चलता था। वो छोटे बच्चे, आप में से कुछ लोग जो मेरी आयु के हैं उन्हें याद होगा, बच्चे वो लंबा झबला पहना करते थे, और मैं याद करता हूँ घुटने चलते हुए मैंने अपने अंकल के जूते की नोक पर से बर्फ छुड़ाई और उसे खा रहा था जब वो अंदर आए और आग के स्थान के पास खड़े हुए थे। और अगली चीज जो मेरे जीवन में घटित हुई वो दर्शन था, जो कि सबसे पहले पहल मुझे मिला और मुझे बताया कि मैं अपने जीवन का एक बड़ा भाग उस शहर जो न्यू अल्बनी कहलाता है वहाँ व्यतीत करूंगा। और मैं एक छोटा पहाड़ी बच्चा था, वहाँ जब मैं उत्पन्न हुआ तो डॉक्टर तक न था, और मैं आप जानते हैं मैं वहाँ लगभग 50 वर्ष रहा, बिल्कुल यही वो दर्शन। और तब भी कैसे मैं ये जानता था कि कहीं परमेश्वर था। और एक छोटा लड़का जैसे था वो मुझसे बोला, कभी भी सिगरेट या शराब मत पीना या दूषित होना, मेरा शरीर स्त्रियों से दूषित नहीं होना था, और वगैरह वगैरह। और मैं सदा इससे भयभीत रहा, और मैं एक नवयुवक था, और तब एक बार मैं शिकार पर गया हुआ था, जो लगता है मेरा दूसरा स्वभाव है कि शिकार खेलना अच्छा लगता है। मैं एक प्रिय बालक जिम पूल के साथ शिकार खेलने गया था। मैं सोचता हूँ उसका लड़का छोटा जिम यहाँ गिरजे आता है, अच्छे लोगों का एक परिवार। मैं कई पूलों को जानता हूँ। जब हम स्कूल में छोटे छोटे लड़के थे, जिम और मैं साथ साथ सोया करते थे। हमारी आयु में 6 महीने की भिन्नता है। और जिम ने अपनी बंदूक चला दी, उससे मेरे दोनों पैरों में छोटी बंदूक से बहुत पास से गोलियां लगी और मुझे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ मैं पड़ा मर रहा था, कोई पेंसिलिन या कुछ भी इन दोनों में नहीं था। और अब रबड़ की एक चादर मेरे नीचे बिछी थी। उस रात मैं जानता हूँ अगली प्रातः वो मेरी शल्य चिकित्सा करने जा रहे थे। उन्होंने बस लेकर और घाव को साफ किया और मांस के बड़े बड़े टुकड़े उड़ गए थे और उन्होंने कैंचियां लेकर उन्हें काट दिया। और मुझे किसी व्यक्ति के हाथों को पकड़ना था और उनके पास फ्रेंकी कीच था। उसने हाल ही में आत्महत्या की है और उन्हें ध्यान पूर्वक मेरे हाथों को उसकी कलाई से ढीला पकड़ना था जब वे इसे कर रहे थे। मैं चीखा और चिल्लाया और इस तरह से उन्होंने पकड़ा और वे पैर का वो भाग काट रहे थे। मैं 14 वर्ष का था, एक लड़का सा। और उस रात मैंने सोने का यत्न किया, मैं जाग गया, कुछ कीचड़ सा उछला और वहाँ लगभग आधा गैलन लहू था। मैं सोचता हूँ उन नाड़ियों में से निकला था। और उन्होंने एक्सरे किया और उन्होंने कहा छर्रा उस रक्त धमनी के इतने पास है, दोनों ओर से किसी एक छोटी सी घिसट से इसे 200 में कर देगी और मेरे लहू बहना आरंभ हो जाएगा। ठीक है, मैंने सोचा ये मेरा अंत है। और मैंने अपने हाथ इस तरह से नीचे रखे और ऊपर उठाए और लहू मेरे हाथों के नीचे बह रहा था। ये मेरा ही लहू था जिसमें मैं पड़ा हुआ था। घंटी बजाकर मैंने बुलाया, नर्स आई और उसने तौलिया से उसे सोख लिया क्योंकि वहाँ कुछ नहीं था जिससे वे कुछ कर सकते। और अगली प्रातः उन्हीं दुर्बल अवस्थाओं में उन दोनों में रक्त नहीं दिया जाता था। आप जानते हैं उन्होंने मेरी शल्य चिकित्सा की और उन्होंने मुझे ईथर दिया। और जब मैं वो पुराना ईथर मैं समझता हूँ, आपको याद है कि ये पुरानी बेहोश करने की विधि थी। और जब मैं उस बेहोशी से बाहर आया, मैं उस ईथर की बेहोशी के प्रभाव से 8 घंटे बाद बाहर आया। उन्होंने मुझे इतना दे दिया था कि उन्होंने सोचा मैं होश में नहीं आ पाऊंगा। वे मुझे होश में नहीं ला पाए। मुझे याद है अस्पताल में श्रीमती रोडर मेरे पास खड़ी थी। मैं उस महिला को कभी नहीं भूलूंगा, कोई मतलब नहीं जो कुछ भी हो, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। उस समय वो नवयुवती थी, उसका पति कारों के कार्य पर प्रबंधक था और मुझे याद है वो मेरे बराबर में खड़ी थी, वो और श्रीमती स्टोवर्ट। और सही में वही थी जिन्होंने मेरे अस्पताल का पैसों का भुगतान किया था। मैं हमारे पास घर में यहाँ तक कि खाने को भी नहीं था, तो फिर हम अस्पताल का $100 का बिल कैसे चुका सकते थे। परंतु उसने अपने गिरजे की संस्था से और कू क्लक्स क्लंग ने मेरे अस्पताल का बिल चुकाया मैसन का। मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता, समझे। इससे कुछ नहीं कि वे क्या करते हैं या मैं अब क्या हूँ, कुछ ऐसा है जो मेरे मन में लगा है कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया। और उन्होंने डॉक्टर रीड को बिल का भुगतान किया। वो अब भी जीवित हैं, यहाँ पोर्ट फोल्टन में रहते हैं, वे आपको कहानी बता सकते हैं। जब मैं ईथर के प्रभाव से बाहर आया तो वहाँ मुझे कुछ हुआ। मैंने हमेशा इसका दर्शन करके विश्वास किया क्योंकि मैं इतना दुर्बल था और मैं उन्होंने सोचा कि मैं मर रहा हूँ। जब मैंने अपनी आँख खोल कर देखा तो वो रो रही थी, मैं उससे बातें करते हुए सुन सकता था। और तब मैं नींद में चला गया और 2 या 3 बार जागा और तब मुझे दर्शन मिला। और तब मुझे लगभग 7 महीने पश्चात मुझे जाकर गोली लगने वाले स्थान में पट्टी की डांट और गंदे शिकार के कपड़े को अपने पैरों पर से हटवाना था। डॉक्टर को वो नहीं मिला और इसलिए मेरे लहू में विष फैल गया, दोनों पैर में सूजन चढ़ गई और नीचे से दुगने मोटे हो गए और वो मेरे दोनों पैर कूले से काट देना चाहते थे। और मैंने कहा नहीं, थोड़ा और ऊपर की ओर आओ और यहाँ से इसे बाहर निकाल दो। और मैं बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकता था, देखा। और इस तरह अंत में डॉक्टर रीड और डॉक्टर पर्टिल जो कि लूजविले से थे, उन्होंने शल्य चिकित्सा की और वहाँ चीरा लगाकर और उसे बाहर निकाल दिया। और आज मेरे पास अच्छे पैर हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। परंतु उस अंतिम दर्शन में जो मैंने देखा था, पहला दर्शन जो मुझे आया और तब मैं उस अचेत अवस्था में चला गया और बस साफ तौर पर मैंने सोचा कि मैं नरक में हूँ। ठीक है, कोई अपने हाथों को उस पर रखे और वो हो सके तो हवा आने दें। अब जो भी वहाँ खड़ा हुआ है अपना हाथ उस पर रखे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, होने दे हमारी बहन जो आज प्रातः बीमार है और वो कमरे में बेहोश हो गई, उन्हें देखी तेरा अनुग्रह और सामर्थ और शक्ति वहाँ वे हाथ जो अब उस पर रखे हुए हैं आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और पवित्र वचन में कहा है विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, यदि वे अपने हाथ बीमारों पर रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। और अब होने दे कि हमारी बहन अपनी बीमारी से बाहर आ जाए और परमेश्वर की महिमा के लिए चंगी हो जाए। यीशु मसीह के नाम में हम ये मांगते हैं और उसे आपको समर्पित करते हैं, आमीन। अब उसे हवा आने दें, काफी घुटा हुआ है, मैं यहाँ से अनुभव कर सकता हूँ, बहुत खराब है। यहाँ मंच पर मूर्छित से अनुभव हो रहा है, मैंने यहाँ 4-5 बार अनुभव किया। यदि वहाँ है, जैसे ही वो थोड़ा सा अच्छा अनुभव करने लगे तो क्यों ना उसे जहाँ हवा आ सकती है ले जाएं, ये अच्छा है। देखिए ये काफी हवाबंद या घुटन भरा हुआ है, आप जानते हैं। मानव जाति हम में से प्रत्येक कई वर्ग फुट तक बीमारी उत्पन्न करता है। यदि आप में से किसी के पास यहाँ पानी हो या कुछ हो जो उस बहन पर डालने के लिए, वो अब ठीक हो जाएगी, समझे? ठीक है, जी हाँ, हो सकता है। यदि आप दरवाजे खोल सकते हैं, हो सकता है या थोड़ी सी हवा दें, जिस तरह भी जहाँ तक हमसे हो सकता है। देखा, अब इस समय में जैसे कि मुझे दर्शन मिला और सोच रहा था कि मैं इस जीवन से निकलकर पीड़ा में हूँ, और 7 महीने बाद यहाँ क्लार्क कंट्री मेमोरियल अस्पताल में मेरी दूसरी शल्य चिकित्सा हुई। और उस समय जब मैं होश में आया तो मैंने सोचा कि मैं पश्चिम में खड़ा हूँ। मुझे दूसरा दर्शन मिला और उसमें एक बड़ी सुनहरी क्रूस आकाश में थी और प्रभु की महिमा उसमें से निकल रही थी, और मैं वहाँ अपने हाथ इस प्रकार निकाले खड़ा था और महिमा मेरी छाती पर पड़ रही थी, और मैं दर्शन समाप्त हो गया। जब दर्शन मिला तो मेरे पिता वहाँ बैठे मुझे देख रहे थे। मैं सदा अनुभव करता हूँ कि आप सब लोग जो मुझे जानते हैं, पिछले वर्षों से मैंने सदा पश्चिम की ओर जाना चाहा। आप जानते हैं कि ये कैसे है, सदा पश्चिम की ओर कुछ रहा। कि एक बार एक ज्योतिषी ने भी यही बताया था कि मुझे पश्चिम की ओर जाना चाहिए। वे सितारे जब आपस में अपनी परिक्रमाओं को काटते हैं और वगैरह वगैरह, तो मैं उस चिन्ह के अंतर्गत उत्पन्न हुआ था। मैं कभी भी पूर्व में सफल नहीं हूँगा, मुझे पश्चिम की ओर ही जाना होगा। और पिछले वर्ष मैं पश्चिम की ओर चल दिया, अपने जीवन भर की इच्छा को पूरा करने, उसे करने। मैं क्यों वहाँ पर हूँ? ये बहुत असंभव सी बात है कि वहाँ रेगिस्तान में बैठा हुआ $110 प्रति माह का किराया दे रहा हूँ, और यहाँ पर एक घर है, पादरी का घर, हर प्रकार से मेरे लिए सुसज्जित। परंतु ये प्रभु के पीछे चलना है, बस मैं तो यही करना चाहता हूँ। और आप दर्शनों को जानते हैं और वहाँ क्या घटित हुआ। अब इसमें मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, यदि हमारी बहन थोड़ी दुर्बलता अनुभव करती है तो भाई रॉय और वो बहन कहीं बाहर जाना चाहें और उन्हें यहाँ कमरे में बैठाना चाहें जहाँ पर उन्हें अधिक हवा मिल सके, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ कि वो अब ठीक हो जाएंगी। देखिए ये ठीक है, वो थोड़ी सी बीमार हैं, और इसलिए मैं आपको बताता हूँ, यदि आप उनको यहाँ लाना चाहते हैं जहाँ हवा इन खिड़कियों को उठा दें, भाई रॉय यदि बहन वहाँ से होकर आना चाहें वो ठीक रहेगा। देखिए यदि वो यहाँ आना चाहती हैं, अच्छा है, बस इसे डरिए नहीं। जब वो यहाँ से निकलती हैं तो मैं उन पर हाथ रखना चाहता हूँ, एक मिनट के लिए। आप सब मुझे क्षमा करें और परमेश्वर मुझे इसके लिए क्षमा करे। भाई ये ठीक है। स्वर्गीय पिता, ये आपकी पुत्री यहाँ इस प्रातः बैठी हुई है और वो संदेश सुनने के लिए यहाँ आई है, और शैतान उसको इससे हटाना चाहता है, परंतु वो ये नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकता, शैतान नहीं कर सकता, यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, अच्छा वो दरवाजा, मैं सोचता हूँ कि यदि कुछ भाइयों तब हवा यहाँ से होती हुई आपके पास आ सकती है। ओ, आप भीड़ के विषय में बात करते हैं, आप विदेश में उन कुछ स्थानों पर देखें जहाँ वे एक दूसरे पर कोढ़ और कैंसर के साथ चढ़े रहते हैं, और वो कमाल है, आप अपनी सांस भी नहीं ले सकते, आप जानते हैं इस तरह की चीजों में। उनकी बड़ी बड़ी इमारतें बीमारियों से दूषित होती हैं, आप जानते हैं कोढ़ कैसा होता होगा, वहाँ बिना कानों के पड़े रहते हैं, उनका आधा चेहरा कोढ़ से खाया हुआ है, और बिना हाथों के, पैरों की जगह खूंटियाँ और इस तरह की चीजें एक दूसरे पर पड़े हुए, और तब उनमें से बहुत से मर रहे होते हैं, वहाँ एक दूसरे पर पड़े हुए ढेर सा लगाते हैं। आप जानते हैं कि संदेश सुनने के लिए कहीं अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ उस दर्शन में जो मुझे मिला। मैं वापिस चलूंगा क्योंकि मैंने दो दर्शन आपको बताए, आपको उनमें से एक बताऊँ। मैं पश्चिम दिशा में था, मेरे मन में सदा यही इच्छा रही, अब इस प्रातः संदेश का उद्देश्य ये है कि कलीसिया को प्रत्येक बात में नियुक्त करना, जहाँ तक वो मुझे करने दे, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, जब तक कि जहाँ तक मैं जा रहा हूँ। और ये मुझे ध्यान में आया, इसलिए मैंने कलीसिया को तैनात करना चाहा। अब ये केवल इस आराधना के लोगों के लिए है। देखिए यहीं। और अब इस दर्शन में पहला वाला जो यहाँ घटित हुआ, मुझे दर्शन मिलने के बाद मैं इतना दुर्बल था और मैं अपना सारा लहू गंवा चुका था और मैंने सोचा कि मैं अंत न होने वाली अनंतता में डूब रहा हूँ। आप में से बहुत सो ने मुझे ये बताते हुए पहले सुना है, और अंत न होने वाली अनंतता में डूब रहा हूँ। पहले मैं बादलों जैसे में से गुजरा और तब अंधकार में से निकला और नीचे नीचे डूब रहा था। और देखिए, पहली चीज, मैं नष्ट लोगों के भाग में पहुंच गया और वहां मैं चिल्लाया और मैंने देखा वहां किसी भी चीज का कोई आधार नहीं था। मैं नीचे नीचे गिरते हुए कभी नहीं रुक, ऐसा लग रहा था कि मैं अनंतता के लिए गिरने जा रहा था। वहां कहीं भी कोई ठहराव नहीं था। और अब कुछ दिनों पहले मुझे महिमा में लोगों के साथ दर्शन मिला, कितना भिन्न था, अंतर था। परंतु इसमें मैं गिर रहा था, अंत में मैं अपने पिता के लिए चिल्लाया। जीवन काल में बालक होने के नाते यही था जो मैं कर सकता था। मैं अपने पिता के लिए चिल्लाया और मेरे पिता वहाँ ना थे। और मैं अपनी माँ के लिए चिल्लाया, कोई मुझे पकड़ लो, और वहाँ माँ नहीं थी। मैं चला जा रहा था और तब मैं परमेश्वर के लिए चिल्लाया, वहाँ परमेश्वर नहीं था, वहाँ कुछ भी नहीं था। और कुछ समय पश्चात मैंने एक बहुत शोक भरी आवाज सुनी जो कि मैंने कभी नहीं सुनी, और ये भयंकरता से भरी भावना थी। कोई मार्ग न था, यहाँ तक कि उसके मुकाबले में सचमुच की आग भी आनंददायक थी जो कि ये था। वे दर्शन कभी भी गलत नहीं हुए, और ये एक बहुत ही भयानक अनुभव था जो कभी मुझे हुआ। और ये क्या हुआ, मैंने एक शोर सुना, वो आवाज भूत प्रेतों जैसी थी। और जब ये हुआ तो मैंने देखा कि एक स्त्री आ रही थी और उनके ऊपर हरा कुछ था, उनका केवल मुख ही दिख पा रहा था और उनकी आंखों के नीचे हरा हरा था और उनकी आंखें पीछे की ओर खिंची सी थी, जैसे कि आजकल वे अपनी आंखों को रंगती हैं पीछे की ओर, नैन जैसे निकालती हैं, और उनकी आंखें और चेहरा, और वे जा रही थी। ओह 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 ओह, और मैं एकदम चिल्ला उठा, ओ परमेश्वर मुझ पर दया कर, दया कर, ओ परमेश्वर आप कहाँ हैं? यदि आप केवल मुझे वापस जाने देंगे और जीने दें तो मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि एक अच्छा लड़का बनूंगा। अब केवल यही था जो मैं कह सकता था। अब परमेश्वर जानता है कि उस न्याय के दिन परमेश्वर मेरे इस बयान के लिए मेरा न्याय करेगा। यही जो मैंने कहा, प्रभु परमेश्वर मुझे वापस जाने दे और मैं तुझसे प्रतिज्ञा करूंगा कि मैं एक अच्छा लड़का बनूंगा। और जब मुझे गोली लगी थी, मैंने झूठ बोला था, मैंने हर वो कार्य किया था जो किया जाना था। केवल एक बात जो मैंने कही, मैं जितना भी इसे शुद्ध रख सकता था जबकि मैं अब हूँ। और जब मैंने नीचे की ओर देखा तो मैं आधा चिथड़ों में उड़ा हुआ लगभग दो हिस्सों में था। मैंने कहा, परमेश्वर मुझ पर दया कर, आप जानते हैं कि मैंने कभी व्यभिचार नहीं किया। केवल यही बात थी जो मैं परमेश्वर से कह सकता था। मैंने उसकी क्षमा को कभी भी ग्रहण नहीं किया था, और ये सारी बातें जो मैं कहता था, कहा मैंने कभी व्यभिचार नहीं किया। और तब वे मुझे वहाँ बाहर ले गए और तब मैं उसमें चिल्लाया, परमेश्वर मुझ पर दयावान हो, मैं एक अच्छा लड़का बनूंगा यदि केवल आप मुझे वापस जाने दें, क्योंकि मुझे मालूम था कि कहीं परमेश्वर है। और इन अजीब से जीवों से जो चारों ओर हैं, मेरी सहायता कर। मैं वहाँ पर तब नया ही पहुँचा था और बहुत ही भद्दा डरावना अभक्ति अनुभव वहाँ था। ऐसा लगता था बड़ी बड़ी आँखें, बड़ी बड़ी पलकें इस तरह से बाहर निकली हुई बिल्ली की तरह पीछे की ओर इस प्रकार से, और वो हरी चीज, और जैसे कि घोड़ा हो गया हो या ऐसे ही कुछ। और वे ओ ओ ओ करते हुए जा रहे थे। ओ कैसी भयानक अनुभूति थी। और जब मैं तब एक ही पल में मैं फिर अपने प्रकृति जीवन में आ गया, उस बात ने मुझे परेशान किया। मैंने सोचा, ओह ऐसा ही है तो मैं इस प्रकार के स्थान में कभी नहीं जाऊंगा, कोई और भी मनुष्य ऐसी जगह नहीं जाएगा। 7 महीने पश्चात मुझे दर्शन मिला कि मैं पश्चिम में खड़ा हूँ और उस सुनहरी क्रूस को अपने ऊपर आते देख रहा हूँ। और मैं जान गया कि कहीं कोई स्थान है जो श्रापित है। अभी चार सप्ताह पहले तक मैंने कभी भी इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया था। पत्नी कभी भी इस प्रकार से नहीं सोचा था। लगभग चार सप्ताह पहले पत्नी और मैं बाजार हाट करने ट्यूशन गए थे, और जब हम वहाँ बैठे हुए थे, पत्नी हम दोनों नीचे सीढ़ियों से गए, वहाँ आवारा लड़कों की टोली थी। उनके बाल छितरे हुए, आप जानते हैं जैसे स्त्रियाँ करती हैं, और सामने की ओर कंघी से फुलाए हुए और ऊंची ऊंची पैंटे पहने हुए थे, मेरे विचार में बिटनिक्स या जो कुछ भी आप कहते हो। और वे वहाँ थे और हर कोई उन्हें देख रहा था, और उनके सिर ऐसे बड़े बड़े उन स्त्रियों जैसे वो यहाँ पहनती हैं, वाटर हेयर वाली स्टाइल, बालों की कटिंग आप जानते हैं, और वे वहाँ नीचे थे। और एक नवयुवती वहाँ आई और उसने कहा, आप इस विषय में क्या सोचते हैं? मैंने कहा, तब आपको अपने पर लज्जा आनी चाहिए यदि आप ये सोच सकती हैं। मैंने कहा, उसको भी उतना ही करने का अधिकार है जितना आपको, आप में से कोई भी ठीक नहीं है। इस प्रकार मैं सीढ़ी से ऊपर चला गया और बैठ गया, और जब मैं बैठ गया तो वहाँ एक स्वचालित सीढ़ी थी, ये जेसी पेनी की बड़ी भव्य दुकान में थी, और वह स्वचालित सीढ़ी लोगों को ऊपर ला रही थी। सही में मेरे पेट में गड़बड़ हुई उन स्त्रियों को देखकर जो ऊपर आ रही थी, नवयुवतियाँ, बूढ़े और विभिन्न प्रकार के झुर्री वाले युवक, और हर प्रकार के छोटे छोटे कपड़े पहने हुए, उनके घिनौने शरीर और स्त्रियों की वासनायुक्त वेशभूषाएं, उन बड़े सिरों के साथ इस तरह के, और वे यहाँ आते हैं। और एक उस स्वचालित सीढ़ी से उतरकर सीधे इस तरह से आ रही थी जहाँ की मैं पीछे कुर्सी में सिर नीचे किए बैठा था, और मैंने घूमकर देखा और उनमें से एक को ऊपर आते हुए कह रही थी, वो दूसरी स्त्री से स्पेनिश बोल रही थी, वो श्वेत स्त्री थी, स्पेनिश स्त्री से बात कर रही थी। और जब मैंने देखा, मैं एकदम से बदल गया कि मैंने ये पहले भी देखा है। उसकी आंखें आप जानते हैं आजकल स्त्रियां कैसे करती हैं, आंखों को रंगती हैं, अभी हाल ही में बिल्ली की तरह आप जानते हैं इस तरह से पहनती हैं, और बिल्ली की आंखों जैसे चश्मे और वगैरह वगैरह, आप जानते हैं इस तरह से ऊंची आंखें, और वह हरी सामग्री आंखों के नीचे, ये वो चीज थी जो मैंने बालकपन में था जब देखी थी, बिल्कुल यही वो स्त्री थी। और मैं पूरा सुन्न हो गया और चारों ओर देखने लगा, और वहाँ वे लोग साक्षात थे, आप समझते हैं, वहाँ इमारत में खरीद वगैरह के लिए जा रहे थे, और मैं बस ऐसा लगा कि मैं एक पल के लिए बदल गया हूँ। और मैंने देखा और मैंने सोचा, यही मैंने नरक में देखा था, वहाँ वे विनाशकारी थे। मैंने सोचा, क्योंकि वे नरक में थे, किसने उनको इस प्रकार का बना दिया, उनकी आंखों के नीचे हरा नीला, और यहाँ पर वो स्त्रियाँ थी जो कि हरे नीले रंग से रंगी हुई थी। लगभग 40 वर्ष पहले दर्शन ने इसी प्रकार कहा था। देखिए, लगभग 40 वर्ष पहले ये क्या हुआ था, अब मैं 54 का हूँ, तब 14 का था, इसलिए लगभग 40 वर्ष पहले मैं, और ये जैसे भी न्यायिक अंक है, आपने देखा। अब वहाँ मैं वो देख रहा था, और जब मेरी पत्नी आ गई तो मैं उससे बोल भी ना सका। वहाँ वो सारा और बच्चों के लिए कुछ लेने का यत्न कर रही थी, कुछ यूनिफॉर्म या कुछ विद्यालय के लिए, और मैं उसे यहाँ तक कुछ बोल भी ना सका। वो बोली, बिल, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने कहा, प्रिय, मैं लगभग मरे हुए मनुष्य जैसा हूँ। और उसने कहा, क्या बात है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? मैंने कहा, नहीं, अभी अभी कुछ घटित हुआ। वो अभी भी नहीं जानती, वो इस टेप के वापस आने की प्रतीक्षा कर रही है। मैंने इसे कभी भी किसी को नहीं बताया, और मैंने सोचा, मैं प्रतीक्षा करूंगा, जैसा कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि पहले कलीसिया को बताऊंगा, समझे, कलीसिया को बताऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा थी। और आप आज रात्रि के बाद अनुभव करेंगे जिस कारण मैंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया, समझे। तब मैंने सोचा, जैसे ही मैंने उन विनाशकारी दिखने वाली उन स्त्रियों की आंखों पर ध्यान दिया, वहाँ स्पेनिश, फ्रेंच और इंडियन और श्वेत सब एक साथ थी, परंतु वे बड़े सिर आप जानते हैं कंघी से उलझाकर बनाए जाते हैं, जिस तरह से वो पीछे को बनाते हैं उठाकर और तब बाहर को लाते हैं, आप जानते हैं कि वो किस तरह से करते हैं, इस तरह से बनाते हैं। और तब वो विनाशकारी दिखने वाली आंखें और रंगी हुई आंखें, वे पीछे की ओर बिल्ली की आंखों की तरह होती है, और वे बातें कर रही थी, और मैं वहाँ जेसी पेनी की बड़ी दुकान में खड़ा हुआ फिर से नरक में पहुंच गया। मैं बहुत डर गया। मैंने सोचा, प्रभु, सही है कि मैं मरा नहीं हूं, और इस सब के बाद आपने मुझे इस स्थान में आने दिया। और वे वहाँ यही कर रहे थे, जिस प्रकार से कि यहाँ उस दर्शन की तरह आप इसे सीधे अपने कानों से सुन सकते हैं, समझे? बस धीरे धीरे बुदबुदाते हुए और जा रहे हैं लोग, उसमें से वे स्त्रियाँ स्वचालित सीढ़ी से ऊपर आ रही हैं और वहाँ इधर उधर घूम रही हैं, और वो वहाँ वे अजीब सी हरी आंखों वाली और शोक से भरी हुई, और पत्नी ऊपर आई और मैंने कहा, प्रिय मुझे एक मिनट के लिए अकेला छोड़ दो। मैंने कहा, यदि आप बुरा ना माने तो मैं घर जाना चाहता हूँ। और उसने कहा, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैंने कहा, नहीं प्रिय, तुम अपना काम निपटाओ, यदि आपको कुछ खरीदना है तो। उसने कहा, नहीं सब हो गया। और मैंने कहा, मुझे अपना हाथ पकड़ने दो, समझे? और मैं बाहर आ गया। उसने कहा, क्या बात है? मैंने कहा, मैडम मैं वहाँ कुछ घटित हुआ। और जबकि मैं उसमें था तो मैंने ये सोचा, हम किस दिन में रह रहे हैं? क्या ये तीसरा खिंचाव हो सकता है? यहाँ अब मेरे पास कुछ लिखित नोट हैं। यीशु, हम पाते हैं कि यीशु ने अपनी सेवकाई में लोगों में उसके प्रचार करने के पश्चात, अब हम इस पर वचनानुसार आ रहे हैं, यीशु की सेवकाई समाप्त हो जाने के पश्चात और उसकी सेवकाई लोगों द्वारा अस्वीकार कर दी गई। अब आप पंक्तियों के बीच में पढ़ेंगे, आप अपना विचार बनाएं। याद रखिए, मैंने आपको क्या बताया पहले पहल। उसके पश्चात जब वो प्रचार कर चुका, वो उस दिन के लिए प्रतिज्ञा अनुसार आया, ये हम सब जानते हैं। वचन यीशु क्रिस्त को मसीहा प्रमाणित करते हैं, ये ठीक बात है, पूरी तरह दृढ़ता से परमेश्वर द्वारा प्रमाणित किया हुआ और उसका वचन कि वो मसीह था। यदि कोई प्रश्न करे तो प्रश्न ही नहीं होता। यदि आप करते हैं तो आपको अल्टर के पास आना चाहिए कि वो मसीह नहीं था, वो स्पष्ट रूप से प्रमाणित मसीहा था। परंतु उसके स्पष्ट होने के बाद परमेश्वर ने उसे प्रमाणित किया, जैसे पत्रस पेंतिकुस्त के दिन जब उसने वहाँ सनहेद्रिनों से बात करी, चौथे लगभग चार दिन के बाद, उसने कहा, यीशु नासरी एक व्यक्ति तुम्हारे बीच परमेश्वर द्वारा चिन्ह और चमत्कारों द्वारा प्रमाणित किया गया, जो कि परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा किए, जिसके कि हम सब गवाह हैं। देखा, तुमने उसे छल भरे हाथों से पकड़ा और जीवन के राजकुमार को क्रूस पर चढ़ा दिया, जिसको कि परमेश्वर ने जिला दिया, और ये सारी चीजें प्रकट की जिन्हें तुम देखते हो, समझे? मसीह जीवित रहा, जीवन चर्या में वो आज भी जीवित है। यीशु के स्पष्ट रूप से आ जाने के बाद उसने अपने आप को प्रमाणित किया, परमेश्वर ने उसे प्रमाणित किया और उसने भविष्यवाणी की। उसकी भविष्यवाणी के दिनों के पश्चात, यद्यपि वो वचन द्वारा प्रमाणित की गई, लोगों ने उसे अस्वीकार किया, ये ठीक बात है। उनके यहाँ अस्वीकार करने के पश्चात भी उसने प्रचार किया जिनकी बचने की संभावना थी। याद रखिए, जब वो प्रचार कर रहा था तब वहाँ किसी के भी बच जाने की संभावना थी। हम नहीं जानते कि वे कौन हैं, वे पहले से ठहराए हुए हैं, परंतु उसने लगातार प्रचार किया। परंतु उसके प्रचार करने के दिनों के पश्चात उसकी सेवकाई निरंतर बनी रही, क्योंकि अंतिम झुंड जिसको उसने प्रचार किया वे प्राण थे जो अधोलोक में थे, वे क्षमा नहीं किए जा सकते हैं। मैंने इसको बाइबल से स्पष्ट रूप से दूसरे पत्रस से पढ़ा, समझे? वो गया और उन प्राणों को जो अधलोक में थे प्रचार किया, जो कि नरक है, न्याय के दिन तक के लिए बंदी किए गए हैं। देखिए, न्याय अब नहीं है और अभी जलने वाला नरक नहीं है। कोई आपसे कहे वो इस समय जलते हुए नरक में है, ये गलत बात है, समझे? एक न्यायी जो इस पृथ्वी का है, किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं करता जब तक उसे न्याय परीक्षण में से न गुजारे, और परमेश्वर कभी किसी व्यक्ति को अग्नि भट्टी में तब तक न फेंकेगा जब तक वो परमेश्वर अपनी व्यवस्था से उसे अपराधी न ठहराए। उसने अनुग्रह को अस्वीकार किया, इसलिए आप देखिए, उसे न्याय परीक्षण में से निकलना, और वो न्याय परीक्षण महान श्वेत सिंहासन का न्याय है। परंतु अब वो एक स्थान में है जो कि कैद घर कहलाता है। जैसा कि मैंने दोनों स्थानों के दर्शन देखे और परमेश्वर के अनुग्रह से, मैं इसलिए ये नहीं कहता कि अपवित्र करने वाला बनूं। यदि ये गलत है तो परमेश्वर मुझे क्षमा करे। मैं विश्वास करता हूँ मैं दोनों स्थानों में था, देखिए दोनों स्थानों में, और मैंने छुड़ाए हुओं और आशीषितों को देखा, और मैंने नष्ट हुओं और वे कहाँ हैं देखा। और इसी कारण आज मैं आपका भाई होने के नाते खड़ा हूँ कि आपको चेतावनी दूँ कि नीचे जाने वाले मार्ग से भाग जाएं। आप उस मार्ग पे कभी ना जाएं। आपके पास जीवित रहने के लिए सब कुछ है, उस ऊपर वाले आशीषित मार्ग के लिए जहाँ पर बचाए हुए आनंद में हैं और शांति में हैं, और वे पाप नहीं कर सकते, वे दुखित नहीं हो सकते, वे नहीं हो सकते, वहाँ कुछ भी नहीं है, वे सिद्ध हैं। मैंने दोनों स्थानों को देखा है। मैं जानता हूँ किसी मनुष्य के लिए ऐसा बयान देना भयानक बात है, परंतु परमेश्वर मेरा न्यायी है। मैं गंभीरता पूर्वक विश्वास करता हूँ कि मैंने दोनों स्थान देखे हैं। मैं विश्वास करता हूँ। और ओ, किसी भी व्यक्ति से वहाँ उस नष्ट हुए लोगों के क्षेत्र में प्रवेश करना दूर रहे। यदि आप खड़े हुए हों और आपके अंदर गर्म सरिया डाल दिया जाता तो आप पीड़ा से हर प्रकार से तड़प जाते, तो भी वो शैतान के उस स्थान की पीड़ा से कम होगा। वहाँ कुछ नहीं हो सकता। मनुष्य का मस्तिष्क कुछ नहीं समझ सकता कि उन नष्ट लोगों का क्षेत्र क्या है। इसे समझाने की कोई विधि नहीं है और आशीषित लोगों की क्षेत्र को समझने के लिए कोई विधि नहीं है। वो इतना भव्य है, वो बहुत भयानक है और ये बहुत भव्य है। ये हंसी ठट्टे से बहुत विशिष्ट है। इसलिए यदि कोई मुझे सुन रहा हो, और मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि मैं कितने दिन और हूँ। मैं बहुत जल्दी ही 55 वर्ष का हो जाऊंगा और प्रकृति के अनुसार मैं नहीं जानता, हो सकता है मेरे पास बहुत वर्ष ना हो। मैं नहीं जानता ये टेप कहाँ जाएंगे, परंतु हर कोई सुन ले जो यहाँ टेप और या जहाँ कहीं ये जाए, कभी भी उन नष्ट हुओं के क्षेत्र में ना जाएं। जितना वो खराब है आप उसका उतना चित्रण नहीं कर सकते। और आप जो कुछ भी करें, आप कभी भी उन आशीषित लोगों के क्षेत्र को ना भूलें। मैं संत पौलुस के साथ ये कहूँगा, आँखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना या इसमें से कुछ भी मनुष्य के हृदय में नहीं समाया कि जो उससे प्रेम करते हैं परमेश्वर ने उनके लिए क्या क्या रखा है। इसलिए यदि आप टेप सुन रहे हो तो टेप रिकॉर्डर को रोक दें और प्रायश्चित करें। यदि आप बचे हुए नहीं हैं और परमेश्वर के साथ हो लें, मैं अपने हृदय में विश्वास करता हूँ कि मैं ये अपने पहले अनुभव के साथ बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ यदि इन दर्शनों ने मुझे धोखा दिया तो परमेश्वर मुझ पर इस तरह का बयान देने के लिए अनुग्रह करे। परंतु मैं हृदय की निष्कपटता से जानता हूँ कि एक भी दर्शन कभी भी असफल नहीं हुआ। मैं विश्वास करता हूँ मैं दोनों स्थानों में था। किसी भी मनुष्य से ये दूर रहे कि वो इस मार्ग में नीचे की ओर जाए। यीशु ने जब अपनी सेवकाई समाप्त कर दी, तब उसने उन प्राणों को प्रचार किया जो बचने योग्य नहीं थे। वे कभी भी नहीं बच सकते थे। बाइबल हमें ये बताती है, जो प्राण कैद में थे जिन्होंने प्रायश्चित नहीं किया था, उसने जाकर उन प्राणों को प्रचार किया। जब उन पर अनुग्रह किया गया था, तब उन्होंने अनुग्रह का तिरस्कार किया और अब वे न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओ, ये कैसा समय रहा हुआ होगा। ओ, मेरी इच्छा ये है कोई ऐसा मार्ग होता जिससे मैं संसार को इस बात से झकझोर देता और उन्हें दिखा देता कि वास्तविकता क्या है। और यीशु ने स्वयं कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। और जैसे उसे पिता ने प्रचार करने को भेजा जीवितों को, उसके पास जिनके पास आशा थी, और तब उसी संदेश को उनके सामने प्रस्तुत किया जिनके पास कोई आशा नहीं थी। ये ऐसा लगता है कि ये इस समय के लिए ठीक बैठता है, इसको करना ही होगा, क्योंकि मसीह का आत्मा हम में रहता है और उसके स्वभाव को बदल नहीं सकता या परमेश्वर की पद्धति को नहीं बदलता। उसे हर पीढ़ी में एक सा ही रहना है। कहा कि जैसे पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। सेवकाई बिल्कुल एक सी होनी चाहिए, इसलिए कि उसने कहा, मैं देखता हूँ कि आप में से कुछ लोग वचन लिख रहे हैं, यूहन्ना 14:12। वो जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। देखा, वे कार्य, नष्ट हुओं को प्रचार करना, बीमारों को चंगा करना और उनको जिनका बचना कभी भी संभव नहीं है, समझे। और ये उसी प्रकार से होते गए। इसलिए ये हुआ, क्या ये हुआ, मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि यीशु मसीह की सेवकाई उसकी कलीसिया में अंतिम दिनों में पुनः अवतरित हुई। हम में से बहुत से यही विश्वास करते हैं। मैं आपके साथ विश्वास करता हूँ, मैं ये विश्वास करता हूँ। यदि मैंने ये विश्वास नहीं किया तो मैं इस विषय में कुछ और करूँगा, क्योंकि आखिरकार ये मैं हूँ जो कि यहाँ इससे संबंधित हूँ। और यदि परमेश्वर का आत्मा आप में है तो आप लोगों के प्रति चिंतित हैं। एक वचन था जो मुझे सदा परेशान करता था कि मूसा कैसे परमेश्वर को परमेश्वर से अच्छे विचार दे सकता है, जब तक मैंने ये नहीं पाया कि वो मसीह का आत्मा मूसा में था, समझे। परमेश्वर ने कहा, मूसा अपने आप को उनसे अलग करो, मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा और तुझ से आरंभ करूंगा। उसने कहा, प्रभु, उसने अपने आप को बिचवाई में डाल दिया और कहा, मुझे ले ले, मेरा नाम काट दे। उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने बलवा किया, उसका हृदय उनके लिए रो पड़ा, समझे। और जब एक सेवक जिसके हृदय में उसके लोगों के लिए, कैसे मैं अपने में न्यायोचित अनुभव कर सकूंगा परमेश्वर के सामने और अपने आप में कि मैं किसी भी चीज को लोगों से छिपा रखूं जिसको आप अपने से अधिक प्रेम करते हैं। कैसे मनुष्य किसी व्यक्ति को कलीसिया में हाथ पकड़कर शामिल कर सकता है, या किसी छिड़काव से, या किसी गलत बपतिस्मे से, या किसी और चीज से, और उन्हें झूठ के प्रभाव में रखे और जानता है कि बाइबल वहाँ रखी है और कहता है वो व्यक्ति से प्रेम रखता है। यद्यपि मुझे अपनी जीविका के लिए निवेदन करना पड़ता है, ये जो कुछ भी है, मुझे परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति ईमानदार होना है कि उन्हें सत्य बताऊं। मैं कभी भी धोखेबाज ना बनूं। जिससे मैं प्रेम करता हूं, उसे मैं कैसे धोखा दूं? यद्यपि मुझे उनका हृदय दुखाना पड़ता है, तब भी मैं उनसे प्रेम करता हूं। यही कारण है कि आप अपने बालक को थप्पड़ मारते हैं, क्योंकि वो आप उससे प्रेम करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि आप उसे पसंद नहीं करते, इसलिए क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। यदि वो गलत है, यदि आप उसे ठीक नहीं करते, तो वो मर जाएगा। इसी प्रकार से सेवकाई भी है, जैसे कि ये थी, उसी प्रकार से ये आज भी है। ये प्रचारित किया जा चुका है और पूर्णतः परमेश्वर के वचन से प्रमाणित है कि ये मनुष्य नहीं हो सकता, ये तो परमेश्वर होना चाहिए, यही होना चाहिए। ध्यान दें, वही आत्मिक चिन्ह जो यीशु ने किए, अंत के दिनों में वे पृथ्वी पर फिर से घटित होंगे। वे ही आत्मिक चिन्ह जिनसे उसने अपने आप को मसीहा प्रमाणित किया, उन्हीं ने उसे आज प्रमाणित किया है, वो अब भी मसीहा है। वे ही भौतिक चिन्ह पृथ्वी पर प्रकट हुए, वो उसके द्वारा प्रकट हुआ है, जो कि वो था। वही अग्नि स्तंभ जो संत पौलुस ने देखा, वही वाला, वही सब फिर से उसी स्वभाव में फिर से घटित हुआ, उन्हीं चीजों को किया। यीशु ने दावा किया कि उसने तब तक कुछ नहीं किया जब तक पिता ने उसे नहीं दिखाया, और पिता पवित्र आत्मा है। हम ये सब अनुभव करते हैं, ये केवल परमेश्वर का कार्य क्षेत्र है। यदि ये नहीं है तो फिर उनमें से कौन यीशु मसीह का पिता है? यीशु ने कहा परमेश्वर उसका पिता था, और बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा उसका पिता था। अब आप उसका अवैध संतान नहीं बना सकते, इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर है, इसलिए यीशु परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये एक परमेश्वर के तीन कार्य क्षेत्र हैं। ये एक ही परमेश्वर के तीन गुण हैं। आप परमेश्वर के भाग हैं और मैं परमेश्वर का भाग हूँ, देखिए। परंतु मैं सारा परमेश्वर नहीं हूँ, न ही आप सारे के सारे परमेश्वर हैं, समझे समझे। ये परमेश्वर के गुण हम पर हैं, जैसे यीशु मसीह के लेपालक पुत्र, जैसे परमेश्वर स्वयं हमारे लिए शरीर बन गया कि हमारे लिए मरे। पवित्र आत्मा ने सदा उसे आने वाली बातों को दिखाया, और वो कभी गलत नहीं था, ये पूर्णतः सिद्ध था। क्या ये ठीक है? उसने प्रशंसा अपने लिए नहीं ली, उसने परमेश्वर को प्रतिष्ठा दी। उसने कहा, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, परंतु जो वो पिता को करते हुए देखता है, और वो पिता, वो पवित्र आत्मा उसका पिता था। क्या ये ठीक है? यूसुफ, तू जो दाऊद की संतान है, मरियम अपनी पत्नी को ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है, जो कि उसका पिता था। और पवित्र आत्मा ने यीशु को आने वाली बातें दर्शाई, उसको वो बातें बताता था, और वो परमेश्वर भविष्यद्वक्ता था, क्योंकि प्रभु का वचन केवल भविष्यद्वक्ता के पास आता है। ये दर्शाने के लिए कि वचन छोटे रूप में आए भविष्यद्वक्ताओं ने वही लिखा जो प्रभु ने उन्हें बताया, परंतु उसने कुछ नहीं लिखा क्योंकि वो वचन था, वो वचन था। ध्यान दें, वही पवित्र आत्मा जो उसमें रहा, फिर थोड़ी देर के बाद और संसार मुझे फिर न देखेगा, तो भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा और तुम्हारे अंदर होऊंगा इस जगत के अंत तक। उसने कहा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं पिता था जो कि उसमें था, वही तुम्हारे पास आएगा। और उसने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो ये बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई प्रकट करेगा और आने वाली बातें दिखाएगा। अब आप वहीं पर हैं। आप ध्यान दें कि जैसे पवित्र आत्मा ने कलीसिया में कार्य किया, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा ने वही कार्य आज किए। अग्नि स्तंभ द्वारा घोषणा की बिल्कुल वैसे ही जैसे आरंभ में था, वही चीज। और ये देखते हुए कि ये यीशु पर उतरा, यहूदा ने यरदन नदी पर उद्घोषणा की और हर बात को सिद्ध किया, यहाँ तक कि उसका वैज्ञानिक चित्र भी। इस पर विवाद नहीं हो सका। ये वैज्ञानिक तौर पर था, ये पदार्थ था, ये कोई कल्पित विचार नहीं था, ये कोई मनोवैज्ञानिक नहीं था। जैसा कि जॉर्ज जे लेसी ने कहा कि कैमरे की यांत्रिक आंख मनोविज्ञान को चित्रित नहीं करेगी, उजियाला लेंसों से टकराया है। और अब आप कलीसिया क्या कहती है कि लगभग 6 या 8 महीने पहले यहीं खड़े होकर कह रहा था कि यहोवा यूं कहता है कि मैं ट्यूसान एरिजोना जा रहा हूं और वहां एक धमाका होगा और 7 स्वर्गदूत प्रकट होंगे। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने इसको इतना वास्तविक कर दिया जब तक कि लुक पत्रिका ने इसके चित्र नहीं ले लिए। आत्मिक पहले से देखा हुआ इतना साकार कर दिया कि बिल्कुल वैसा ही 7 स्वर्गदूत जो कि सारे वचनों को पूरा कर समेट लाए, क्योंकि बाइबल के सारे भेद 7 मोहरों में हैं। हम जानते हैं कि ये विशेष पुस्तक है, ये मोहर की हुई है और इन्हीं मोहरों में से इस पर बाहर से छाप की गई है। ये संपूर्ण पुस्तक का भेद है जो उन 7 मोहरों में है जो कि प्रभु हमारे लिए लाया। और यहाँ आज एक व्यक्ति बैठा है, वो ठीक वहीं पर उपस्थित था जब ये घटित हुआ था। लुक पत्रिका ने भी यही सिद्ध किया है कि ये वास्तव में हुआ था, क्योंकि ये परमेश्वर था जिसने ये बताया। ये परमेश्वर जो अपने वचन के समर्थन में खड़ा था, जब वो कहता है वो ये करेगा तो वो उसे करता है। इसलिए ये कोई मेरे समान सांसारिक मनुष्य नहीं जो कि आप लोगों के मध्य में है, ये अनंत परमेश्वर है। वो मनुष्य को प्रयोग में लाता है, ये सत्य है। जो कुछ भी वो मनुष्य के द्वारा करता है उससे बाहर वो कुछ नहीं करता। हम ये अनुभव करते हैं कि वो जो उसका प्रतिनिधि है, वो जिसको उसने चुना है, क्यों ये मैं नहीं जानता। वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए सूर्य को बना सकता था, वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए वायु को बना सकता था, वो कामों को करने के लिए वायु को बना सकता था, परंतु उसने मनुष्य को चुना। ये उसका विचार था कि मनुष्य मनुष्य से बोलेगा, न कि मनुष्य स्वयं, परंतु प्रभु का वचन भविष्यद्वक्ताओं के पास आता है, भविष्यवाणी करने वाले प्रचारकों को। और एक भविष्यवाणी करने वाला जो मूल वचन को नकारता है, वो कैसे सच्चा भविष्यद्वक्ता हो सकता है? समझे? वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो वचन की सत्यता को अस्वीकार कर रहा है। और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो ये वचन स्वयं है, यदि ये वचन की सत्यता के साथ प्रचारित किया गया है और पवित्र आत्मा की सच्चाई के साथ, तो ये हर उस प्रतिज्ञा को जिसकी प्रतिज्ञा की गई है प्रकट करेगा। इसी से हम जान जाते हैं कि ये ठीक है या नहीं। यही है जो यीशु ने कहा, यदि मैं वो नहीं करता जो मेरे विषय में लिखा गया है तो फिर मेरा विश्वास मत करो। समझे? अब हम ये बातें देखते हैं। याद रखें, 7 मोहरें खुल गई हैं और जब वे प्रकट हुए 7 सत्य, उनमें से एक की वो हमें जानने की अनुमति नहीं देगा। हमें से कितने यहाँ 7 मोहरों के समय थे और सुनी? मैं समझता हूँ आप सब। देखिए, 7वीं मोहर की वो अनुमति नहीं देगा। वो वहाँ कमरे में खड़ा हुआ और उसमें से प्रत्येक मोहर को प्रकाशित किया। और यदि मैंने अपने जीवन में प्रेरित होकर कोई चीज प्रचारित की है तो वो ये ही थी। और ये आपके लिए सत्य होनी चाहिए। यहाँ खड़े होकर आपको बताया कि ये घटित होने जा रहा है और वहाँ जाओ, और यहाँ तक कि विज्ञान और हर चीज ने, वैज्ञानिक खोज और हर चीज लोगों के लिए भेद था, और सिद्ध कर दिया कि ये बिल्कुल वही घटित हुआ। और वापस आकर उसे खुलते हुए सुना और प्रत्येक वचन को सही सिद्ध किया। हम किस दिन में जी रहे हैं, हम कहाँ हैं? और याद रखें, 6वीं मोहर में, जहाँ की सारी 7 तुरही 6वीं मोहर में बजती हैं, जब हम उसमें जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्रत्येक 7 तुरहियाँ 6वीं मोहर में पूरी होती हैं। 7 सदा ही भेद रहा है। इस 7 पर ध्यान दीजिए जो पूरा होता है, ये प्रभु का आगमन है। स्वर्ग निश्चल था, शांत, कोई भी हलचल नहीं हुई, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा, यहाँ तक कि स्वर्ग का कोई स्वर्गदूत नहीं जानता कि मैं कब वापस आऊंगा, यहाँ तक कि मैं भी स्वयं नहीं जानता किस समय पिता ने इसे अपने मस्तिष्क में रखा है, केवल परमेश्वर जानता है। आत्मा कहा, मैं ये नहीं जान पाया, तब ये प्रकट नहीं हुई थी। जब 7वीं तुरही फूंकी या 7वां दूत एक मोहर खुली, तब वहाँ स्वर्ग में शांति थी। देखिए, इससे कुछ नहीं पता चलता कि क्या घटित होगा। परंतु छठवीं मोहर में जहाँ ये तुरियां खुली, याद रहे वहीं पर हम पाते हैं कि मेमना सामने आया, दृश्य में प्रकट हुआ और उसने अनुग्रह की जगह छोड़ी। उसके छुटकारे का कार्य समाप्त हुआ और वो आया और उसके दहने हाथ से वो पुस्तक ली जो कि सिंहासन पर बैठा हुआ था, और समय अब और न था। और तभी दूत सातवें अध्याय में प्रकट हुआ या दसवें अध्याय और सातवें पद में कह रहा है, ये स्वर्गदूत नीचे आता है और ये शपथ खाता है कि समय अब और नहीं है। परंतु आप देखिए, इस पुस्तक में वे थे जो छुड़ाए हुए थे, ये छुटकारे की पुस्तक थी और प्रत्येक चीज जो उसने छुड़ाई वो इस पुस्तक में लिखी हुई थी। वे सब जिनके लिए वो मरा वे इस पुस्तक में लिखे हुए थे, और वो अपने बिचवाई के स्थान को तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक वो पूरी तरह से ना छुड़ा ले, और वो इसे क्रूस पर नहीं बचा सकता था क्योंकि वे मेमने की जीवन की पुस्तक में पहले से ठहरे हुए थे, और उसे वहाँ पर ठहरा कर बिचवाई का कार्य करना है जब तक कि अंतिम व्यक्ति नहीं आया था। महिमा हो। और एक दिन वो वहाँ से उठकर सामने आया। पुस्तक कहाँ पर थी? ये अब भी सिद्धांतीय स्वामी के पास थी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और यहूना ने चारों ओर देखा और वो रोया, क्योंकि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा भी नहीं था कि उस पुस्तक की ओर देखे और विशेष कर की मोहरों को खोले और उस छिपे हुए भेद को जो था प्रकट करे। भेद सात मोहरों में थे। जब ये सात मोहरें खोली गई थी उससे संपूर्ण बाइबल खुल गई। सात मोहरें ये सात भेदों द्वारा बंद थी, और इन सात मोहरों में इसका सारा भेद छिपा हुआ था, और ये छुटकारे की पुस्तक थी, नया नियम, पुराना नहीं। ये तो केवल नए नियम के लिए घोषणा थी। वे बनाए गए हैं, हमारे बिना सिद्ध नहीं किए जा सकते, इब्रानी 11, समझे? देखिए, छुटकारा केवल तब मिलता है जब छुड़ाने वाला मरा, और वे सामर्थ में मेमने के लहू के नीचे थे, न कि बचाने वाले के। अभी तक बचाए नहीं गए थे जब तक कि बचाने वाला नहीं आया। ध्यान दें, अब जब ये बचाने वाला, यहोना ने चारों ओर देखा और यहाँ परमेश्वर सिंहासन पर पुस्तक को अपने हाथ में लिए बैठा है जो कि सात मोहरों से बंद की गई है, और छुटकारे की समस्त योजना उसमें थी, और ये मानव जाति द्वारा खो गई थी आदम से। और परमेश्वर ये कहाँ वापस चली गई? शैतान इसे नहीं ले सका, उसने केवल इसे खुआ दिया। लेकिन तब ये पुस्तक कहाँ चली गई थी? ये मानव जाति की थी। आशीषे अब यहाँ नहीं थी, यहाँ मानव जाति ने इसे खो दिया था, इसलिए ये अपने मूल स्वामी के पास चली गई थी जो कि परमेश्वर था। यहाँ वो इसके साथ पुस्तक के साथ बैठा है, और उसने मनुष्य को पुकारा, कोई आए और इस पर दावा करे। यहूना ने चारों ओर देखा, वहाँ कोई मनुष्य स्वर्ग में नहीं था, कोई मनुष्य पृथ्वी पर नहीं था, कोई भी नहीं, ना कोई स्वर्गदूत कोई भी पुस्तक को नहीं ले सकता था या उन मोहरों को खोल सकता था या यहाँ तक कि उसको देख सकता था। कोई भी व्यक्ति योग्य न था। यहूना ने कहा, वो फूट फूट कर रोया। तब एक स्वर्गदूत उसके पास आया और कहा, यहूना मत रो, क्योंकि यहूदा के गोत्र का सिंह जयवंत हुआ है और वो योग्य है। तब यहूना दृष्टि करके मेमना देखता है या एक सिंह देखता है, और उसने क्या पाया? एक मेमना, और वो लहू लुहान मेमना था, एक मेमना जो बलिदान हुआ था इस पृथ्वी के रचने से पहले। उसके पास गया जिसके दाहिने हाथ में पुस्तक थी, और पुस्तक को ले लिया, सिंहासन पर चढ़ा और बैठ गया। यही है, ये पूरा हो गया। कब? जब मोहरों को प्रकाशित किया गया, जब तक हर चीज जो उसने छुड़ाई थी, जब तक वो अंतिम वाला भी वहाँ कुछ भी नहीं बचा जिसे वो छुड़ाने आया। कहें, क्यों उसने उन्हें 40 वर्ष पहले नहीं बचाया, 2000 वर्ष पहले? देखिए, उनके नाम जीवन की पुस्तक में हैं, उस पुस्तक में, और उसे यहाँ खड़ा होना ही है क्योंकि ये परमेश्वर का उद्देश्य था कि उन्हें बचाए। इससे पहले कि संसार रचा जाता, उनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। मेमना वहाँ बलिदान होने के लिए रखा गया था। यहाँ मेमना आता है जब बलिदान किया गया था, बिछवाई करने के लिए वापस आता है। उस पर ध्यान दीजिए, वहाँ बहुत से बनावटी हैं और बहुत सी चीजें हैं, परंतु यथार्थ में वहाँ कोई था जिसको बचाया जा रहा था, क्योंकि उसने वो कलीसिया पहले से ठहराई थी, बिना दाग या झुर्री के वो वहाँ उपस्थित होने के लिए जा रही है, और मेमना इसी उद्देश्य के लिए मरा। और जब उस पुस्तक का अंतिम नाम बचा लिया जाता है, मेमना सामने आया और उस पुस्तक को ले लिया, मैं वही हूँ जिसने ये किया है। सराफीमों ने, 24 प्राचीनों ने, प्राणियों ने, हर एक ने अपना मुकुट उतारा और सिंहासन के सामने गिर पड़े और कहा, तू इस योग्य है। यहूदा ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी की हर चीज ने मुझे प्रसन्नता से चिल्लाते हुए सुना, आमीन, हालेलुया चिल्लाया और परमेश्वर की महिमा की। प्रसन्नता की चिल्लाहट ऊपर तक पहुंची, क्यों? उनके नाम उस पुस्तक में से प्रकाशित हुए और मेमने ने उनको प्रकाशित किया। मेमने ने इसे छोड़ा लिया, परंतु वह तब तक सामने नहीं आ सकता था जब तक प्रत्येक नाम प्रकाशित नहीं हुआ, और ये छठवीं मोहर में हो रहा था इससे पहले कि सातवीं तोड़ी जाए। तब वो मेमना इसलिए आया कि जो कुछ उसने छुड़ाया था वो छुड़ाए हुओं का दावा करने आता है। इस पुस्तक में से जो उसके हाथ से ली है वो पहले से ही उन्हें ले चुका है, अब वो उसे लेने आ रहा है जो उसने छुड़ाया है। ये उसका कार्य है जो उसने कर दिया, वो उसे लेने आ रहा है। ओह कितना अद्भुत समय है, ये सिद्ध हो गया, सातवीं मोहर ने इसे सिद्ध कर दिया है। वापस आता है और छुटकारे की पुस्तक को ले लिया। ध्यान दें, ये सातवें दूत का ही संदेश होना था जिसको सातवीं सात मोहरें प्रकाशित करनी थी। प्रकाशित वाक्य 10:7, अब आप इसे पाएंगे। देखा, और उसने देखा स्वर्गदूत नीचे आया, अपना पांव भूमि पर रखा और समुद्र पर रखा। वो मसीह था, उसके सर पर मेघधनुष था। उस पर ध्यान दें, आप उसे प्रकाशित वाक्य 1 में फिर पाएंगे। उसके सिर पर मेघधनुष के साथ ऐसा दिखता है मानो यशब मणि के और वगैरह वगैरह। यहाँ वो आता है, एक हाथ रखता है, एक पैर भूमि पर, एक पानी पर रखा और अपना हाथ उठाया। उसके सिर पर अब भी मेघधनुष है। ये एक वाचा है, वो वाचा का दूत था जो कि मसीह था। स्वर्गदूतों से कुछ ही नीचे किया गया कि दुख उठाए। वो यहाँ आता है और अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर उसी के द्वारा शपथ खाकर जो युगानुयुग जीता है, वो अनंत पिता परमेश्वर की, अब तो देर ना होगी जब ये घटित होगा। ये हो गया, ये कर दिया गया, ये पूरा हो गया। और तब वचन कहता है, और सातवें पृथ्वी के दूत के संदेश के समय, सातवीं और अंतिम कलीसिया, उसकी सेवकाई के आरंभ में जब वो इसे पृथ्वी पर आरंभ करता है, उस समय परमेश्वर की सात मोहरों के भेद मालूम हो जाने चाहिए। अब हम देखते हैं कि हम कहाँ हैं, मित्रों, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है? ध्यान दें, सब संभव है। वे सब जो पुस्तक में बचाए गए थे, वे उनके छुटकारे के लिए आता है। वे सब जो बचाए गए इस पुस्तक में थे, संसार की रचना से पहले ठहराए गए थे, वो ये छुड़ाने आया। वो सब जो उसने छुड़ाए हैं, इसके अंदर लिखे हुए हैं। अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और आप जो टेप सुन रहे हैं ध्यान से सुने। वे डरावनी आँखें, वे डरावने सिर, क्या वे हो सकते हैं? क्यों ये संदेश स्त्रियों के विरुद्ध रहा जो कि आधुनिक युग की हैं? क्या ये अंतिम दूत का संदेश हो सकता है? उसने वहाँ नदी पर क्या कहा था लगभग 33 वर्ष पहले, जैसे यूहन्ना मसीह के पहले आगमन के आगे भेजा गया, तेरा संदेश उसके दूसरे आगमन की घोषणा करेगा। सारे संसार में उसने यही किया है, तो फिर आगमन पास ही है। ध्यान दे, अब क्या होता है? मैंने अपना सर खुजलाता हूँ, मैं तकिए पर सिर इधर उधर करता हूँ, मैं फर्श पर चला फिरा। तेरे साथ क्या मामला है? कुछ दिनों पहले मैंने दो व्यक्तियों से पूछा जिनके साथ मैं सवारी कर रहा था। एक बार मैंने जैक मूर से पूछा, और आप सब जैक मूर को जानते हैं, मैं शेरपोर्ट में उसके पास जा रहा था। मैंने कहा, भाई जैक मूर, इस पृथ्वी पर आप मेरे परम मित्रों में से हो, और इससे पहले कि मैंने उससे पूछा, मैंने अपनी पत्नी से पूछा। यदि कोई मेरे बारे में जानता है, मेरी बुराइयों के विषय में, वो मेरी पत्नी है, देखिए, एक प्रिय व्यक्ति। और एक दिन मैंने उससे कहा, मैंने कहा, प्रिय, तुम्हारा पति होने के नाते मैं सुसमाचार का सेवक हूँ, मैं नहीं चाहता जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसकी बदनामी हो। नहीं, मैं आपको दुख नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी बदनामी नहीं करूँगा। परमेश्वर ना करे कि मैं कभी भी कुछ करूँ जिससे तुम्हें नुकसान हो। और आप क्या सोचती हो कि परमेश्वर को कितना दुख होगा, मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। तुम मेरी पत्नी हो, वो मेरा बचाने वाला और परमेश्वर है। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, हंसी में मत लेना, मुझसे सच सच कहना। मैंने कहा, क्या मैंने बहुत पढ़ाई की है? और मैं आश्चर्यचकित हुआ कि मैं एक तरह अजीब सा हूँ, मैं ये जानता हूँ। हर किसी ने कहा, ये किस तरह का व्यक्ति है? भाई देखिए, आप अपने आप को नहीं बना सकते, आप वही हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। और मैंने कहा, क्या मैं थोड़ा बहुत अपने होश खो बैठा हूँ? आप जानते हैं, और एक तरह से खो ही गया हूँ। मैंने कहा, क्यों मैं उन स्त्रियों को निरंतर अपराधी ठहराता हूँ जबकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ? वे कहते हैं, मैं स्त्रियों से घृणा करता हूँ। मैं ऐसा घृणा नहीं करता, मैं केवल स्त्री घृणा। देखिए, ये गलत है, मैं स्त्रियों को प्रेम करता हूँ, मेरा अर्थ अपनी बहनों के समान। आपको गलत देखते हुए मैं आपकी पीठ नहीं थपथपाऊंगा। मैं आपको ये बता सकता हूँ, मैं इसके लिए आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। कुछ मनुष्य जो ऐसा करेंगे, ये एक भिन्न प्रकार का प्रेम है, समझे? मैं आपसे प्रेम करता हूँ क्योंकि आप जो भी हैं, आप परमेश्वर के पुत्रों के सहायक हैं और आप उनका भाग हैं, समझे? और मैं आपसे प्रेम करता हूँ क्योंकि आप पुरुष के स्वरूप बनी थीं और पुरुष परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था, इसलिए आप मिलकर मसीह में एक हैं। इसलिए मैं आपसे प्रेम करता हूँ, किसी और चीज का इससे कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर जानता है मेरा सारा जीवन, समझे? ये ठीक बात है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। क्यों? मैं खड़ा होता हूँ और लगातार जब वे कहते हैं, जब स्त्रियों को बता दो, जब वे भाई ब्रणम का प्रचार सुनने यहाँ आती हैं, तो अपने बाल ठीक से बनाएं, अपने सिर पर टोपी या कुछ रखें, क्योंकि वे उनके छोटे बालों के लिए डांटना आरंभ करेंगे, और आप श्रृंगार भी मत करना, और इस तरह से वगैरह वगैरह। उन्होंने यही किया। ओ, वो किसी के विषय में बात कर रहा था, कहा कि आप क्यों नहीं, बोला कि लोग विश्वास करते हैं कि आप अशुद्धता हैं। आप स्त्री को ये क्यों नहीं सिखाते कि आत्मिक वरदानों को कैसे प्राप्त करें और इस प्रकार की चीजें, बजाय इसके कि उन्हें इस तरह की बात सिखाएं। मैंने कहा, यदि वो अपना कह खे गए नहीं सीखेंगी तो वो बीज गणित कैसे जानेंगी, समझे? पहले ठीक हो जाएं। और जितना मैंने प्रचार किया वो उतने ही खराब हो गए। आप कहते हैं कि आप ये छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं श्रीमान, उनके विरुद्ध एक आवाज ने गवाह होना है। आज इस सेवकाई में एक महान व्यक्ति ने अधिक समय नहीं बीता कि मेरे ऊपर हाथ रखे और कहा, यदि आप मुझे करने दें तो आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ ताकि परमेश्वर आपके हृदय से ये बातें निकाल दे। कहा कि उन स्त्रियों को उन्हीं चीजों में छोड़ दो। मैंने कहा, श्रीमान, क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? आप पवित्रताई के प्रचारक हैं? उसने कहा, निश्चय ही, मैं इसका विश्वास नहीं करता, परंतु बोला निर्भर करता है। मैंने कहा, नहीं। वो बोला, ये पादरियों पर निर्भर करता है। मैंने कहा, भाई ये नहीं कर रहे हैं।
Somebody's got to do it. The river's got to be crossed.
भूसी को तो अलग होना ही है। मैं ये नहीं करना चाहता, परमेश्वर जानता है, मैं ये नहीं करना चाहता। बहुत सी स्त्रियों ने मेरे बच्चों को खाना खाना खिलाया और उन्होंने अपने प्राण लगभग मेरे लिए दे ही दिए होते। आप सोचते हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह जो पवित्र आत्मा द्वारा मिलता है, आप सोचते हैं मैं चुपचाप खड़ा होकर देखता रहूं और एक बेचारे व्यक्ति को मैं अनंतता में बिना किसी आशा के जाने दूं, फिर भी मैं उसके विरुद्ध ना चिल्लाऊं? तेज तरार बनने के लिए नहीं, परंतु इस राष्ट्र की आत्मा ने, गिरजे की आत्मा ने, न कि मसीह की आत्मा। अब गिरजे की, नामधारी गिरजे की आत्मा ने इन स्त्रियों को इन सब बातों में पहुंचा दिया, और केवल मैं एक आवाज हूं जो कि चिल्ला रही है, इससे बाहर निकलो, इस गंदगी से भाग निकलो। शैतान को अपने साथ ऐसा ना करने दो, ये गलत है। और तुम असेंबली ऑफ गॉड वालों, तुम अपनी स्त्रियों को बाल काटने देते हो परंतु उन्हें श्रृंगार करने से रोकते हो। सही में श्रृंगार के विरुद्ध कोई वचन नहीं है, परंतु आपके बाल काटने के विरुद्ध है। कोई स्त्री परमेश्वर के सामने प्रार्थना के योग्य भी नहीं है, ये बाइबल कहती है। उसके पति को अधिकार है कि उसे तलाक दे दे और उसे त्याग दे, ये ठीक बात है। वो स्त्री अपने को संसार में दूषित के समान उपस्थित करती है, बाइबल ऐसा ही कहती है। जब वो ऐसा करती है तो अपने पति का अपमान करती है, बाइबल बिल्कुल यही कहती है, समझे? परंतु जो स्त्री श्रृंगार करती है, हम बाइबल में केवल एक स्त्री को पाते हैं, वो जिजाबेल थी, यही वो थी। बाइबल में केवल एक यही व्यक्ति है जिसने श्रृंगार किया था, वो इजाबेल थी, और परमेश्वर ने उसे तुरंत जंगली कुत्तों को खिलवा दिया। वो कलंकित हो गई, और यहाँ तक उसका हर चीज जो नीच है, इजाबेल कहलाई। आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। तब ये आपको क्या मना देता है? शैतान की आत्मा। आप इसे महसूस नहीं करते, मैं जानता हूँ कि आप नहीं करते। आप अच्छे लोग हैं, आप अच्छे हैं, मुझसे हाथ मिलाते हैं, मुझसे बात करते हैं, और मैं आपसे प्रेम करता हूँ, ये ठीक बात है। परंतु यदि मैं देखता हूँ कि मैं एक पाखंडी ना बनूं, पौलुस ने कहा कि मैंने तुमसे परमेश्वर की कोई मनसा ना छिपाई। उस दिन किसी भी स्त्री का लहू मुझ पर ना हो, या किसी भी पुरुष का, मैंने आपको सत्य बता दिया है, परंतु मुझे ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं कि इसलिए अच्छा नहीं लगता कि जो परमेश्वर ने मुझसे करने के लिए कहा मैं वो नहीं करना चाहता, परंतु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपको चोट नहीं पहुँचाना चाहता, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? परंतु शुद्ध दिव्य प्रेम आपको ये करने को बाध्य करता है। यहाँ तक कि यीशु ने प्रार्थना की कि ये क्रूस टल जाए। क्या ये संभव है कि ये प्याला टल जाता? कहा, फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी पूरी हो। क्या मैं भी इसी प्रकार का व्यक्ति होने जा रहा हूँ जो ये कहे? क्या मैं उन अनमोल बहनों को इस विषय में लूं जो कि बहुत ही अच्छी हैं और वगैरह वगैरह, और उन्हें डांटकर उनके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दूं? क्या मैं यही कर रहा हूं? क्या मैं अपने सेवक भाइयों के साथ खड़े होकर ये बताऊं कि वे पैसे से प्रेम करते हैं और अपनी नामधारी संस्था को परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हैं? मेरे लिए मेरे कीमती भाई लोग जो कि अपनी बाहें, ओ क्या मुझे यही करना है? ओ परमेश्वर, नहीं, मुझे ऐसा ना करने दे। परंतु मैं सारी मनसा आपको बताने से नहीं झिझका। ये वास्तविक प्रेम है, यही मुझसे करवाता है। क्या ये ऐसा यूं ही है कि ये संदेश इसी तरह से है? संसार में कहीं भी ऐसा नहीं है। ये कहाँ है? ठीक है, देखिए वे डरते हैं, परंतु ये निडर है। बिल्कुल ठीक। देखिए परमेश्वर हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, क्यों ये ऐसा है कि इस संदेश द्वारा स्त्रियों को ऐसे फटकारा गया? ना जानते हुए ये प्रकाशित नहीं किया गया था, ये मुझे दिखाया गया, परंतु उस दिन तक ये मुझ पर प्रकट नहीं हुआ था। समझे? इधर की ओर देखिए। ठीक है, बिल्कुल सेवकाई के अनुरूप है। अब एक मिनट ठहरिए, क्या कभी ऐसा समय हुआ कि संसार स्त्रियों का हो गया? जी हाँ, इतिहास के अनुसार एलिया के दिनों में एक स्त्री थी जिसका नाम इजाबेल था, और उसने परमेश्वर की कलीसिया पर प्रभुता की, जिसके लिए बाइबल कहती है वो अंत के दिनों में फिर से होगी। उसकी आत्मा गिरजे के द्वारा एक संस्था, और वो एक वैश्या होगी, और सारे दूसरे गिरजे जो उसके संग होंगे उसके समान वैश्या होंगे। ये ठीक बात है ना? प्रकाशित वाक्य 17 में कहा वो वैश्या है और वो वैश्याओं की माता है। ये पुरुष नहीं हो सकता, ये स्त्री है। समझे? और वे सब आग की झील में जीवित फेंक दिए गए और भस्म हो गए। क्या ये सत्य है? आप यहीं पर हैं। ध्यान दें, जब वो इजाबेल दृश्य पे आती है तो वहाँ एक मनुष्य उसके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। परमेश्वर एक मनुष्य को लाया, हम ये भी नहीं जानते कि वो कहाँ से आया। उसका सेवकाई में कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, वो कभी भी याजक या ऐसा कुछ भी नहीं था। एक बूढ़ा मजबूत जंगली आदमी एलिया नाम से आता है, और वो कुल्हाड़ी पेड़ की जड़ पर रखता है। वे उससे घृणा करते हैं। केवल इतना ही नहीं, परंतु उसकी समस्त सभा उससे घृणा करती है। एक बार उसने सोचा वो अकेला ही खड़ा है। उसने कहा, नहीं, मेरे पास 7,000 और हैं जो तेरे साथ हैं। समझे? वो चुना हुआ झुंड था। देखा, ये झुंड हमेशा रहा है। कहा कि एलिया मत डर, मैं जानता हूँ कि तू सोचता है कि तू अलग है, क्योंकि नामधारी गिरजों ने तुझे पहाड़ की चोटी पर पहुँचा दिया है। परंतु कहा, मेरे पास 7,000 और हैं, वही विश्वास करते हैं जो तूने प्रचार कर रहा है। देख, वे मेरे पास हैं। तब उसके दिनों के पश्चात रोम ने कब्जा कर लिया, और एक समय आ गया कि फिर से स्त्रियों का संसार बन गया। सारे फैशन स्त्रियों के, किस प्रकार से वे अपनी टोपियां और चीजों के साथ आती हैं, देखा। और परमेश्वर ने दूसरा उसी आत्मा के साथ उठा खड़ा किया, इलीशा की आत्मा। ये ठीक है ना? और उसने कहा कि कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है, और वहाँ एक चरित्रहीन स्त्री थी जिसने अपना पति छोड़कर उसके भाई हिरोदेस से विवाह किया। हिरोदियास, और वो उस दिन में रंगी हुई मूर्ख थी, नाची। उसने अपनी लड़की को सिखाया कि कैसे नाचा जाता है। उसके पास एक लड़की थी जो पहले पिता से थी, पहले पिता से, पिता के भाई से, हिरोदियास। वो उस स्त्री की पुत्री थी, और तब उसने उसे नाचना सिखाया, और वो सही में अपनी माँ की तरह छोटे कपड़े में नाचने वाली बन गई। और उसने सोचा वो 4 या 5 बार विवाह कर सकती है, जो भी चाहे वो ही करे। और अब हिरोदेस बाहर आता है, वे सब यहूदी थे। अब याद रखें, वे गिरजे के लोग थे। यहाँ अब हिरोदेस बाहर आता है, और उसका गिरजा भविष्यद्वक्ता को सुनने के लिए लोगों ने ये विश्वास किया कि वो भविष्यद्वक्ता है। वो उन दोनों के सामने सीधा गया और कहा कि इस स्त्री को रखना तुझे उचित नहीं, और इससे वो आग बबूला हो गई। समझे? कुछ साधारण लोगों ने कहा होगा, हिरोदियास आप कैसी हैं? हम सच में आज आपको अपनी सभा में पाकर प्रसन्न हैं। परंतु यहुन्ना ने नहीं, यीशु ने कहा, तुम किसे देखने गए थे जब तुम यहूना को देखने गए? क्या तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए याजक को देखने गए थे? नहीं, वो इस प्रकार का नहीं हो सकता, जैसे कि बालकों को चूमना और मरहमों को गाड़ना, समझे? उसने कहा, तो तुम क्या देखने गए थे? हवा को? हवा से हिलते हुए सरकंडे को? वे कहते हैं, यहूना तुम यहाँ आओ, यदि तुम हमें प्रचार करो तो हम तुम्हें अधिक पैसा देंगे, और हम हमारा समाज संगठन सबसे बड़ा है। यहूना नहीं, वो कभी भी नहीं देखने गया। कहा, तो फिर तुम क्या देखने गए थे जब तुम सुनने गए? और देखिए, यहूना एक भविष्यवक्ता। उसने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि एक भविष्यवक्ता से बड़े को तुम उसे ग्रहण कर सकते हो। ये वही है जिसके विषय में भविष्यवक्ता ने उसके आगमन के लिए कहा, मैं अपना दूत अपने आगे आगे भेजूंगा और वो प्रभु के लिए मार्ग तैयार करेगा। वो वाचा का दूत था। उसने कहा, जितने स्त्रियों से उत्पन्न हुए हैं उनमें से इससे बढ़कर कोई नहीं हुआ जितना कि ये महान है, समझे? इस तरह का मनुष्य परमेश्वर ने उस दिन के लिए खड़ा किया, एलिया, एक जंगल में रहने वाला मनुष्य। यहूना भी ऐसा ही मनुष्य था, समझे? एलिया की आत्मा यहूना पर थी। वो कहता है कि जब फिर से स्त्री का समय या दिन आता है तो वो आत्मा फिर से उठेगी। प्रभु के आगमन के पहले जब पृथ्वी जल जाएगी और धर्मी दुष्टों की राख पर चलेंगे, उनके पैरों तले राख के समान होंगे। उसने इसकी प्रतिज्ञा की है इन्हीं दिनों में। ध्यान दें, पवित्र आत्मा ने ये प्रतिज्ञा की है। ये इस समय के अनुरूप है जिसमें हम रह रहे हैं। किसी को उठ खड़ा होना चाहिए। यहोवा यूं कहता है, उसके पास आना चाहिए। मलाकी का चौथा अध्याय, और वही जो उसने कहा वही चिन्ह होगा, प्रभु के बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया भविष्यवक्ता को भेजूंगा। और वो क्या करेगा? बालकों के हृदयों को पूर्वजों की विचारधारा पर फेरेगा, वापस बाइबल में इन नामधारी संस्थाओं के मतभेदों से बाहर, और वापस बाइबल में, वापस परमेश्वर के पास। वो यही करेगा। ध्यान दें, हम किस महान समय में रह रहे हैं। इन भविष्यवक्ताओं ने अपने समय की आधुनिक स्त्रियों को फटकार लगाई, और इन दोनों ने इसका मूल्य अपने जीवन बलिदान करके चुकाया। इतिहास इस बात का प्रमाण देता है, इन दोनों समय में स्त्रियों का संसार था जब स्त्रियों की प्रभुता थी। आज के विषय में देखिए, इन्हीं के दिनों में हमारा एक राष्ट्र अध्यक्ष होगा, ऐसा लगता है ये अभी हो सकता है। सही में वही स्त्री राष्ट्रपति होगी। वो केवल दिखने वाला राष्ट्रपति होगा। बहुत समय नहीं बीता कि किसी राष्ट्र में इसने सब लोगों द्वारा बहुत ही प्रशंसा पाई, जब तक कि राष्ट्रपति ने स्वयं ये नहीं कहा कि मैं उसका पति हूँ। अमेरिका का राष्ट्रपति देखिए, वो फैशन का निर्धारण करती है, स्त्रियाँ उसका अनुकरण करती हैं, जैसे कि इजाबेल ने किया। आपने इजाबेल धर्म, इस पर मेरा धर्मोपदेश सुना है? आप जानते हैं, आप इस विषय में जानते हैं। अब देखिए, अब हम कहाँ पर हैं? अब देखिए, नगर में एक दो सप्ताह पहले क्या घटित हुआ। फेथ लूथरन के सेवकों ने सीक्रेट हार्ट के कैथोलिक पादरी को अपने यहाँ प्रचार करने का निमंत्रण दिया, और उसने किया, और फेथ लूथरन के सेवक कैथोलिक पादरी के यहाँ प्रचार करने गया। वहाँ गिरजों की प्रसिद्ध है जो कि रोम में मिल रहे हैं। ये परिपत्र मेरे अच्छे मित्र डेविस डुप्लेसिस, जब मैं वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ उसको जोर जोर से इस विषय में बता रहा था। फोर्ट मिल क्रीक पर अभी बहुत दिन नहीं हुए, ये अनुभव ना करते हुए कि वो कलीसिया को ठीक बाबुल में ले जा रहा है, जबकि हर कोई कह रहा है, ओ अब तो सारे गिरजे एक होने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं जानता हूँ। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने अपनी भविष्यवाणी की पुस्तक में 1933 में लिखा है कि यही होगा। आप क्यों नहीं ये अनुभव करते हैं कि ये शैतान आपस में इकट्ठा हो रहा है? बाइबल ये कहती है, और इसके कुछ समय पश्चात, थोड़े समय बाद, जैसे ही ये एक हो जाएंगे, तब अंतर नामधारी संस्था गिरजे समाप्त हो जाते हैं। देखा, यही आपकी पशु की छाप होगी, समझे? अभी इतना समय नहीं है कि मैं इस विषय में जाऊं, लगभग 11:45 होने को हैं। देखिए, मैं इसे समाप्त करना चाहता हूं कि विषय समझ सकें। मेरे पास यहाँ बहुत सारे हवाले रखे हैं, जहाँ की संभवतः आप देख सकें कि हम कहाँ पर हैं, तब हम इसे कुछ ही मिनटों में समाप्त करेंगे। अब देखें कि क्या घटित हुआ। उन भविष्यवक्ताओं ने अपने दिनों की उन स्त्रियों को फटकारा, और वे स्त्रियों से घृणा करने वाले कहलाए गए थे। ये ठीक है, इतिहास इस बात को ऐसा ही प्रमाणित करता है। अब थोड़ी सी प्रतीक्षा करें। आप वचनों को लिख रहे हैं, आप चाहें तो लिख लें। पहला तिमोथियस 5:6, बाइबल कहती है, जो स्त्री संसारिक सुख विलास में जीती है, वो परमेश्वर का सुख नहीं हो सकता, इसलिए इसे देखना होगा। वो स्त्री जो सांसारिक सुख विलास में जीती है, वो जीवित रहते हुए भी मर गई। भविष्यद्वक्ता संत पौलुस ने ये कहा है, वो स्त्री जो सांसारिक स्थिति में जीती है, वो जीते जी मरी हुई है। और यदि वो अनुग्रह की रेखा को अस्वीकार करती है, तो वो अलग होने वाली रेखा को पार कर सकती है, जहाँ की उसके लिए कोई स्थान नहीं है। और तब वो अपनी रंगी हुई आँखों के साथ, कटे हुए बालों के साथ कहाँ है? और उसने उस अनुग्रह की रेखा को पार कर दिया, जिसका लौटने का कोई मार्ग नहीं है। और तब वहाँ पर उसको प्रचार करने की सेवकाई है। परंतु याद रखें, उस समय सब पूरा हो चुका, समाप्त हो गया। ये केवल प्रेत बंधित हो रही हैं। योल ने कहा कि एक सेवकाई होगी जिसमें महान अद्भुत कार्य दिखाए जाएंगे, परंतु वो छुटकारे का समय नहीं होगा, वो हो चुका। मेमने ने अपनी पुस्तक ले ली है और उसके छुड़ाए हुए पूरे हो गए हैं। जैसे यीशु ने प्रचार किया और वो अस्वीकार किया गया, और तब वो प्रेत ग्रस्तों के पास गया जो वो वहाँ थे, और उन्हें जो कैद में थे प्रचार किया, वे प्रायश्चित ना कर सके। ये छुटकारे का समय नहीं है, यही सेवकाई फिर से दोहराई जाएगी। क्या हो यदि ये अनंत नष्ट होने वालों के लिए तीसरा खिंचाव हो? क्या हो यदि ये यही है? मैं आशा करता हूँ कि ये नहीं है। क्या हो यदि ये यही हो? तो अब जरा एक मिनट के लिए इस विषय पर सोचें। क्या हो यदि ये यही है? तो परमेश्वर ना करे, मेरे पास बच्चे हैं, समझे? परंतु निश्चय ही ये यहाँ बहुत पास लगता है। क्यों? ये दर्शन तब मिला जब मैं बालक था। क्यों? मैंने इस पर पहले कभी नहीं सोचा। क्यों? ये अचेतना उस दिन वहाँ कमरे में आई और कहा कि ये वो है। ये ठीक उन प्राणों के बीच में था जो नष्ट हो गए, और यीशु ने उन्हें प्रचार किया, गवाही दी, परंतु उन्होंने कभी भी प्रायश्चित नहीं किया। और जितना अधिक मैंने प्रचार किया, वे उतने ही अधिक बिगड़ गए। वहाँ कोई प्रायश्चित नहीं है, वहाँ इसके लिए कोई स्थान नहीं है। मेमने ने अपनी पुस्तक ले ली जब सातवीं मोहर खुलने के लिए तैयार थी, छठी मोहर। याद रहे, उसने सातवीं मोहर हमसे छिपा ली, वो इसे नहीं करेगा। जब प्रतिदिन सरदूत खड़ा हुआ इसे बता रहा था, परंतु वो उस वाली मोहर पर नहीं करेगा। मोहर पर कहा कि वहाँ स्वर्ग में सन्नाटा है, कोई नहीं जानता। ये प्रभु का आगमन था। वो आप कहते हैं ये नहीं हो सकता, मैं आशा करता हूँ ये नहीं है। अच्छा चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। मेरे पास यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? याद रखिए, वो जो सांसारिक विलासिता में जीवित रहती है, संसार की चीजों में उसी तरह के कार्य करती है। वो गिरजे जा सकती है और संतों जैसे कार्य कर सकती है, इससे इन बातों का कोई मतलब नहीं। परंतु देखिए, जब वो जी रही है वो मृत है। देखिए नामधारी गिरजों ने उसके लिए क्या किया। उन्होंने उसे पवित्र वचन का संभालने वाला बना दिया, जो कि बाइबल के विरुद्ध है। उन्होंने उसे प्रचारक बना दिया, इसकी पवित्र शास्त्र में मनाही है। अब उसे ऐसा बना दिया कि वो प्रभुता करने वाली महापौर, गवर्नर, देश में हर चीज और परमेश्वर के भवन में सेवक बन गई, जबकि वो हर पाप के लिए दोषी है जो कि कभी भी हुआ, वो उसका कारण है। ये ठीक बात है। अब मैं अधिकारों की बात नहीं कर रहा हूँ। वो दोषी है, वही एक है जिस बात का कारण है कि हर बालक अंधा उत्पन्न हो। वही हर कब्र के खुदने का कारण है। वही एक है जो पाप, बीमारी, दुख का कारण है। एक एम्बुलेंस के सायरन बजने का कारण, जब तक एक स्त्री ना हो वो बज नहीं सकता। कोई रोना चिल्लाना नहीं हो सकता, कोई पाप नहीं हो सकता, कोई मृत्यु, कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं हो सकती, परंतु ये एक स्त्री ने किया। परमेश्वर ने उसे पिलपिट से प्रचार करने को मना किया है, परंतु वे फिर भी करते हैं। नामधारी गिरजे, देखिए वो कहाँ है। वो एक देवी है। शैतान किस प्रकार अपने कार्य में लगा हुआ है? क्यों? कैथोलिक लोग उन स्त्रियों को देवियां यानी संत बनाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। ये ठीक बात है, संत मरियम और वगैरह वगैरह। मैं देखता हूँ जहाँ उन्होंने एक्यूमेनल सभा में कहा कि इस प्रकार से होगा, वे यीशु से थोड़ी अधिक प्रार्थना करें, यदि इससे इस बात में सहायता मिल सके कि प्रोटेस्टेंट में शामिल हो जाएं, समझे? देखा, ओ वे मिठास की तह में लिपटे ना बदलने वाले, उन्होंने ये कहा, समझे? अब भी वही पुराना शैतान है। बाइबल ने कहा कि वह सबके माथे पर छाप लगवा देगा जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं। मैं ये उस कलीसिया से बात कर रहा हूँ जो पहले से ठहराई हुई है, न कि उनसे जो वहाँ हैं। नहीं श्रीमान, हर झुंड में से उसने अपने ठहराए हुओं को खींच लिया, इसलिए वो हर युग में आ रहा है। परंतु वो वहाँ स्थिर है, वो वहाँ है, ये वही है, वचन प्रचारा, वचन को प्रयोग किया और संत बन गई और हर पाप का कारण बनी। बाइबल ने कहा, मैं चाहता हूँ कि स्त्री उपदेश ना करे या पुरुष पर अपना आज्ञा ना चलाए, परंतु अधीनता में रहे, जैसे व्यवस्था में भी लिखा है, समझे? और वो ये नहीं कर सकती, परंतु उन्होंने उसे राष्ट्र पर प्रभुता करने वाला मेयर, गवर्नर, और जल्द ही वो राष्ट्रपति बन जाएगी, ये निश्चित है। आप उसी स्थिति में हैं, यही मार्ग है, और इसी तरह से ये आगे बढ़ता रहता है, देखा? और लोग ये करते हैं क्योंकि वे वचन की चिंता नहीं करते, वे इसे कभी नहीं देखेंगे। उन यहूदियों को देखें जो वहाँ खड़े हैं, विद्वान, अच्छे व्यक्ति, और यीशु ने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो, क्या हो यदि मैं उसे आपके सामने मुकदमे के लिए अब लाऊं? आइए एक मिनट के लिए हम इसे करके देखें, और परमेश्वर मुझे क्षमा करे कि उसके विरोध में हूँ, परंतु एक मिनट के लिए आपको कुछ दर्शाने के लिए, क्या हो यदि आप कहें, भाई परमेश्वर की महिमा हो, मैंने अन्य भाषाएं बोली, हालेलुया, मैं जानता हूँ, हाँ मैं, मुझे ये मिल गया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ हो, आपने किया। उन इसराइली लोगों को याद करें, बाइबल ने कहा, जब उसने लोगों को बाहर बुला लिया और मिस्र से बचा लिया, उसने उन्हें नष्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने संदेश का अनुकरण नहीं किया, समझे? उन्होंने स्वर्ग से मन्ना खाया, उन्होंने वो मन्ना खाया जो परमेश्वर ने पृथ्वी पर बरसाया, और संदेश वाहक की उपस्थिति में खड़े हुए और आग का खम्बा देखा और परमेश्वर की आवाज सुनी और उसे निश्चित रूप से देखा, और तब क्योंकि वे कोरा का विश्वास करना चाहते थे, वहाँ बहुत से पवित्र लोग हो सकते हैं, वे थे, वो था, कुछ भी हो सकते हैं, हमें भी पवित्र बनाना है, हमें भी ये सब करना है, सारे लोग पवित्र हैं। परमेश्वर ने कहा, अपने आप को उनसे अलग कर, वहाँ से हट जा। मूसा ने कहा, वे जो सब परमेश्वर की ओर हैं, वे मेरे साथ आए, ये ठीक बात है, समझे? और उसने बस पृथ्वी का मुख खोला और वो उन्हें निकल गई, समझे? वे भी अच्छे लोग थे, बिल्कुल वे थे, वे सभ्य लोग थे, जी हाँ श्रीमान, परंतु इससे काम नहीं चलता। वे सब जो प्रभु प्रभु कहते हैं, परंतु वो जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है, वो नहीं जो आरंभ करता है, वो जो उसे पूरा करता है। ऐसा कोई छोटा मार्ग नहीं है कि आप दौड़ के अंत में अयोग्य ठहरते हैं, कोई छोटा रास्ता नहीं है, आपको वैसे ही आना है जैसा पवित्र शास्त्र ने कहा है। यदि वो ये कहता है कि प्रायश्चित करो और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और तो तुम पवित्र आत्मा दान में पाओगे, इसके लिए कोई और छोटा मार्ग नहीं है, हाथ मिलाना या गिरजे में या नामधारी कलीसिया में शामिल होना। आप उसी मार्ग से आए हैं, जब तक आप अपने आप में नहीं मरते और परमेश्वर की आत्मा से उत्पन्न नहीं होते, आप नष्ट हैं, बस यही है, इसके लिए कोई और छोटा मार्ग नहीं है। आप कहते हैं कि मैं गिरजे से संबंधित हूँ, मैं ये जानता हूँ, ये अच्छी बात है, हाँ मेरी माँ, मैं संदेह नहीं करता, परंतु ये आप लोग हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, समझे? आपको उसी मार्ग से आना है क्योंकि इसका कोई और छोटा तरीका नहीं, आप न्याय में अयोग्य ठहरेंगे। आप एक ही मार्ग से आते हैं, केवल एक ही मार्ग है, और वो मार्ग मसीह है, और मसीह वचन है जो कि आप में रहता है, और जिन बातों की निश्चित अवधि में उसने प्रतिज्ञा की है उनको प्रमाणित करता है, समझे? आप समझ गए इसे? ठीक है, अब ध्यान दें, कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग अच्छे हैं, निश्चय ही, मैं ये नहीं कहता कि अच्छे लोग नहीं हैं, मैं ये नहीं कहता, संत सिसिलिया और दूसरी सब अच्छी स्त्रियां नहीं थीं, मेरी माँ भी ऐसी ही है, परंतु ये निश्चित है कि मैं उसे प्रार्थना नहीं करता, निश्चित तौर पे नहीं, निश्चय ही मैंने बहुत से अच्छे लोग देखे हैं, परंतु वे देवी नहीं है, वे स्त्रियां और पुरुष हैं, परमेश्वर और मनुष्य के बीच केवल एक ही बिचवाई है। तो फिर क्यों एक पुरुष पेंतिकोस्त संसार का एक मनुष्य, वो परिपत्र जो हमारे अनमोल भाई डी पलेसियस ने उसे समय घुमाया, हो सकता है आप में से कुछ के पास हो, हाँ उसके पास है, उस एक्यूमेनियन परिषद में पोप के तरफ से ये कहा, ये बहुत ही आत्मिक थी, ये आत्मा को परखना है कि नहीं? ओ प्रभु की आत्मा वहाँ था, बहुत ही आत्मिक, जी हाँ आप इसी जगह पर हैं, क्यों? क्योंकि ये प्रोटेस्टेंटों और उनको एक साथ जोड़ने का सुअवसर है, हम जो कि वर्षों से लड़ते रहे, बाइबल इसके पक्ष में रही और हमें बताया कि ये घटित होगा, और हमारे एक महान नेता ने अंदर आकर कहा, ये ठीक बात है, यही वो है जो हम करते हैं, और संपूर्ण प्रोटेस्टेंट गिरजा इसके लिए झुक रहा है। और यदि आप बिल्कुल ठीक से देखेंगे तो ये यहोवा यूं कहता है, पहले वचन ने ये कहा, तब प्रभु की आत्मा ने 1933 में कहा, जिसने ये सारी बातें राष्ट्रों के विषय में बताई कि युद्ध होने जा रहा है और यंत्र किस प्रकार के होंगे और हर चीज इसी प्रकार की कही, बिल्कुल वही अंत में घटित होगा, और ये सब यहाँ है, ये कभी असफल नहीं हुआ, और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये साकार हो रहा है। बहुत समय नहीं हुआ, आपको इजाबेल का धर्म, इस पर मेरा धर्म उपदेश याद है, आपको याद है उस प्रातः एलीशा उन्हें बताने के लिए सड़क से जा रहा था, इस पर मैंने ये प्रचार किया था, देखा। और तब कैसे मैंने भविष्यवाणी की थी कि समय आएगा जब ये एक्यूमेनिकल परिषद अंत में पशु की छाप बन जाएगी, क्योंकि ये पशु के साथ जुड़ जाएगी। ये चल रहा है मेरे ही समय में, मैं इसे देखने के लिए जीवित हूँ, और यहाँ करोड़ों प्रोटेस्टेंट इसमें मिल जाएंगे। क्यों? वे इसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे अंधे हैं। यीशु ने उन फरीसियों को बताया, तुम अंधे अंधों के अगुए। यदि अंधा अंधे को मार्गदर्शन करे, उसने कहा क्या वे सब गढ़े में नहीं गिरेंगे? वे वहीं गिरते हैं। मैं कैसे उस मनुष्य का विश्वास कर सकता हूँ जो मेरे साथ खड़ा हुआ और मुझसे बात की, कभी बैठ कर इस प्रकार की टिप्पणियाँ की? देखिए, ये बुद्धिमानों और दूरदर्शिता वालों की आंखों से छिपा है, और ये बालकों पर प्रकट होता है जैसे ही ये सीखेंगे। एक दिन मुझे प्राणों से इसका मूल्य चुकाना होगा। ये ठीक बात है, ये होने जा रहा है, परंतु यह सत्य को बता दिया गया है। ओ हाँ, पवित्र आत्मा की योजना के लिए पहले वाले को मरना है। क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, परंतु वो कार्य पर से नहीं भागा, वो एक मनुष्य की नहीं मरा। फिर प्रभु यीशु आए, उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया, उसने प्रचार किया कि आत्मा मनुष्य को पाप से बचाएगा, क्या ये ठीक है? फिर उन्होंने स्तफनूस को पथराव किया, उसने पाप के विरुद्ध प्रचार किया, उसने उन्हें इतना गुस्सा दिला दिया, उसके सिर को उसमें मारा, परंतु वो आत्मा में मर गया, उसने आत्मा छोड़ दी और उन लोगों से मिलने चल दिया, वो जीवन को देने वाला। वहाँ पतरस और पौलुस हैं और यूहन्ना दिव्य, उन्होंने अपना जीवन दे दिया ताकि सुसमाचार चमक सके। वे क्या करेंगे? उन्होंने पुराने भविष्यवक्ताओं के साथ अपना लहू मिला दिया ताकि परमेश्वर के सत्य वचन ईमानदारी से बताया जा सके। वेदी के नीचे प्राण चिल्ला रहे थे कि कितनी देर और, क्योंकि प्रभु को उन सबको दंड देना है जिन्होंने गलत किया है, परंतु अभी बहुत से हैं जिन्हें अपने जीवन का लहू देना होगा। हाँ, ये ठीक बात है, क्योंकि पवित्र आत्मा के सुसमाचार के लिए और इसके गाढ़े लाल रंग का बहाव लहू की बूंदों का टपकना जारी रखता है। ये किसी दिन होगा, परंतु मैं उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब इस सब का समापन होगा। अभी किसी बहन ने स्वप्न देखा, उसने मुझे कहला भेजा, कहा कि उन गिरजों ने एक तरीका निकाला है जिससे मुझे गुप्त रूप से मार दिया जाना है। किसी समय जब मैं अपनी कार से बाहर निकल रहा हूँगा या अंदर जा रहा हूँगा, कहीं से गोली दागी जाएगी। परंतु कहा, तब आत्मा ने कहा, अब इस समय नहीं, परंतु ये बाद में होगा। परमेश्वर ना करे कि मैं किसी बात पर समझौता करूँ। मैं सिवाय यीशु मसीह और उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने को छोड़ और कुछ नहीं जानता। हम बहुत भयानक दिनों में रह रहे हैं। आपने ये किया है, उन्होंने स्तफनूसों को पथराव किया, उन्होंने यूहन्ना का सिर काटा, उस स्त्री ने किया। मैं नहीं जानता हम अपने विषय में क्या गवाही देंगे, परंतु ये किसी दिन होगा। ठीक है, ध्यान दें, संत यूहन्ना में, यदि आप इस पद पर चाहते हैं, संत यूहन्ना 6:49, जहाँ पर उन्होंने मन्ना खाया और यीशु ने कहा और उनमें से प्रत्येक मर गया। आप कहते हैं, मेरी बहन, मैंने इस महिला को आत्मा में नाचते देखा। ओ हाँ, मैंने उन्हें ये करते देखा, मैंने उसे अन्य भाषा में बातें करते देखा, मैंने उसे देखा। जी हाँ, यीशु ने कहा उस दिन बहुत सारे मेरे पास आएंगे और कहेंगे कि हमने ये सब चीजें की हैं। समझे, उन्होंने जंगल में मन्ना खाया, यीशु ने कहा और वे सब अनंतता में अलग हो गए, वे मर गए, वे सदा अनंत काल के लिए समाप्त हो गए, वे वही जंगल में ही सड़ गए। इब्रानियों का 6वां अध्याय आपको याद है, जिन्होंने एक बार सत्य को जाना और उस पर चलने से इनकार कर दिया, उनके लिए अब कोई प्रायश्चित नहीं बचा। देखा, सीमा रेखा के विश्वासी, जब सत्य मनुष्य के सन्मुख अंतिम बार रखा जाता है और वे उसे स्वीकार करने से मना करते हैं, तो इब्रानियों की पुस्तक के अनुसार देखिए, वे लोग संसार में अब कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि उन्हें बचा सके, वे समाप्त हो गए, कोई प्रायश्चित नहीं, कोई छुटकारा नहीं, उनके लिए कुछ बाकी न बचा, वे अनंत काल के लिए अलग हो गए। बाइबल ऐसा ही कहती है, भयानक आग और क्रोध की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो कि हर विरोधी को भस्म कर देगी। और जब सुसमाचार का सत्य हर प्रकार से पूरी प्रकार से प्रमाणित किया गया और तब पीठ घुमाकर उसे छोड़कर चल दिए, वे समाप्त हो गए। बस यही है, ये भयानक है, परंतु मुझे आपको ये बताना है। याद करें, चरदूतों ने जिन्होंने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन उनको कैद के अंधकारों में छोड़ दिया, जहां की संसार आज उसी कैद में चल रहा है, वहां कोई प्रायश्चित नहीं है। याद करिए, कुछ वर्षों पहले मैंने कहा, जब मैं शिकागो से आया, या तो अमेरिका इसे इस वर्ष स्वीकार कर लेगा या फिर इसे कभी ग्रहण नहीं करेगा। देखिए ये कहाँ चला गया। जी हाँ, अब आश्चर्य नहीं यदि तीसरा खिंचाव हो सकता हो। ओ परमेश्वर, काश ये ऐसा ना हो। क्या तीसरा खिंचाव इसके लिए है? क्या ये हो सकता है? ओ मित्रों, इस पर सोचो, इस विषय पर सोचो। मैं नहीं चाहता हूँ कि यीशु ने कहा इस तरह का ढोंग। यदि आप इसे लिखना चाहते हैं तो मती 23:7 मेरे पास यहाँ है, इसे पढ़ें। परंतु आप देख सकते हैं, तुम अंधे फरीसियों, क्या आपको इससे कुछ मिनटों का फर्क पड़ेगा? आइए देखें, आइए इसे निकालें, क्योंकि मैंने कहा इसे पढ़ें। वहाँ पर कुछ था जहाँ मैं पढ़ना चाहता था इससे पहले कि हो सकता है मैं इसे कुछ छांट दूं, परंतु आइए इसे कुछ देर के लिए निकाल लें। एक मिनट, मती 23, ठीक है, और हम इसे 27वें पद से आरंभ करेंगे। अब जरा सुने, जब आप घर जाएं तो सारी बात पढ़ें, यदि आप चाहें तो, बस कुछ मिनट और। अब यहाँ देखें, मती 23 और उसके 27वें पद से आरंभ करते हैं। शास्त्रियों तुम पर हाय। अब याद रखें, ये एक पवित्र मनुष्य है वो जिससे बातें कर रहा है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। ये मरे हुए लोग हैं, देखा, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। पाखंड और ईर्ष्या, झगड़ा उनके अंदर है। बाहर मैं डॉक्टर फला फला हूँ। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो। एक्यूमेनिकल परिषद को देखिए और पेंटिकॉस्टल वहाँ बैठे हुए हैं, परंतु भीतर पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। दुष्टता क्या है? कोई चीज जो वास्तव में आप जानते हैं कि ठीक है और आप नहीं करते। यीशु, अब देखिए उसने क्या, अब ये किस पीढ़ी के लिए कहा है? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें संवारते हो और धर्मियों की कब्रें बनाते हो। ओ भविष्यद्वक्ताओं, और कहते हो यदि हम अपने बाप दादाओं के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उनके साथ साझी ना होते। हम प्रभु के वचनों का विश्वास कर लेते यदि हम उस समय में रहे होते। ध्यान दें, इससे तो तुम अपने आप ही गवाही देते हो कि भविष्यद्वक्ताओं के घातकों की संतान हो। सो तुम अपने बाप दादाओं के पाप का घड़ा भर दो। यही तो हो रहा है। अब ध्यान दें कि वो यहाँ क्या कहता है। हे सांपो, हे करतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से क्यों कर बच पाओगे? तुम ये कैसे कर सकते हो? अब देखिए, वो सेवकों से बात कर रहा है। ये ठीक बात है, पवित्र मनुष्य। कैसे आप वहाँ टिक कर और ये जान सकते हैं कि बाइबल भविष्यवाणी करती है और उन लोगों से ये करने के लिए मना करती है, और आप वहाँ टिक कर और थोड़े से बदबूदार डॉलरों के लिए, थोड़ी सी लोकप्रियता के लिए, और कोई आपकी पीठ थपथपाए और आपको डॉक्टर कहे, इसके लिए समझौता कर सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि आप उन लोगों से प्रेम करते हैं? मैं टेप पर भी प्रचार कर रहा हूँ, समझे? आप कैसे कह सकते हैं कि आप उन लोगों से प्रेम करते हैं और इस प्रकार की चीजें होने दें, समझे? तुम फरीसियों, तुम अंधे, तुम सांपों, तुम करेतों की संतान, तुम नरक के दंड से क्यों कर बच सकोगे? जब तुम किस तरह एक मनुष्य जो जानता हो कि ये सब बातें गलत हैं और वहीं टिका रहकर अपनी सभा को थामे रखे कि अपने नामधारी गिरजों को बनाए और स्त्रियों और पुरुषों को बताने में असमर्थ रहे, तो तुम नरक के क्रोध से क्यों कर बच सकते हो जबकि ये तुम्हारे लिए बना है? आप ये कैसे कर सकते हैं, समझे? सुनिए, यहाँ सुनिए, ये क्या होने जा रहा है। इसलिए 34वां पद, देखो मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं को भेजूंगा, मैं भेजूंगा भविष्य में। यहाँ ये फरीसी फिर से आ रहे हैं, समझे? बुद्धिमान मनुष्य, शास्त्री, और उनमें से तुम कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कितनों को अपनी सभाओं में कोड़े मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। वो भविष्यद्वक्ताओं को प्रभु के वचन के साथ भेजेगा, उसने ये भविष्यवाणी की है, और वो क्या करेंगे? वही जो उनके पूर्वजों ने किया, क्योंकि वे भी वही हैं। देखिए, आत्माएं नहीं मरती, मनुष्य जिसमें वो होती हैं वो मरता है, परंतु आत्माएं नहीं मरती। उसने कहा तुम उनकी संतान हो, तुम ही हो। और थोड़ा ध्यान दें कि ये चीजें कैसी हैं। संत पौलुस वहाँ कैसे स्थिर रहा? आप विश्वास करते हैं कि वो भविष्यद्वक्ता था? स्त्रियों को उनके बाल काटने के कारण दोषी ठहराया, उनके संगठनों को दोषी ठहराया, ये घोषित किया कि हर एक मनुष्य जिसका बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में नहीं हुआ उसे आकर फिर से बपतिस्मा लेना चाहिए। ये ठीक बात है, और आज वे समझौता करते और इसे हर तरह से सराहते हैं। वे इसमें कोई भिन्नता ही नहीं समझते, यद्यपि ये दयनीय है। यदि समय समाप्त हो गया है तो मैं ये कह सकता हूँ, देखिए वे अंधे हैं, अंधे होने के लिए पहले से ठहराए गए हैं। परमेश्वर अनुकारी हो, वे इसे नहीं देख सकते। यीशु ने कहा, तुम अंधे हो, तुम अंधे शास्त्री और फरीसी हो, तुम पाखंडी हो। जब तुम वही वचन पढ़ते हो जो कि उन सब ने पढ़ा, और तुम यहाँ आकर मुझे दोषी ठहराते हो, और मैं बिल्कुल वही हूँ जो वचन कहता है कि इन दिनों में यही होगा। मुझे इन दिनों के लिए संदेशवाक होना था, मैं मसीह हूँ, उसने बहुत से शब्दों में कहा, मैं मसीह हूँ। क्या इसे वे सिद्ध करने में असमर्थ रहा? यदि मैंने वो नहीं किया जो मेरे विषय में लिखा है, तो मुझे दोषी ठहराओ। और तुम अंधे फरीसियों, तुम अपने लोगों को ऐसी ही चीजों में ले जाते हो और पूरे झुंड को भेज देते हो। कहा, यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाता है। कहा कि तुमने कहा, ओ यदि हम संत पौलुस के दिनों में हुए होते। जी हाँ, मैं तो संत पौलुस की ओर होता। समझे, तुम क्यों नहीं उसकी धार्मिक मत का समर्थन करते हो जो तुम अब कर रहे हो? यही तुमने पहले भी किया, क्योंकि तुम अपने पूर्वजों की संतान हो, अपने संगठने वालों पूर्वजों की, फरीसी सदू की और अपनी धार्मिकता। यही है। हाँ हाँ, मैं आपको बताऊंगा और उस घड़ी को जिसमें हम जीवित हैं, आश्चर्य नहीं यदि यही तीसरा खिंचाव हो। बस एक मिनट, अब देखें, यीशु ने कहा ये जाति अधिक दंड के योग्य होगी। देखा, क्या ये भयानक बात नहीं? एक महान अमेरिकन होने के नाते, जब एक बार शत्रु इस राष्ट्र को जीतने पर था, तो वहाँ एक मनुष्य अर्धरात्रि में अपने घोड़े की पीठ पर कूद कर बैठा और सड़क पर दौड़ते हुए चिल्ला रहा था कि शत्रु आ रहा है। ये पॉल रिवर था। मैं भी एक अमेरिकन हूँ, और मैं भी इस अदराती में घोड़े पर ये नहीं कह रहा हूँ कि शत्रु आ रहा है, परंतु ये कि वो यहाँ है। आ नहीं रहा है, वो पहले ही यहाँ है, उसने जीत लिया है। मैं डरता हूँ कि ये समाप्त हो गया, इस अर्धरात्रि में जीत रहा है। याद कीजिए, तूसान में सात स्वर्गदूत, क्या संदेश था? परमेश्वर का गुप्त मनोरथ पूरा हो रहा है। एकदम उसके बाद पहाड़ी श्रृंखला पर, आप सबने पहाड़ियों के विषय में सुना है। ध्यान दें कि भाई फ्रेड और भाई टॉम के पास कुछ चित्र हैं, मेरे पास कुछ चित्र हैं, कुछ चलचित्र वगैरह वगैरह, हम किसी दिन यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं और दिखाएंगे कि ये कहाँ पर था। आप सब ये कहानी जानते हैं। तीन चोटियों पर ध्यान दें, यहाँ ये आपकी पहली, दूसरी और तीसरी है। और भाई फ्रेड के पास इसके बहुत अच्छे चित्र हैं, जब वो और बहन मार्था वहाँ से निकल रहे थे। जमीन की नम सतह से बादल उठे और उन सब बाकियों को छिपा दिया, और ये केवल तीन खिंचावों को दर्शा रहा है, एक यहाँ और एक वहाँ। समझे, वो सात। पहले तीन पर ध्यान दें, तीन शुद्धता है, यही जब सेवकाई आगे बढ़ी। दूसरा खिंचाव आत्मा के परखना था, भविष्यवाणी। पहला बीमारों को चंगा करना, दूसरा भविष्यवाणी करना जो आगे चला, और इससे विचारों के भेद को जाना जब वचन स्वयं प्रकट हुआ, जो कि यह अनुग्रह है। परंतु याद रखें, सातवां पूरक है। हो सकता है ये खिंचाव अंतिम हो, ये सब पूरा हो गया। ये भी हो सकता है। अब इस पर सोचें, जरा सोचें कि आप कहाँ पर हैं। समझे, सात सदा पूरक होता है, तीन खिंचाव। यीशु की सेवकाई में तीन खिंचाव थे, क्या आप ये जानते हैं? ध्यान दें, और अब आप पूरी सच्ची लगन से, यदि आप अपने जीवन में कभी रहे हैं, तो अब एक मिनट, थोड़ी देर के लिए। उसका पहला खिंचाव चंगाई था, वो एक बहुत लोकप्रिय मनुष्य हो गया, ऐसा लगता है जैसे सबने विश्वास किया। ये ठीक बात है ना? जब वो बीमारों को चंगा करता जा रहा था, हर किसी ने चाहा कि वो उनके गिरजे में आए, परंतु एक दिन उसने फिर कर भविष्यवाणी करनी आरंभ की, क्योंकि वो वचन था और वो भविष्यद्वक्ता था जिसके विषय में मूसा ने बोला था। और जब उसने उन्हें बताना आरंभ किया और उन्हें बताया कि वे कैसे जी रहे हैं और वो चीजें जो वो कर रहे थे, तो वो बहुत ही अप्रिय हो गया। ये उसका दूसरा खिंचाव था। आश्चर्य नहीं यदि ये फिर से प्रतीक हो जाए। अब एक मिनट के लिए सोचें, क्या ये हो सकता है? पहला, हरेक को चंगाई देना। दूसरा, ओ हो सकता है ये केवल यीशु हो, ये बालजबूल हो सकता है, ये एक वो हो सकता है। ये वही बातें हैं जो उन्होंने करी। समझे, वही आत्मा उसी तरह के लोगों में रह रही है, उन लोगों को दोषी ठहरा रही है जो कभी नहीं बच सके, क्योंकि वे पहले ही दोषी ठहर चुके थे। वे यहूदा स्कृति की तरह थे, विनाश का पुत्र उत्पन्न हुआ। आप कहते हैं यहूदा, बिल्कुल बहुत धार्मिक था, परंतु वो संदेश के साथ साथ नहीं चल सका। वो उसका एक भाग तो ले सका, परंतु बाकी को नहीं पचा सका। वे चंगाई और इस तरह की चीजों को ले सकते हैं, परंतु जब ये आता है कि परमेश्वर ने कहा गिलहरी अस्तित्व में हो, तो ये बात उनकी समझ से परे है। ये नहीं हो सकता। ये यहूदा था, उसकी आत्मा उस बिंदु तक जा सकती है, वो इसके आगे नहीं जा सकता। समझे? जब मूसा ने लाल सागर खोला और इस तरह वगैरह वगैरह, ठीक है, वे उसे ग्रहण कर सकते हैं। परंतु जब उन सबको ये बताया जाता है कि वे सब नहीं हैं, कि ये वो करें, ये तो अपने आप को हम लोगों पर परमेश्वर बनाता है। देखिए, कोरा और वे इसे नहीं मानते, इसलिए उनके पास संगठन होना ही चाहिए, इसलिए परमेश्वर ने बस उन्हें निगल गया। यीशु की सेवकाई जब वो बीमारों को चंगा कर रहा था, वो बहुत बढ़िया था। वो गलील का युवा भविष्यद्वक्ता था, क्योंकि वो अंधों को दृष्टि देता है, यहाँ तक कि उसने मृतकों को जिलाया। हम इसके तीन मामले मिलते हैं, उसने वास्तव में मरुओं को जिलाया। परंतु एक दिन उसने फिर कर कहा, उसने कहा, तुम सांपों की संतानों, तुम बाहर से बर्तन को धोते हो, तुम पवित्र से लगते हो, परंतु तुम्हारे अंदर तुम कुछ नहीं, केवल सांप का झुंड हो। जब ये भविष्यवाणी आगे चली और उनके संगठनों को दोषी ठहराया, तब सब बदल गया। वे उसके विरोध में हो गए, ये ठीक बात है, और अंत में उसको अस्वीकार करते हुए उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। परंतु आप सेवकाई को नहीं मार सकते, ये जीवित रहती है। तुम संदेशवाहक को मार सकते हो, परंतु संदेश को नहीं, ठीक है, वो जीवित रहता है। और ध्यान दें, जब उसकी सेवकाई का तीसरा खिंचाव आता है, पहला बीमारों की चंगाई था, दूसरा संगठनों को फटकारना और भविष्यवाणी करना था। उन्होंने क्या किया था, वे क्या थे और क्या आ रहा था, क्या है, क्या है, क्या आएगा, क्या था, क्या है और क्या आएगा, यही है जो उसने किया है। क्या ये ठीक बात है? परंतु उसका तीसरा खिंचाव था जब उसने नष्ट होने वालों को प्रचार किया जो बचाए नहीं जा सकते। वे वहाँ थे जहाँ वे बड़ी बड़ी रंगी हुई आँखों वाली थीं। ओह, जो प्राण अधोलोक में थे उन्हें प्रचार किया, जिन्होंने अनुग्रह को स्वीकार नहीं किया था, परंतु अनंत काल के लिए परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गए। परंतु उनको अभी भी पहचानना था कि वो क्या था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वहाँ भेजा। आश्चर्य नहीं यदि उसकी सेवकाई अंत के दिनों में भी उसी प्रकार से आगे बढ़ती जाए जैसे पहले थी। जैसे पिता ने मुझे भेजा, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे। नष्ट हुए कभी नहीं बच सकते। उन्होंने अनुग्रह को अस्वीकार कर दिया। ये उसका तीसरा खिंचाव था। अब इसमें कोई प्रश्न है? उसका पहला खिंचाव उसने बीमारों को चंगा किया, क्या ये ठीक है? उसकी दूसरी सेवकाई वो भविष्यवाणी कर रहा था। उसकी तीसरी सेवकाई अनंत नष्टों को प्रचार कर रहा था। वो तीन पहाड़ियाँ वगैरह वगैरह सदा के लिए नष्ट। नूह की सेवकाई ने, सारी सेवकाई ने यही किया। नूह ने प्रचार किया, ये बिल्कुल सही बात है। जब वो पानी के जहाज में गया और जब वो पानी के जहाज में चला गया, तब सात दिन तक कुछ नहीं हुआ। उसकी गवाही ने नष्ट हुए लोगों को प्रचार किया। सदोम और अमोरा, यीशु ने इन दिनों का उल्लेख किया है, जैसे आ रहे हैं। मनुष्य के पुत्र के आने के पहले भी ऐसा ही होगा जैसे नूह के दिनों में हुआ था, ऐसा ही होगा जैसे सदोम के दिनों में हुआ था। उसने नूह का उल्लेख किया। नूह के तीन खिंचाव थे और दरवाजा बंद होने के बाद उसका तीसरा नष्ट हुए लोगों के लिए था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे वहाँ बैठे रहने दिया जहाँ कोई न अंदर आ सकता था या बाहर जा सकता था, वे अंदर थे। जैसे कि सातवां पहाड़, सबसे ऊंचा पहाड़, जहाँ पर उसने जहाज को रखा था, पहाड़, समझे? ये ठीक बात है। सदोम के दिनों में पहला खिंचाव धर्मी लूत था, और बाइबल कहती है सदोम के पाप उसकी धर्मी आत्मा को हर दिन दुखी करते थे कि कैसे वे स्त्रियां व्यवहार और कार्य करती हैं। आपको याद है जैसे कि नूह के दिनों में हुआ था, वे क्या कर रहे थे? खाना पीना, विवाह, विवाह में देना, स्त्रियां, देखिए स्त्रियां। सदोम के दिनों में क्या था? स्त्रियां। और पहला संदेश लूत था, वे ठट्टा उड़ाने के लिए उस पर हंसे। तब उन्होंने दो संदेशवाहक भेजे, उनमें से दो, और वे नीचे गए। ये लूत सदोम के लिए दूसरा खिंचाव था। परंतु उस वाले को देखिए जो अंत में गया, वहाँ बहुतायत से अनुग्रह था। तब ये समापन पर था, उस समय समाप्ति पर था। वो तीसरा संदेशवाहक जो वहाँ नीचे गया, तीसरा खिंचाव, वो क्या था? उसकी सेवकाई किस प्रकार की थी? वो चुनुओं के साथ बैठा और उन्हें बताया कि उसके पीठ के पीछे की ओर क्या हो रहा है। क्या यह ठीक बात है? परंतु जब उसने बाबुल में कदम रखा या सादोम में, वो ढूंढना चाहता था, यहाँ तक कि इब्राहिम ने दोहाई दी, यदि मैं 50 धर्मी पालूं और नीचे 10 धर्मियों तक आ गया, परमेश्वर ने कहा हाँ तू 10 धर्मी ढूंढ ले। बहनों एक मिनट, मैं आपको एक बात बता दूं। आप पुराने तौर तरीके की हो सकती हैं, परंतु आपके पास कुछ है जो इन वासना प्रधान स्त्रियों के पास नहीं है। आपके पास ऐसा कुछ है जो कि इनके पास कभी नहीं हो सकता। ये ठीक है, आप अपनी वेशभूषा में एक अच्छी महिला की तरह पुराने चाल चलन की होंगी। वे कह सकते हैं देखो देखो वे पवित्र शोरगुल वाली, आप चिंता ना करें, उसके पास कुछ है जो उस वासना प्रधान के पास जिसको सारा संसार देख रहा है उसके पास नहीं है। उसके पास कभी हो ही नहीं सकता। वो अनंत काल के लिए नष्ट है, वो बर्बाद हो गई, समझे? वो कभी भी नहीं। आपके पास आचरण है, आपके पास गुण है, उसके पास कुछ नहीं है। उसके पास एक कांटा है जो कि नरक में नष्ट प्राणों को फंसा लेता है। अंधे उसमें फंस जाते हैं। अब आपको कुछ मिला? आप जानते हैं, हो सकता है कि आपका नाम गिरजे की पुस्तक में लिखा हुआ ना हो, परंतु हो सकता है ये आपका धार्मिक जीवन हो जो कि आज परमेश्वर के क्रोध को संसार पर आने से रोके हुए हो। संसार इसका विश्वास नहीं करेगा। आप महिला जो पवित्र शोर करने वाली कहलाती हो, और आप साधारण मनुष्य जो कि शायद ही कुछ जानता हो, परंतु आप अपने राष्ट्र के पापों के लिए दिन रात दुहाई देते हो, आप ही वो हो सकते हो जो परमेश्वर के क्रोध को रोके हुए हो। यदि मुझे 10 भी मिल गए तो मैं इसे छोड़ दूंगा, जैसा सादोम के दिनों में था ऐसा ही होगा। देखा मेरा क्या मतलब है? ये नहीं कि यदि मैं 10 मेथोडिस्ट पा सकूं, यदि मैं 10 बैप्टिस्ट पा सकूं, यदि मैं 10 पेंटिकॉस्टल पा सकूं, यदि मैं 10 खिलाड़ी पा सकूं, यदि मैं 10 लोकसभा के सदस्य पा सकूं, यदि मैं 10 सेवक पा सकूं, परंतु यदि मैं 10 धर्मी पा सकूं, केवल एक ही धर्मी है, वो मसीह है। मसीह अंदर रह रहा है, उनमें एक है उन 10ों में से। देखा, मैं इसे छोड़ दूंगा। परंतु अंतिम दूत ने नष्टों को प्रचार किया। आप कहते हैं वो वहाँ नीचे गया, वचन नहीं बताता कि क्या हुआ, परंतु अगली प्रातः आग बरस गई। ये ठीक बात है। उसके इन चिन्हों के दिखाने के पश्चात तुरंत उसके बाद जब उसने भविष्यवाणी की सेवकाई को किया, सारा क्यों हंसी? उसने कहा मैं तो नहीं हंसी। कहा हाँ तू हंसी, समझे? अब तुरंत उसके बाद वो बाबुल में प्रवेश कर गया या सदोम में चला गया। उसने उन्हें कभी नहीं पाया, इसलिए आग बरसी। उसे लूत मिला और उसकी दो पुत्रियां। कहा अब यहाँ से तुरंत बाहर निकलो, समझे? वो बाहर निकल गया, वो वहाँ नीचे गया। याद रखें, वो अपने मार्ग पर था। उसने अपने आगे दूत भेजे, परंतु वो स्वयं नीचे गया ये देखने के लिए कि ये चीजें ऐसी ही हैं। और उसने किस चीज से भरा पूरा पाया? स्त्रियों के रंगे पुते चेहरे, नष्ट लोगों को संदेश। वे क्या करेंगे? उस पर हंसेंगे। आज वे क्या करते हैं? वही बातें। मैं असेंबलियों से संबंधित हूँ, मैं वर्णन से संबंधित हूँ, मैंने आत्मा में नृत्य किया, परमेश्वर की स्तुति हो, मैं अन्य भाषा में। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। यदि मैं चाहूँ तो मैं अपने बाल कटा लूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, मुझे यीशु के नाम में बपतिस्मा नहीं लेना है, मुझे परवाह नहीं कि पौलुस ने क्या कहा है, वही पुराना स्त्रियों से चढ़ने वाला जो भी है, ये तो ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं किन्हीं दिनों में यदि आप नहीं कर चुके हैं तो आप उस रेखा को पार कर जाएंगे। आप कभी भी वो इच्छा नहीं करेंगे कि वो करें जो ठीक है। क्या आपने सुना कि मैंने क्या कहा? ये वो मामला, भाई बहनों, क्या आप महसूस करते हैं कि क्या कहा गया? आप उस रेखा को पार कर जाएंगे और आप कभी भी नहीं करना चाहेंगे। आप अब भी सुसमाचार सुन रहे हैं, ठीक है, परंतु आप कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते, परंतु सुसमाचार नष्ट लोगों को प्रचारा जाएगा, उनको जो सदा अनंत काल के लिए नष्ट हैं और बचाए नहीं जा सकते। आप पहले ही उस स्थान पर हैं और ये नहीं जानते। आप सोचते हैं कि आप विलासिता में जी रहे हैं और आप जबकि जीवित रहते हुए भी मरे हुए हैं। ओ सुनिए, वे सब जिन्होंने समय के संदेश को अस्वीकार किया है, इससे पहले कि दंड मिले, सुसमाचार दंडित लोगों को प्रचार किया गया, इससे पहले कि बगैर अनुग्रह के चले जाएं, नूह का बंद होना गवाही था। उसके तीसरे खिंचाव के बाद परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया। सादोम में तीसरे खिंचाव के पश्चात द्वार बंद हो गया, फिर कोई अनुग्रह नहीं था, 10 भी नहीं मिल सके, और नष्टों को सुसमाचार प्रचार किया गया जो कि बचाए नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो तो केवल हर युग में इसी प्रकार से हुआ। हर युग ने संदेश को न्याय से पहले अस्वीकार किया। क्या उन्होंने ये फिर से किया? क्या वो आग के खंभे में वहाँ नदी पर प्रकट हुआ? क्या यह स्त्रियों की कटाई छटाई के संदेश में प्रकट हो रहा है और अलग अलग स्थानों में जहां इसे होना चाहिए और उन सेवकों को डांट रहा है जो वचन पर स्थिर रहने के बदले अपने नामधारी गिरजों को लेते हैं, जबकि परमेश्वर ने इसे पूरी तौर से प्रमाणित कर दिया है कि ये वही है और न कि कोई निर्धन अज्ञानी अनपढ़ मनुष्य जैसे कि कोई चीज है। ये परमेश्वर है। और क्या अब हम उस स्थान पर आ गए हैं जहां पर तीसरा खिंचाव फिर से अनंत नष्ट हुओं के लिए वापस आएगा? क्या यही वो दर्शन था जो मुझे एक छोटे लड़के की तरह सामने दिखाया गया? और मैं पश्चिम में चला गया और वहां सुसमाचार की सुनहरी क्रूस के नीचे की ओर चमक रही थी और स्वर्गीय चिन्ह की घोषणा की। बिल्कुल ठीक, याद रखें, क्रूस विश्व संबंधित था जैसा एक पिरामिड बना है, समझे? हो सकता है ये सर वाला भाग है जहाँ ये समाप्त होता है और यहाँ से आरंभ होता है और ऊपर सरपरस्ती तक आता है, पिरामिड की तरह, जिसमें लूथर, वेस्ली, पेंटिकॉस्टल और अब तब वो उस चोटी के पत्थर से ढकना। क्या ये वो हो सकता है? यदि वो यही है, हम कहाँ पर हैं? क्या ये हो सकता है? मैं आशा करता हूँ कि ये नहीं है, परंतु ये होना ही है, ये होने जा रहा है। उन सेवाओं को याद करिए जिनका होना था, जो कि सदा एक दूसरे से सदा मेल खाती हुई हैं। इनको होना ही है और परमेश्वर बदलता नहीं। इस पर सोचें, अपने आत्मिक दांतों से अपने विवेक को काट कर देखें और देखें कि हम कहाँ हैं। क्या हो यदि यही हो, आप अब भी उसी दशा में हैं, तब आप केवल उस तरह से चल सकते हैं। आप जो बाहर हैं समाप्त हो गए हैं। मेमने की पुस्तक लेने के पश्चात छठवीं मोहर प्रकट होती है और सारी मोहरें ये समापन है। ये हो सकता है, मैं आशा करता हूँ कि ये नहीं है, ये हो सकता है। ठीक है, अब इसी कारण क्या ये तीसरा खिंचाव इतने समय तक रुका रहा? आप ध्यान दें, पहला खिंचाव और दूसरा खिंचाव एक दूसरे में जाता है। आपको याद है मैंने भविष्यवाणी की थी जब मैंने पहले पहल वाला आरंभ किया था? मैंने कहा कि एक समय आएगा कि ये हृदय के भेदों को जान लेगा। आपको याद है? कितनों को याद है? क्यों, आप सबको याद है मेरी सभाओं में? और एक रात्रि में राजदाना में मंच पर पहुंचा और भाई बैक्सटर और कई हजार लोग वहां थे और एक मनुष्य प्रचार मंच पर आया और वो वहां आरंभ हुआ था और तब से अब तक वैसे ही है। परंतु ये वर्षों से है जब से मैं लगभग 4-5 वर्ष पहले कार्य क्षेत्र से बाहर आ गया। मैं बाहर आ गया, ये क्या था? इसने क्या किया? ऐसा क्यों हो रहा था? ये ऐसा ही था जैसा आरंभ में था, उत्पत्ति में परमेश्वर का धैर्य रखना। याद करिए, जब उसने संसार बनाया, सातवें दिन उसने कुछ नहीं बनाया, उसने विश्राम किया, समझे? परमेश्वर छठवें वर्ष में धीरजवंत रहा। वो नहीं चाहता था कि कोई भी नष्ट हो, परंतु सब प्रायश्चित करें। परमेश्वर धीरजवंत था। उत्पत्ति 15:16 में फिर से, यदि आप लिखना चाहते हैं तो 16:15, उसने इब्राहिम को बताया वहाँ अमोरियों के देश में उनके अधर्म, वे अन्य जाति थे, मैं अभी तुझे वहाँ नहीं ले जा सकता क्योंकि अमोरियों के अधर्म अन्य जातियों के अभी पूरे नहीं हुए, परंतु मैं उनका न्याय करूँगा। मैं चौथी पीढ़ी में आऊँगा और तब मैं उस देश का न्याय लोहे की छड़ से करूँगा। ये ठीक है ना? क्या परमेश्वर की धीरजवंत सेवकाई इतने समय से निरंतर टेपों के द्वारा और हर प्रकार से चल रही है और ये देखने के लिए कि पूरे संसार को छान दिया है कि यदि कोई एक भी बचा हो? परंतु हो सकता है वो अंतिम वाला अब जल्दी ही आता हो। क्या ये अधर्मता जो कि इतने समय से चली आ रही है? यदि यीशु एक सा है जो कि वो है इब्रानी 13:8, तो उसका संदेश भी एक सा होना चाहिए। वो बंद होने पर है, उसका कार्य भी एक सा होना चाहिए। यदि पहला और दूसरे खिंचाव में कोई प्रश्न नहीं है, क्या आपके मस्तिष्क में पहले और दूसरे खिंचाव के लिए कोई प्रश्न है? क्या जैसा उसने कहा वैसा ही घटित नहीं हुआ? प्रश्न क्यों है, समझे? आप प्रश्न क्यों करेंगे? पहले दो वचन द्वारा प्रमाणित हुए हैं। मैंने आज प्रातः आप पर तीसरे वाले को भी वचन से प्रमाणित कर दिया है। संसार को देखिए कि वो कहाँ है। देखिए कैसे उन्होंने सत्य को अस्वीकार कर दिया है और कितनी ठीक तरह से भविष्यवाणी का ये भाग प्रमाणित हुआ है। अब हम कहाँ हैं? ओ परमेश्वर, अनुग्रहकारी हो, इससे मेरा हृदय अंदर से रोता है। हम कहाँ हैं? इस विषय में क्या है? याद रखिए, ये वहाँ की 7 चोटियाँ आपको बता सकती हैं। ये इसके बाद वहाँ और कोई चोटी नहीं है। वो द्वीप के विभाजन पर है, वहाँ से वो रेगिस्तान में आरंभ हो जाता है, वहाँ अनंतता आ जाती है। द्वीप विभाजन के स्थान पर ही 7 चोटियां हैं। ये ठीक बात है सही और गलत के बीच में, और उसके अंत में तीसरा खिंचाव उस श्रृंखला का अंतिम खिंचाव है। ये ठीक बात है ना, समझे? ठीक है। नूह अंदर गया तब 7 दिनों के बाद तक कुछ नहीं हुआ। देखिए 7 दिनों में न्याय आ गया। यदि केवल, अब सुनिए समाप्त करते हुए, यदि केवल नूह के समय में वे उस चिन्ह को जान जाते, यदि वे केवल इसे जान जाते, अब मैं बंद करने पर हूँ, यदि वे केवल इस चिन्ह को जान जाते उस समय का संसार, अभी थोड़ी देर पहले जो कि परमेश्वर ने वचन के पढ़ने के द्वारा प्रमाणित किया, उसने उन लोगों को नष्ट कर दिया, बिना अनुग्रह के नहीं। अनुग्रह उनके पास भविष्यद्वक्ता के द्वारा भेजा गया, वे उसका विश्वास नहीं करेंगे। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, उसने अनुग्रह भेजा परंतु वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे। हमेशा उसने पहले अनुग्रह भेजा। क्या होगा यदि वो अंत समय के चिन्ह को जान जाएंगे, और जब अचानक से उन्होंने देखा कि उद्धार उठ गया और कोई भी नहीं, समझे? सबसे पहली चीज आप जानते हैं, दरवाजा बंद हो गया था। यदि वे वहाँ केवल एक ही व्यक्ति था जो इस चिन्ह को जानता था, और वो नूह और उसका झुंड, केवल वही था जो जानता था। जब फाटक बंद हुए, नूह ने जान लिया, नूह जान गया कि अब सब समाप्त हो गया। वो ये बात जानता था। ये ठीक बात है। यदि आप केवल चिन्ह को जानते हैं, ओह, यदि वे केवल चिन्ह को जान गए होते जब उन्होंने देखा कि वो वाला वहाँ आ गया है जो वहाँ ऊपर इब्राहिम के संग था। काश वे केवल ये जानते होते कि उस दिन का आधुनिक बिली ग्राम वहाँ नीचे गया, वो और ओरल रॉबर्ट्स, और उन अंधे लोगों को संदेश प्रचार किया। काश वे केवल ये जानते होते कि वे पुराने धार्मिक मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट वहाँ उनके सामने उस दिन लूथ का चिन्ह थे, जब वहाँ के पाप उनके प्राणों को दुखित करते थे। अब वे मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट किसमें बदल गए? जैसे लूथ ने किया, वही बात, परंतु धर्मी उनके बीच से निकल आया। बिल्कुल ठीक बात है। क्या होता यदि बिली ग्राम वहाँ नीचे गया होता, वहाँ एक निर्णय के लिए गया? वे चिंगम चबा रहे हैं, एक दूसरे को नोच रहे हैं, हंसते हुए, कटे हुए बाल, चेहरे दंगे हुए हैं, और इस विषय में जरा सा भी बदलाव नहीं। अगले दिन वापस आया और बिली ने कहा, मैं एक वर्ष में 30,000 प्रभु के पास वापस लाया, और अब 30 भी नहीं है। ओ, मैंने निर्णय किया है कि मैं अब नरक में नहीं जा रहा हूँ, मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। पाप के गट्ठर में बंध रहे हैं। यदि उन्होंने केवल, और तब सुसमाचार सामर्थ्य प्रचार आ गया था, और चिन्हों और आश्चर्य कर्मों और उस पर आग का खंभा और हर बात बिल्कुल वैसे ही चल रही है, और भविष्यवाणी करके तय की गई है। यदि उन्होंने कहा, ये एक पवित्र शोरगुल करने वालों का झुंड है, ये मस्तिष्क का पढ़ना है, एक तरह की जादूगरी आत्मा है, एक शैतान है, बस यही है। क्या आप इसका विश्वास नहीं करते कि ये हमारे संगठन में नहीं है? हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं। यदि वो केवल चिन्ह को जानते, यदि वे इसको केवल जान गए होते, यीशु ने कहा, यदि तुम केवल अपने दिनों को जानते यरूशलम, यदि तुम केवल पहचानते, परंतु कहा, अब तुम अपने हाल पर छोड़ दिए गए, समझे? यदि तुम केवल जानते, ओ यरूशलम यरूशलम, मैंने कितनी बार चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपा लेती है, उस न्याय से जो तुम पर आने को है, परंतु तुमने अपने दिनों को नहीं पहचाना। तुमने भविष्यद्वक्ताओं को पथराव किया और धर्मियों को मार डाला। यदि तुम अपने दिनों को जानते, यदि तुमने केवल जाना होता और अपने वचन पर बने रहते और जानते कि मेरा आना तुम्हारे अंत का चिन्ह है। अब तुम अंधे हो, अब तुम्हें डांटा जा चुका है, तुम्हारा समय पूरा हुआ, और ये था। ये ठीक बात है। यदि केवल तुम समय को जानते, देखिए जब यीशु ने ये घोषणा की, संसार चल रहा था, देखा, संसार साधारण रीति से चल रहा था। क्यों? क्योंकि वे अपनी घड़ी नहीं जानते थे। जब नूह जहाज में गया, संसार ऐसे ही चल रहा था, संसार इसी तरह से आगे बढ़ रहा था। उन दिनों में ठट्टा करने वाले, उनकी अब भी वासना भरी दावतें चल रही थी, वे अब भी खा पी और विवाह आदि कर रहे थे, जो आज भी करते हैं बिल्कुल साधारण रीति से। इस बूढ़े पवित्र शोर मचाने वाले ने दरवाजा बंद कर लिया, क्या आपने कभी इस तरह की बातें सुनी है? अब जानते हैं वो क्या कहता है, हम सब डूबने जा रहे हैं। निर्थक विचार, पानी कहाँ है? हंसी ठट्टा करने वाले नूह के दिनों में थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा। ठीक है, नूह चिन्ह जानता था, यही बात लूथ के दिनों में थी, यही बात यीशु के दिनों में थी, ऐसे ही आज है। उन्होंने अंतिम बार हंसी ठट्टा किया, ऐसे साधों में वे कभी नहीं जान सके। जब वो दूत परमेश्वर की ओर से संदेश लेकर वहाँ खड़ा था, वे केवल उन पर हंसे और अपने कर्मों के द्वारा उन्हें दूषित करने का यत्न किया। क्या ये ठीक बात है? आओ और हमारे साथ मिल जाओ और हम में से एक बन जाओ. क्या ये ठीक है ना? आओ हम में मिल जाओ, हम में से एक बन जाओ. तुम हम में से एक लड़के हो गए, आओ हम में मिल जुड़ जाओ. उन्होंने कभी भी अपना चिन्ह नहीं जाना. जब संदेश चल रहा था तब उन्होंने नहीं जाना कि यही वे इसे देख ना सके कि न्याय की आग और क्रोध, जैसे कि परमेश्वर ने आग की लपट या ज्वाला आकाश में धक्का रखी थी, ऐसे नहीं देख सके. हो सकता है वो दूत, ओ लूत भी इसे जानता था. वो जानता था कि ये आग वहाँ है, बिल्कुल निश्चित. ऐसे ही जैसे आज है, बिल्कुल ऐसी ही बातें. क्रोध धधक रहा है, एटम बम तैयार हैं, हर चीज अंत पर आ गई है. अब फिर से वैसा ही है. देखिए लोगों, सुनिए. आप जानते हैं, आप कहते हैं भाई ब्रणम इसके विषय में क्या है? आप जानते हैं लोग प्रचार पर जा सकते हैं जैसा जाते रहे, जैसे वे सुसमाचार कहते हैं. हो सकता है वो पूरा हो चुका. उन्होंने नूह के दिनों में भी यही किया, उन्होंने लूत के दिनों में भी यही किया, उन्होंने यीशु के दिनों में भी यही किया. ये ठीक बात है ना? यहाँ तक कि यहूदी, उसके बाद जब यीशु ने उन्हें बता दिया कि क्रोध तुमने कमा लिया है, तुम समाप्त हो गए, अब और कुछ नहीं, तुम समाप्त हो चुके. ओ उसने कहा वो पवित्र शोर मचाने वाला है. वो कौन से विद्यालय से आया है? वो कहाँ से आया है? याद रखें, वो उस समय अपने तीसरे खिंचाव के लिए तैयार था. ये ठीक बात है. उसने कहा मैंने कितनी बार चाहा कि तुम्हें छुपा लूं. दूत ने अंतिम बार पुकारा, या मेरा अर्थ उस दूत ने किया, संदेशवाहक चाहे जो भी था. परमेश्वर का इन दिनों में प्रतिनिधित्व, परमेश्वर का मनुष्य शरीर में प्रतिनिधि, उसने अंतिम चिन्ह दिखाया, अंतिम कर्तव्य कर दिया. तब ये सब कुछ समाप्त हो गया था. नूह ने अपना अंतिम वचन प्रचार किया, इसके बाद द्वार बंद हो गया. बस यही कुछ था. वे इस पर हंसे और उसका ठट्टा उड़ाया. सोचिए कि लोग प्रचार करते रह सकते हैं. वो एक्यूमेनिकल सभा कैथोलिक गिरजे के साथ मिल जाएगी, जैसे कि उन्होंने ये करने की प्रतिज्ञा की है. सारे संगठन आ सकते हैं, परंतु पशु की छाप तो पहले ही वहाँ है. वे इसे उसमें ले जाते हैं, समझे? और वे कहते हैं ओ हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पिछली रात्रि बहुत से लोग बच गए. वे बचे, आत्मा में उन्होंने नृत्य किया, वे भाषाओं में बोले. इन बातों का कोई अर्थ नहीं है, समझे? वे कोमल, सज्जन और नम्र हैं. जी हाँ श्रीमान, उनके पास आत्मा के फल हैं. ये कोई चिन्ह नहीं है, जरा भी नहीं. मैं आपको यीशु और फरीसियों के बीच में आत्मा के फल दिखाता हूँ, और देखिए कि किसके पास आत्मा के फल थे. यदि मैं खड़ा हुआ, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहना आरंभ किया था, एक मिनट के लिए मसीह के विरोध में, ऐसा कहने के लिए भी मुझे परमेश्वर क्षमा करे. देखिए, परंतु आपको कुछ दर्शाने के लिए, क्या हो यदि मैं आकर आपसे कहूं कि आपका सभा का कौन मित्र है जो आपको आत्मा के फल दिखाता है? आपका मेहरबान बूढ़ा पादरी. जब आप अस्पताल में बीमार थे तो कौन आपको देखने आया? आपको नम्र बूढ़ा पादरी. ये ठीक बात है ना? वो कौन था जिसने हमेशा आपको पैसे दिए जब इसके विपरीत आप तंग स्थिति में थे? आप जो उसकी सभा के सदस्य हैं, क्या आप उस नम्र बूढ़े पादरी के पास नहीं जाएंगे और वो आपको पैसे देते हैं? समझे? कौन है जो सदा प्रेमी और नम्र है और आत्मा के फल दिखाता है? आपका नम्र बूढ़ा पादरी. वो कौन है जिसने आराधनालयों में वर्षों अध्ययन किया है, जहाँ से कि उसके पुराने पुरखे वहाँ से आते रहे? कौन है ये जिसने अध्ययन करके, कठोर परिश्रम करके और डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करी और PhD और LLD परमेश्वर के वचनों को जानने के लिए की, और यहाँ प्रति रविवार को खड़े होकर आपको जो उसकी सभा में है दे दिया? आपका पुराना नम्र पादरी. ये स्वर्ग धर्म त्यागी कौन है जो यीशु कहलाता है? ये कौन से विद्यालय से आया है? ये कौन से विद्यालय से है? उसकी संगति का परिचय पत्र कहाँ है? ये कौन से संगठन से संबंध रखता है? जब आपके परिवार में गड़बड़ होती है तो वो क्या करता है? कौन आपके पास आता है? आपका पुराना नम्र पादरी यत्न करता है कि, और आपका वाद विवाद आपके पड़ोसी से हो जाता है, और आपका पुराना नम्र पादरी आकर ठीक ठाक कर देता है, कहता है आप सब परमेश्वर के पुत्र हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, ये और वो है. ये यीशु नासरी क्या कहता है? सब छिन्न भिन्न कर देता है. वो क्या करता है? आपके संगठनों को लताड़ता है. वो क्या करता है? आपके पादरी को अंधों का अंधा अगुआ कहता है. वो उन्हें घास का सर्प कहता है. जिस बलिदान को परमेश्वर ने अभिषेक किया है उसे लेकर उसकी मेज में लात मारता है और पैसों को बाहर फेंक देता है और उन्हें गुस्से से देखता है. क्या आपने कभी अपने पादरी को इस प्रकार करते देखा? अब आत्मा के फल कहाँ हैं? ना कि भाषाओं के बोलने के द्वारा, ना ही आत्मा में नृत्य करने के द्वारा, ना ही गिरजे में सदस्य बनाने के द्वारा, ना ही आत्मा के फलों के द्वारा। क्रिश्चियन साइंस इस बात पर आप में से किसी का भी गला घोंट सकती है, देखो, और यहाँ तक कि मसीह को दिव्य होने से भी अस्वीकार कर सकती है। ये नहीं, परंतु ये जीवित वचन है, यही है। यदि वे केवल ये देख पाते कि वो मसीह था, वो जीवित वचन था जो प्रकट हुआ, और एक मनुष्य जिसमें परमेश्वर की आत्मा है, या स्त्री जो वचन को जीती है, सही तौर से उसी में जीवित है, वही हृदय की धड़कन है, उसी के लिए ठहराए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके पास आता है और वे लोगों के लिए वचन है। लिखित पत्रियां जो सब मनुष्य के द्वारा पढ़ी जाती हैं, क्या ये ठीक है ना? क्या तीसरा खिंचाव आरंभ हो सकता है? टेप वालों, आप जो इस टेप को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस सभा को इस समय देख सकें। मैं आशा करता हूं कि आप भी वैसा ही अनुभव कर रहे हैं। क्या हो यदि यही हो? इन वचनों पर जो यहां ढेर सारे रखे हैं, इनको देखें, क्या ये हो सकता है? क्या तीसरा खिंचाव जो अनंत काल के लिए दंडित है, उनको प्रचार करना है, जिन्होंने उद्धार के संदेश को अस्वीकार कर दिया? भाई, आप कहते हैं कि गिरजे जा रहे हैं। जी हाँ, वे जाएंगे, वे इसी प्रकार से चलते जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही। परंतु याद रखें, इस सारे समय नूह जहाज के अंदर था, वो दुल्हन मसीह के अंदर मोहर बंद है, अंतिम सदस्य भी छुड़ा लिया गया है। छठी मोहर ने अपने को प्रकट किया है, सातवीं मोहर उसको पृथ्वी पर वापस लाती है। उस मेमने ने आकर उस पुस्तक को उसके हाथ से ले लिया है और बैठ गया, और जो उसने लिया है उसका दावा कर लिया है, जो भी उसने छुड़ाया है, ये ठीक बात है। ये सदा ही तीसरा खिंचाव रहा है। तीन सिद्धता है। ये सेवकाई अपनी सिद्धता पर आती है जब इसने मसीह को फिर से स्वाभाविक रूप में मनुष्य के बीच में प्रकट किया है, जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी, जैसा लूत के दिनों में था। और जरा सोचिए, लोग निरंतर प्रचार करते रह सकते हैं, ये सोचते हुए कि वे बच रहे हैं, ये विश्वास करते हुए कि वो ठीक कर रहे हैं, ये विश्वास करते हुए कि उनका संगठन बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ तक कि आशा की एक किरण तक नहीं। और यदि ये दर्शन यही था और ये स्त्रियों के विरोध में सख्त रहा है, तो हम उस घड़ी पर आ पहुँचे हैं। द्वार बंद हो गए हैं, पुस्तक उसके हाथ में जा चुकी है। इस पर सोचिए। अब इसे बंद करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं बंद कर रहा हूं। ये एक आयरलैंड में बताया गया था, जिसका मुंह पानी की ओर है। वहाँ पर समुद्री चट्टानों की पंक्ति किनारे किनारे जा रही है और इस बड़ी पहाड़ी तक है, और एक मनुष्य उसके सहारे सहारे एक दिन जा रहा था, उस समय के लगभग जब समुद्र का पानी चढ़ता है। और वहाँ एक उदार मनुष्य था जो वहाँ पहाड़ पर रहता था, वो इस ज्वार भाटे के विषय में जानता था। वो दिन के उस समय को जानता था जब लहरें ऊपर को चढ़ती थीं। वो जानता था कि पानी किस समय चढ़ता है। इस व्यक्ति ने समय की कोई चिंता नहीं की, वो उनमें से था जो सब जानते हैं। उसके अपने विचार थे, वो एक खिलाड़ी, तेज बुद्धिमान व्यक्ति था, परंतु वो पानी के चढ़ने के समय को नहीं जानता था। वो उस देश के विषय में नहीं जानता था। वो उस सही समय के चिन्ह को नहीं जानता था, जब चांद पृथ्वी की ओर से पीठ कर लेता है, और जब परमेश्वर अपना आत्मा पृथ्वी पर से हटा लेता है। भाइयों, वो गई, बस सब हो गया। वो चांद अपने स्थान से कभी नहीं हटता, नहीं तो पानी पृथ्वी को फिर से ढांक लेगा, जैसे जब परमेश्वर ने इसे आरंभ में किया था, उत्पत्ति एक। परंतु चांद वहाँ स्थिर रहता है, और जब वो जरा सा इसे अपने सिर घुमा लेता है, तो लहर अंदर की ओर बढ़ती है। ये बुद्धिमान बूढ़ा मनुष्य जो वहीं रहा करता था कि ये किस समय होता था, ये व्यक्ति नहीं जानता था। उसने कभी भी इसका अध्ययन नहीं किया था, उसने कभी इसकी चिंता नहीं की थी। और ये बुद्धिमान बूढ़ा मनुष्य बाहर भाग कर आया और कहा, मेरे अच्छे मनुष्य, आगे बढ़ने का दुस्साहस मत करना, एकदम वापस लौट आओ। वहाँ एक दीवार है, आप दीवार तक नहीं पहुँच सकते हो, आप नष्ट हो जाओगे। सारे चिन्ह प्रकट हैं, समय पर लहरें एकदम से बढ़ जाएंगी और तुम वापस नहीं आ सकते, और अब और आगे मत बढ़ो। और वो मनुष्य घूम कर उस पर हंसा, बोला, जाओ अपना काम करो, मैं जानता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। और लहरों ने उसे घेर लिया। हो सकता है हमारे सोचने से पहले हो जाए, समझे? ये आपको पकड़ लेगी, और आगे ना बढ़ो। लोगों, आप ऐसा मत करो। यदि आपने सदा मुझ पर परमेश्वर का दास होने का विश्वास किया है, तो आज प्रातः मेरे शब्दों को ले लें। यदि आपने कभी मुझ पर किया है, हो सकता है मैं पहले ही बहुत देर में हूँ। वचन इसे बहुत अधिक इसी रीति से दर्शाता है। अब याद रखें, मैं ये नहीं कहता कि यही है, मैं नहीं जानता, परंतु थोड़ा देखें। और मैंने यहाँ लगभग 10 पन्ने कम कर दिए हैं, जिसे मैं आपको बताने से डरता था, समझे। श्रीमती वुड्स और श्री वुड्स इसका अभिलेख हैं। जब आज प्रातः मैं उनके पास मिलने गया, मैंने कहा मैं ये उन्हें नहीं बता सकता, इतनी गहराई से नहीं बता सकता। मैं इतने सारे वचन उन्हीं के पास रखकर छोड़ा आया, क्योंकि ये टेप होने जा रहा था। ये होगा और लोग इस संदेश पर हंसेंगे। ये ठीक बात है, इन्हीं किन्हीं दिनों में ये घटित हो जाएगा। गिरजे के सदस्य की तरह चलते रहिए, अपने बाल काटो, चेहरे रंगो, चलते रहो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा लेते रहो। यदि आप चाहते हो ये तीन परमेश्वर बना देता है और मूर्ति पूजक बन जाओ, बढ़ते रहो। अगर आप चाहते हो तो अपने अपने संगठनों से चिपके रहो, ऐसा ही करो। कहते रहो मैं आत्मा में नाचा, मैंने अन्य अन्य भाषाएं बोली, मेरे पास तो है। मैंने शैतान को भी यही चीजें करते देखा है, मैंने चुड़ैलों को भी भाषाओं में बोलते तथा अनुवाद करते देखा है, और अन्य भाषा में लिखते और अनुवाद करते देखा है, जो कि मनुष्य के कपाल से लहू पीते हैं और शैतान को बुलाते हैं, आत्मा में नाचते हैं। मुसलमान भी इसी तरह से आत्मा में नाचते हैं, जब तक कि वो हट्टियां लेकर अपनी उंगलियों के नीचे चलाते हैं और बर्सी बल्लम से लेकर अपने चेहरे पर चलाते हैं, इस प्रकार से उसे नीचे खींचते हैं और उनमें से एक बूंद लहू तक नहीं निकलता। और भारतीय लोग 3-4 फुट गहरे अंगारों की आग पर नंगे पैर चलते हैं, उन कोयलों को तब तक भड़काते हैं जब तक कि वे सफेद नहीं हो जाते और उनके पैरों में खनुच तक नहीं आती, और इस बात को अस्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह का नाम का भी कोई था। मित्रों, नहीं नहीं, ये वचन है जो ये बताता है। लोगों को और वचन को एक बनना है, समझे। यीशु और वचन एक ही थे, वो वचन था, और जब यीशु मानव देह में रहे जिससे वो बना था, और वचन वही था। मत करो, आपका जीवन बताता है कि आप क्या हैं। परमेश्वर के दर्पण में अपने आप को देखो, कहिए मैं इस प्रातः कैसे दिखता हूँ। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से दूर घूमता रहा, अब मैं घर आ रहा हूँ। प्रार्थना कीजिए, यदि आपने कभी प्रार्थना करी है। जबकि आप लगातार गाना गा रहे हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपके हृदय में कोई काला दाग है जो कि लगता है कि पाप से है? यदि ये है तो अब समय है कि इसे छुटकारा प्राप्त कर लें, अभी इसी समय, यदि अनुग्रह है तो। मैं आशा करता हूं कि ये ऐसा नहीं है, मैं आशा करता हूं कि ये वहाँ नहीं है, परंतु क्या ये ऐसा नहीं लगता कि ये हो सकता है? सुनिए, पवित्र आत्मा ने लोगों के बीच में क्या कहा है। मेरे निकल जाने के बाद ये आपके लिए आवाज है। और यदि कुछ ऐसा है, यदि आपके जीवन में कोई अंधकार है, तो क्या आप यहाँ वेदी के पास आएंगे जबकि हम गाना गा रहे हैं? यदि कोई हृदय टूटा है, यदि कोई दाग है, उसे अधिक देर तक मत रखिए। मैं आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि ये ऐसा नहीं है, परंतु इन्हीं किन्हीं दिनों में ये होगा और ये आज हो सकता है। आपके नथनों की सांस के साथ जो आपके चारों ओर है, यदि टेप सुनने वाले लोग इसे देख सकें कि अब इस समय यहाँ क्या हो रहा है, बस भीड़ एक दूसरे पर गिर रही है और रोते हुए चारों ओर से जमा हो रहे हैं। क्या ये वो दर्शन हो सकता है जब मैं छोटा सा लड़का था? क्या यही वो समय है? क्या यही वो समय है जब वो उबाऊ दिखने वाली धुंध नरक यही इसी धरती पर ही सिरजा जा रहा है? सामने का अल्टर और गिरजे के किनारे के गलियारे और हर जगह अब भरे हुए हैं। यदि आप अल्टर या गलियारे में नहीं आ सकते हैं, जहां कहीं भी आप इन हजारों में यहां हैं, बस खड़े हो जाएं। यदि आप कहते हैं मैं खड़ा होकर प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि लोग जान सकें, या जहां कहीं आप चाहें घुटने पर हो जाएं। अब आप शायद ही किसी को बैठा देख सकेंगे, ये लोग चारों ओर खड़े हुए हैं। मैं ये कह सकता हूँ, परमेश्वर ना करे, परमेश्वर ऐसा ना करे जो मैंने अभी कहा है, मैं और हर जन इसे समझ सके, परमेश्वर ऐसा ना करे। बच्चे हैं जो अभी इसमें नहीं हैं, तो पुत्रियां हैं और एक पुत्र, मेरे भाई हैं, मेरे अपने लोग हैं जो इसमें नहीं हैं। करे, इस अनुग्रह ने हमें बचा रखा है, बस यही है, ये केवल एक बहाना होगा। क्या प्रभु अनुग्रह बचा है? मैं इस पर गलत हो जाऊं, प्रभु होने दे कि ये इस समय गलत हो जाए, ताकि मैं है कि नहीं कि लोग अब भी बचाए जा सकते हैं। करें, मैं प्रार्थना करता हूं और इस सभा को आपको समर्पित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अब हर कोई ऐसे प्रार्थना करे जैसे कि क्या यदि वही था, तो मैं नहीं जानता कि वो यही है, परंतु क्या यदि वही था, तो आप अपनी तरह से प्रार्थना करें, जैसे भी आप चाहते हैं उसी तरह से प्रार्थना कीजिए। यदि ये सत्य था, मित्र हम क्या करते, क्या घटित होने जा रहा है? चाहते हैं केवल परमेश्वर के सामने अपनी तरह से रोएं। ओ परमेश्वर, प्रभु मैं तो ये बहुत पहले करना चाहता था, क्या प्रभु मैंने बहुत देर की? क्या ये बचा, ये समाप्त हो गया? ओ परमेश्वर, अपने प्रेम भरी बाहों को फैला दें और मुझे ग्रहण करें। मेरे हृदय में कुछ इसके लिए अनुरोध कर रहा है, एक बार और खोल दें। यदि मेरा नाम मेमने की पुस्तक में है, तो अब मुझसे बातें करें प्रभु, मुझे अभी इसे प्राप्त करने दें। कृपा करके परमेश्वर करिए। बाइबल ने कहा, जब उन्होंने यीशु को पहचाना तो प्रत्येक उनमें से ऐसे रोया जैसे उनका पहलौठा पुत्र मर गया। आप जो बाहर हैं, आप जो अपनी कारों में शॉर्ट वेव के द्वारा सुन रहे हैं, आप जो भवन के चारों ओर खड़े हैं, आप में से बहुत से हैं अपने सिरों को इमारत की ओर झुकाएं और कहें, प्रभु परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करें। निष्कपट मर रहे हैं मित्रों, सोचिए कि हम किस समय में रह रहे हैं, हम कहाँ हैं? प्रभु यीशु, मैं जितना भी अच्छा कर सकता था मैंने किया, मैं जानता हूँ मैंने वो सब किया जितना मैं जानता था कि कैसे करूँ। प्रभु प्रदान करें कि अनुग्रह के द्वार अब भी खुले हों। ये सैकड़ों वास्तव में सैकड़ों लोग तुझे इस समय खोज रहे हैं। हर पाप भरे दाग को हटा दे प्रभु और आज इन्हें अंदर ले ले। मैं पूरे हृदय के साथ पैरवी कर रहा हूँ। जैसे कि हम देखते हैं केवल यहाँ कोई व्यक्ति बात नहीं कर रहा है, परंतु वचन स्वयं हमें इस घड़ी तक ले आया है। और उस छोटे लड़के के दर्शन ने उन लोगों को उस स्थिति में देखा। और अब सोचिए कि अनुग्रह पृथ्वी से उठ गया है और नरक स्वयं यहाँ पर है, और वे लोग प्रभु इस भयानक स्थिति में हैं। ओ सामर्थी परमेश्वर, इस चुनी हुई कलीसिया पर परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी आशीषें उंडेलेंगे, ताकि वे गवाही की सेवकाई ग्रहण कर सकें, कि लूत के पास था जैसा कि नूह के पास था, जैसा कि यीशु के पास था। यदि ये यहाँ है तो सदा के नष्ट लोगों के लिए है। यदि वे स्वयं परमेश्वर के राज्य में मोहर बंद है, परंतु यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं कि वो कल, आज और सदा तक एक सा है, ताकि आप अपना अनुविनय प्राप्त कर सकें, जैसे कि हम यीशु के नाम में पैरवी करते हैं। प्रार्थना कीजिए अब जैसे भी आप चाहते हैं। बहुत जल्दबाजी ना करें। क्या हो यदि आपका अंतिम नाम हो कि उसमें हो? घर आ रहा हूँ। भाई नेविल, थोड़ी देर के लिए आप जाकर उसके लिए प्रार्थना करें। पास्टर आपके साथ प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप प्रार्थना करिए, मैं गाऊंगा।
As it were, this moment of time to be able to consider our ways before Thee. My God, today from the depths of our soul we cry unto Thee, Lord, in behalf not only of ourselves but one another. Let this, our God, be the time this morning, Father, when Thou shalt, if Thou hast yet extended mercy, Father, let it be that these who have this day forsaken all of their pride, fancy, and other things. Lord Jesus, today we pray that Thou grant that the ones that are kneeling and bowing their head all over this building, oh God, let that voice from heaven speak this morning. Give an assurance, Lord. Let these men that are dying, men and women, Jesus, let us have this day the consolation of that witness coming down from heaven this morning. In the name of Jesus Christ, we are pleading, Lord, if there be yet an extension of mercy through the blood, let it be upon each one this morning according to their coming. May it be so today, and may each one, Lord, satisfied this day that Thou, being Almighty God, if this be the extension of mercy, let it be unto each one individually. Let it be now, Father, and let the peace of God that has always passed understanding, let it come again to waiting hearts.
Yes, Lord.
Let this be the hour.
Yes.
We believe that You have heard from heaven.
God grant it.
Whatever is in store for us, if it be over, then, Lord, we know what the final is.
Yes, Lord.
But if not, let the witness come.
Yes, Lord.
Let these that have come, let them find peace this day.
Grant it,
through
Lord.
Jesus Christ, in His name we pray.
प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप बेकी और सारा और जोसेफ और उनको भी बचा लेंगे प्रभु। मेरे बच्चों के साथ ये ना होने दें प्रभु। मेरे भाइयों और मेरे मित्रों के साथ ये ना होने दें प्रभु। इसे प्रदान करें। हम नहीं जानते, परंतु प्रभु हम कुछ देखते हैं। अब ये हमारे सामने झकझोर देने वाला चिन्ह है। हमें अपने पास जल्द खींच लें प्रभु। हम आपसे प्रेम करते हैं और हमें आपकी आवश्यकता है। पिता, होने दे कि अब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में शांति दे। हम प्रार्थना करते हैं कि हम इस घड़ी में, आपके इस घड़ी में गवाह हों। हम जानते हैं कि ये होना ही है। शतकों से इसकी भविष्यवाणी होती आई है और हमें इसका सामना करना ही है कि हम अंत समय में हैं, जब हम इन चिन्हों को प्रकट होते हुए देखते हैं। हम जानते हैं और बहुत वर्षों से बताया गया है कि ये बातें घटित होंगी। अब हम इसे अपने द्वारों पर देखते हैं। परमेश्वर का महान सामर्थ्य क्रोध गलियों से होता हुआ खतना रहितों को बाहर निकाल रहा है। जहाँ द्वार पर लहू नहीं होता है, मृत्यु का दूत वहाँ जाता है। वे जीते हैं, परंतु जब वे जीवित हैं, तभी वे मृत हैं। बगैर अनुग्रह, बगैर परमेश्वर के कभी नहीं बच सकते। परमेश्वर, इन बचे हुओं के लिए हम कैसे आपका धन्यवाद करें? अंदर होने से हमारे हृदय कितनी महान तरह से धन्यवादित हैं लहू के नीचे कि वो अंतिम दूत इस भूमि पर से होते हुए निकल रहा है और बाहर निकल रहा है। वे जो लहू के नीचे नहीं थे, वे बगैर अनुग्रह के मर गए। मूसा का वो अंतिम खिंचाव था। पहला एक युवक इसराइल से बात कर रहा था, दूसरा उन्हें छुड़ाने के लिए उनके पास गया, तीसरा अंतिम संदेश था। आश्चर्यक्रम हो चुके, मूसा अपने मार्ग पर प्रतिज्ञा के देश को छुड़ाए हुओं को ले जा रहा था। ओ परमेश्वर अनुग्रहकारी हो, यीशु के नाम में मांगता हूँ। अब मैं ये पूछना चाहूँगा, आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, आप जो ये अनुभव करते हैं कि आप पर अनुग्रह हुआ, अब परमेश्वर में आप अनुभव करते हैं कि परमेश्वर के राज्य में हैं, आप अनुभव करते हैं कि आप उसमें परमेश्वर में जिसमें आपने विश्वास किया, भरोसा रखा है कि आप मसीह ही हैं, आपका नया जन्म हुआ है और आप जानते हैं कि बिना किसी संशय के आप मसीह ही हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब खड़े हो जाएं। आप जो ये चाहते हैं, ये विश्वास करते हैं कि अनुग्रह आप पर हुआ है और आप मसीह ही हैं, और आप ये विश्वास करते हैं कि लहू आपके हृदय पर लगाया गया है और आपके सारे पाप क्षमा हुए हैं। आप लोगों को ये बात कहना बहुत ही कठिन बात थी। मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ और लोगों को चारों ओर देखते हुए, और आप, मैं नहीं जानता कि ये बात सत्य है, परंतु किसी समय ये इसी तरह से होना है। देखिए, ये इस नतीजे पर पहुंचना ही है और ये अब भी हो सकता है, समझे? हर प्रकार से संसार ऐसे ही चलता रहेगा। लोग अब भी सामने वेदी पर आएंगे और वे रोएंगे, परंतु उससे कुछ भला ना होगा। देखिए, वे समाप्त हो जाएंगे। देखिए, सब समाप्त हो जाएगा, फिर कोई अनुग्रह ना होगा। याद रहे, और पवित्र स्थान धुएं से भर गया। वो जो मलिन है वो अब मलिन रहेगा, जो धर्मी है वो धर्मी रहेगा, जो पवित्र है वो पवित्र रहेगा। जब मेमना पुस्तक ले लेता है, फिर कोई अनुग्रह नहीं होता। यही है, कुल मिलाकर यही है। सब मिलाकर ये लगता है कि ये अब हो सकता है। हो सकता है हमें कोई और दिन मिले, हो सकता है आज ही वो दिन हो, हो सकता है आने वाला कल, हो सकता है आज की रात अंतिम रात्रि हो, हो सकता है ये अंतिम वर्ष हो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता, मुझे ये कभी नहीं बताया जाएगा। परंतु जब परमेश्वर वो अंतिम नाम लेकर और उसे जीवन की पुस्तक से छुड़ा लेता है, बस यही सब कुछ है। देखिए, जो भी है वे इससे अधिक नहीं हो सकते, जो भी है इससे अधिक और कुछ नहीं, बस ये समाप्त हो गया। आप में से कितने जानते हैं कि ये सत्य है? ठीक है, ये सत्य है। हम ये अनुभव करते हैं। मैं सभा को देखता हूँ जिसको मैंने प्रचार किया है और इन वर्षों में चेतावनी दी है, और देखिए इस प्रकार का संदेश जो कि मैं अव्यवसायी रूप में आपके पास लाया हूँ। और बस याद रखें, मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ ताकि आप इसे समझ सकें। अव्यवसायिक रूप में कुछ और चीजें हैं जो आपको हिलाकर टुकड़े टुकड़े कर देंगी, परंतु मैंने उन्हें छोड़ दिया है। मुझे ऐसी अगुवाई हुई क्योंकि मैं निश्चित नहीं हूँ जहाँ पर मैं चल रहा हूँ। मैं सरलता से रौंदूंगा, देखिए, परंतु मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए, क्या आप प्रसन्न नहीं है? क्या आपके सोचने से कोई चीज बड़ी हो सकती है जो कि आपने अपने जीवन में किया हो? यदि ये अब हो चुका हो, क्या हो यदि अब ये सब कुछ समाप्त हो चुका हो? और आप कहेंगे, भाई ब्रणम हो सकता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि वे यही करते रह सकते हैं। हर बार उन्होंने यही किया। मैंने इसकी व्याख्या कर दी है और वचन द्वारा सिद्ध कर दिया है। देखिए, संसार निरंतर आगे बढ़ रहा है, परंतु ये हो गया, समझे? प्रचार की मूर्खता होइयों को बचाती है, मनुष्य के लिए मूर्खता है, ये परमेश्वर की बुद्धि है, समझे? परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मिक रूप में कार्य करता है। देखा, उसके आश्चर्यजनक कार्य आश्चर्यजनक विधि से होते हैं, परंतु हम मनुष्य हैं, हम मरणहार हैं, हम नहीं जानते। हम केवल दिखने वाली चीज को देख सकते हैं, परंतु हम में कुछ है। जब आप इस कमरे से बाहर निकलें, यदि आपने कभी भी अपने जीवन में दिन का उजाला ना देखा हो, तो आप जान जाएंगे कि आप यहाँ से बाहर निकलकर चूरी के उजाले में आ गए हैं। या जो भी है, आप अनुभव कर सकते हैं यह गर्म था। यदि आपके शरीर में इसे घोषित करने के लिए कोई चेतना नहीं है तो आप जानेंगे, देखने की कोई इंद्री नहीं है कि इसे देखें, हरे वृक्षों को देखने का कोई रास्ता नहीं है, प्रकृति को देखने के लिए आपके पास दृष्टि नहीं है, किसी के पास कभी नहीं थी। आप जान जाएंगे कि आप किसी चीज की उपस्थिति में हैं, आपका अनुभव आपको बता देगा। आप जान जाएंगे यदि मैं आपको बताने का यत्न करूं कि ये सूरज है, ये परावर्तित करता है, ये चीजों को दर्शाता है। देखिए, आप जान जाएंगे कि ये वहाँ था क्योंकि आप इसे अनुभव कर सकते हैं, आप अपनी चेतना से अनुभव कर सकते हैं। ये ठीक बात है ना? अब हम जानते हैं कि मसीह यहाँ है। देखा, हो सकता है आप उसे अपनी आँखों से ना देखें, समझे, हो सकता है कि आप ना देखें, परंतु दर्शनों के द्वारा मैं आपको बताता हूँ कि वो यहाँ है। मैं ये अनुभव करता हूँ, हम जानते हैं कि यहाँ कुछ है जिसको हमारी इंद्रियां घोषित नहीं करती, ये आत्मा घोषित करती है कि मसीह यहाँ है। मैं अनुभव करता हूँ कि उसने हमें छुड़ा लिया है, मैं अनुभव करता हूँ कि हमारे नाम उसकी पुस्तक में हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि हम मेमने के लहू से बचाए गए हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ओ धन्य है वो बंधन जो बांधता है हमारे हृदयों को मसीही प्रेम में। एक से विचारों की संगति वो ऐसी ही है जो ऊपर है। हमें हमेशा एक दूसरे के लिए ऐसा ही अनुभव होना चाहिए। देखिए, हमें एक दूसरे के लिए इसी प्रकार से अनुभव होना चाहिए, समझे, क्योंकि जैसा हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्या तुम अपने भाई को जिसको तुमने देखा है घृणा कर सकते हो और कहो कि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो जिसको तुमने नहीं देखा? दूसरे से प्रेम करना चाहिए। इससे बड़ा प्रेम और कोई नहीं कि उसने अपना जीवन अपने शत्रुओं के लिए दे दिया ताकि वे उसके मित्र हो जाएं। क्या आपको वो गाना आता है, धन्य है वो बंधन जो बांधता है? क्या ये आश्चर्यजनक नहीं? धन्य है वो बंधन। बहन, क्या आप हमें सुर देंगी?
What if it's over?
क्या हो यदि तीसरा खिंचाव अब आ रहा हो कि नष्ट हुओं को प्रचार करना? क्या हो यदि अब सारी प्रतिछाएं इसे दर्शा रही हो और हम अंदर हैं? अंदर हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं? कितनी अच्छी संगति है। ये क्या था? एक से विचारों की संगति, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, समझे। हम परमेश्वर को सौभाग्य लाने वाला लड़का बनाने का यत्न करते हैं, एक संदेश वाहन या ऐसे ही कुछ। परमेश्वर ये कर वो कर। यीशु ने कहा, प्रार्थना करो, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। तब स्वर्ग हमारे लिए नीचे आ जाता है, हम स्वर्ग तक ऊपर चले जाते हैं और हम मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। हम सब विश्वास करते हैं कि ये संदेश सत्य है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हमें छुड़ाता है। जब हम गा रहे हैं, आइए हम अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथों को उठाएं। अब कोई मुस्कुराहट नहीं, ये मुस्कुराने का समय नहीं है। जबकि ये गाना बज रहा है, आइए जो हमारे पास है उससे हाथ मिलाएं और कहिए, मसीही, परमेश्वर आपको आशीष दे, निष्कपट हृदय से परमेश्वर आपको आशीष दे। ठीक है ना? एक लंबा मार्ग। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई। आइए हम अपने हाथों को उसके लिए उठाएं। अब आइए हम अपने सरों को झुकाएं और एक साथ ये न जानते हुए कि भविष्य में क्या है, इस क्षण में क्या है, नहीं जानते, परंतु क्या हो यदि ये हो चुका, मैं नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं जानता, परंतु उन तथ्यों को जो इस प्रातः प्रकट हुए हैं, उनको देखते हुए आइए हम प्रार्थना करें जो प्रार्थना प्रभु ने हमें बताई है। यदि ये है तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, समझे, आइए हम एक साथ करें। हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। अब हमारे झुके हृदयों के साथ बाइबल ने कहा, उन्होंने एक भजन गाया और चले गए। याद रखिए, वचन में जब उन्होंने ये किया, ये इसलिए था क्योंकि उन्होंने हमारे प्रभु के दूसरे खिंचाव की सेवकाई को क्रूस पर चढ़ा दिया और तीसरा खिंचाव अंदर आने को तैयार था। उसके कुछ घंटों के पश्चात वो नरक में चढ़ गया और उन नष्ट होने वालों को प्रचार किया जिन्होंने अपने अनुग्रह को अस्वीकार कर दिया था। वो वाला स्वर, मेरा विश्वास तुझको देखता है, प्रभु आपको आशीष दे, अपना पुत्र बनाए और अनुग्रह आप पर चमके, और प्रभु आपको अनंत जीवन दे, और यहाँ इस जगत में आपके साथ हो, और यहाँ के बाद उस आने वाले संसार में, और अनंत जीवन होने दे, आप उसकी समयों के युगों तक उसकी सेवा करते रहें जो आने वाले हैं। यदि यही समय है और हम उस स्थान पर पहुँच चुके हैं, तो मैंने जो प्रचार किया है उससे लज्जित नहीं हूँ। यदि प्रत्येक सेवक को अपनी सभा के साथ न्याय के लिए खड़ा होना है, जैसा कि मैंने दर्शन में देखा, मैंने जो सुसमाचार प्रचार किया है उसके लिए धन्यवादित हूँ, क्योंकि ये वही सुसमाचार है जो कि पौलुस और उन्होंने प्रचार किया। मैं आपके लिए आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ कि आपने मसीह को अपना बचाने वाला ग्रहण किया है। उससे प्रेम करें और प्रार्थना, और दोपहर बाद मैं आपसे फिर मिलूंगा, प्रभु ने चाहा 7 बजे यहीं आराधनालय में। परमेश्वर आपको आशीष दे, आप बर्खास्त हैं।